आगे सबक देखिए भाई। व इन قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري ونوى به العتق لم تعتق وقال الشافعي رحمه الله تعالى تعتق إذا نوى وكذا على هذا الخلاف سائر ألفاظ الصريح والكناية على ما قال مشايخهم رحمهم الله تعالى। भाई गुज़श्ता सबक में मसला चल रहा था, साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर आका अपने गुलाम के बारे में कहता है हाज़बनी कि ये मेरा बेटा है, और हाल यह है कि वो गुलाम उमर में आका के तकरीबन बराबर है या आका से उमर में बड़ा है, यानी इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, तो आका ने उसके बारे में कहा हादा बनी ये मेरा बेटा है। तो इमाम साहब फरमाते हैं यहां हकीकी माना तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा मजाजी माना लिया जाएगा इसका, और हाजबनी का मजाजी माना है हाजा हुर्रुन कि ये आजाद है, तो गुलाम आजाद हो जाएगा चाहे कहने वाला नीयत करे या ना करे, इसलिए क्योंकि यहां मजाजी माना ही मुतायन है। जबकि साहिबैन और इमाम शाफई रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा और आका का यह कलाम लग्व है, बातिल है, इसका कोई एतबार नहीं। वो फरमाते हैं कि ये जो मजाज है यह हकीकत का खलीफा होता है हुक्म के अंदर, यानी आसान लफ्जों में कहो माना के अंदर, तो मजाज जो है वह हकीकत का खलीफा है माना में। हकीकी माना मुमकिन हो लेकिन कोई रुकावट आ जाए और हम हकीकी माना न कर सकें तो फिर मजाजी माना की तरफ जाएंगे। तवज्जो है भाई, हमारे नजदीक लफ्ज का हकीकी माना मुमकिन हो तो उसी पर अमल किया जाएगा, और जब हकीकी माना मुराद न लिया जा सके फिर मजाज की तरफ जाएंगे। तो साहिबैन कहते हैं कि मजाज हकीकत का खलीफा है हुक्म में, यानी माना के अंदर। हकीकी माना मुमकिन हो लेकिन कोई मान्य आ गया, कोई रुकावट आ गई कि हम हकीकी माना मुराद नहीं ले सकते, तो फिर मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि जहन में पहले हकीकी माना आता है और फिर उसके बाद जहन मुंतकिल होता है मजाजी माना की तरफ। तो जब हकीकी माना का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, वो मुमकिन ही नहीं है, तो मजाजी माना का भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। और यहां आका ने एक ऐसे गुलाम को हाजबनी कहा है कि उस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, तो जब हकीकी माना मुमकिन नहीं तो मजाजी माना भी मुमकिन नहीं, और यह कलाम लग्व होगा और बेकार होगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह जो मजाज है यह हकीकत का खलीफा है तकल्लुम में, यानी अल्फाज के अंदर, और हाजा बनी ये अरबी एतबार से ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं। हाजा मुब्तदा है और इबनी उसकी खबर है, तो जब अल्फाज सही हों और अकलन वो माना मुमकिन भी हो तो फिर इस सूरत में हकीकी माना न लिया जा सके तो मजाजी माना लिया जाएगा। तो इमाम साहब के नजदीक मजाज हकीकत का खलीफा है, उसका नाइब है तकल्लुम में यानी अल्फाज में, और हाजबनी के अल्फाज सही हैं लेकिन हकीकी माना हम यहां मुराद नहीं ले सकते तो फिर हम मजाजी माना मुराद ले लेंगे। अलबत्ता इमाम साहब फरमाते हैं कि हकीकी माना अकलन मुमकिन होना चाहिए, और यहां पर भी हाजबनी का हकीकी माना मुमकिन है, यहां सिर्फ रुकावट जो आई वो मुशारुन इले गुलाम की वजह से आई। हाजबनी कहकर आका ने जिस गुलाम की तरफ इशारा किया था उसकी वजह से ये हकीकी माना हम यहां मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि ये गुलाम उमर में आका के बराबर है या उससे बड़ा है। अगर गुलाम कम उमर होता तो फिर हकीकी माना भी सही हो सकता था। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया कि साहिबैन ने इस मसले को कियास किया है एक और मसले पर। यह जो मसला है जिसमें आका ने अपने हम उमर गुलाम को या अपने से बड़ी उम्र के गुलाम को हाजबनी कहा, इस मसले को साहिबैन कियास करते हैं एक और मसले पर कि मसलन एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कतअतु यदका कि मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया, और उस दूसरे शख्स ने अपने दोनों हाथ निकाल कर दिखाए तो उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। तो साहिबैन फरमाते हैं कि यहां कतअतु यदका इसका हकीकी माना यह है कि मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया, और मजाजी माना यह है कि यह शख्स जो है निस्फ़े दियत का इकरार कर रहा है कि मैंने आपको निस्फ़े दियत माल देना है। तो माल का इकरार जो है वो इसका मजाजी माना हुआ। तो कतअतु यदका, हकीकी माना क्या? मैंने आपका हाथ काट दिया। और मजाजी माना क्या? कि वो शख्स माल का इकरार कर रहा है निस्फ़े दियत के बराबर। और यहां पर अरबी एतबार से ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं, और नीज ये हाथ का काटना सबब होता है निस्फ़े दियत के वाजिब होने का। लिहाजा हकीकी और मजाजी माना के दरमियान सबबियत वाला अलाका और ताल्लुक भी मौजूद है। लिहाजा इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक जब ये अल्फाज अरबी एतबार से सही हैं लेकिन हकीकी माना मुमकिन नहीं है तो फिर इसका मजाजी माना लेना चाहिए और इसको इकरार बिल माल करार देना चाहिए। लेकिन इमाम साहब भी फरमाते हैं कि ये जो कहने वाले ने लफ्ज कहे कतअतु यदका, ये अल्फाज बेकार हैं, बातिल हैं, इनका कोई एतबार नहीं। यानी इमाम साहब इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं देते, हालांकि इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक इसे इकरार माल से मजाज करार देना चाहिए था, लेकिन इमाम साहब इसको मजाज करार नहीं दे रहे। मालूम हुआ बात वही है जो हमने कही कि जो मजाज है हकीकत का खलीफा है माना में। अगर हकीकी माना मुमकिन हो लेकिन कोई मान्य आ जाए फिर ही मजाजी माना किया जा सकता है, और अगर हकीकी माना मुमकिन ही ना हो तो फिर मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता। और यहां हकीकी माना मुमकिन नहीं क्योंकि उस दूसरे शख्स के तो दोनों हाथ सही सलामत हैं, तो लिहाजा मजाजी माना भी नहीं किया जाएगा। और इमाम साहब भी यहां यही फरमा रहे हैं, वरना तो उनके जाब्ते के मुताबिक मजाजी माना करना चाहिए था। तो उसका जवाब दिया साहिबे हिदाया ने कि नहीं, यहां पर इस कतातु यदका, इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि इकरार माल से जो माल लाजिम होता है वो माल मुतलक होता है, जबकि ये जो हाथ काटने की वजह से जो माल लाजिम होता है वो मुतलक माल नहीं है बल्कि माल मखसूस है, यानी अर्श वाजिब होता है। मैंने बताया था कि पूरे इंसानी जान के बदल के तौर पर जो माल किसी पर वाजिब होता है उसको दियत कहते हैं, और दियत अदा करने वालों को इख्तियार है, वो चाहें तो 100 ऊंट अदा कर दें, वो चाहें तो 10,000 दिरहम अदा कर दें, और वो चाहें तो 1,000 दीनार अदा कर दें। तो पूरे इंसानी जान का जो बदल है वो दियत कहलाता है। अलबत्ता आज़ा के अंदर जो माल वाजिब हो उसको अर्श कहते हैं, उसको मजाजन उसको भी दियत कह देते हैं, लेकिन हकीकत में दियत पूरी इंसानी जान के बदल को कहते हैं, और आजा के अंदर जो माल वाजिब हो उसको अर्श कहते हैं। और एक हाथ का अर्श जो है वो निस्फ़े दियत है, यानी 50 ऊंट या 5,000 दिरहम या 500 दीनार। भाई 500 दीनार। तो साहिब हिदाया जवाब दे रहे इमाम साहिब की तरफ से, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि कतअतु यदका, इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि इकरार माल की वजह से जो माल वाजिब होता है वो मुतलक माल होता है, जबकि हाथ काटने की वजह से जो माल वाजिब होता है वो माल मखसूस है, और दोनों मालों की सिफत अलग अलग है, अर्श की सिफत अलग और माल मुतलक की सिफत अलग। माल मुतलक जो है वो सिर्फ इकरार करने वाले पर वाजिब होता है, उसी को अदा करना पड़ता है। मसलन जैद ने कहा मैंने अमर के 50 लाख रुपए अदा करने हैं, तो ये पैसे अब जैद ही को अदा करने पड़ेंगे, उसके कबीले वाले उसके साथ अदायगी में शरीक नहीं होंगे, जबकि अर्श जो होता है वो सारे कबीले वालों पर वाजिब होता है, सारे कबीले वाले मिलकर उसको अदा करते हैं। तो दोनों मालों की सिफत ही अलग अलग है। कतई यद की वजह से जो माल वाजिब होता है वो सारी आकिला पर वाजिब होता है। मैंने बताया कि आकला या आकिलू का माना होता है दियत अदा करना, तो दियत अदा करने वाले आकिला हुए भाई। तो ये जो अर्श है ये सारी आकिला को यानी सारे कबीले वालों को अदा करना पड़ता है, जबकि माल मुतलक वो सिर्फ इकरार करने वाले पर वाजिब होता है। तो लिहाजा कतअतु यदका, इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कतअतु यदका की वजह से जो माल वाजिब होता है वो और किस्म का है, और इकरार माल की वजह से जो माल वाजिब होता है वो और किस्म का है भाई। बात समझ में आ गई। तो यहां इकरार माल तो है नहीं, वो तो वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। और कतातु यदका है और उसकी वजह से अर्श ने वाजिब होना था, लेकिन अर्श तो वैसे वाजिब नहीं होता, वो तो हाथ काटने की सूरत में वाजिब होता है और इस आदमी के तो दोनों हाथ सही सलामत हैं, लिहाजा यहां अर्श भी वाजिब नहीं किया जा सकता। इस पर फिर कोई मोतरिस एतराज करता है और कहता है कि यही बात तो फिर हुर्रियत के अंदर भी है, आपने हाजबनी को मजाज करार दिया हाजा हुर्रुन से, कि हाजबनी यह मजाज है किससे, हाजा हुर्रुन से, हालांकि हाजा हुर्रुन से मुतलक हुर्रियत साबित होती है और हाजबनी की वजह से जो हुर्रियत साबित होती है वो बतौर सिला के है, बतौर इनाम के है। शरीयत ने हमें रिश्तेदारों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, तो यहां जो हुर्रियत साबित होगी वो बतौर एहसान के और बतौर इनाम के है भाई। तो हादा हुर्रुन से जो हुर्रियत साबित हुई वो मुतलक हुर्रियत है और हादबनी से जो हुर्रियत साबित हुई वो बतौर सिला के है, तो दोनों हुर्रियतें अलग किस्म की हैं। जैसे कतातु यदका, इसकी वजह से माल मखसूस वाजिब होता है और इकरार माल की वजह से मुतलक माल वाजिब होता है, तो वहां आप कतातु यदका इसको आप इकरार माल से मजाज करार नहीं देते क्योंकि दोनों माल मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो यहां पर भी हादबनी के अंदर जो हुर्रियत आई वो अलग किस्म की है और हादा हुर्रुन से जो हुर्रियत आती है वो अलग किस्म की है, तो हादबनी को हादा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दिया जा सकता। तो साहिब हिदाया ने उसका भी जवाब दिया कि नहीं, दोनों सूरतों में एक ही जैसी हुर्रियत आती है, हादा हुर्रुन से जो हुर्रियत आई और हाजबनी से जो हुर्रियत आई, ये दोनों हुर्रियतें जात के एतबार से भी एक जैसी हैं और हुक्म के एतबार से भी एक जैसी हैं। जात के एतबार से दोनों हुर्रियतें एक जैसी हैं इसलिए क्योंकि हुर्रियत कहते हैं जवाल रकियत को, गुलामी खत्म हो जाना, हादा हुर्रुन कहने से भी गुलामी खत्म और हाजबनी कहने से भी गुलामी खत्म। तो देखो दोनों हुर्रियतों की जात एक जैसी है, दोनों में जवाल रकियत है भाई, और नीज हुक्म के एतबार से भी दोनों हुर्रियतें एक जैसी हैं, क्योंकि जब कोई शख्स आजाद होता है तो वो गवाह बन सकता है, उसमें शहादत की अहलियत आ जाती है, वो काजी बन सकता है, इसी तरह वो चीजों का मालिक बन सकता है, उसे विलायत हासिल हो जाती है, वो अपना निकाह कर सकता है, वो तिजारत वगैरह कर सकता है, तो आजादी की वजह से हर किस्म की विलायतें भी हासिल हो जाती हैं और हर किस्म की अहलियत भी इंसान को हासिल हो जाती है। तो जैसे हादा हुर्रुन कहने की वजह से ये अहकाम साबित होते हैं, इसी तरह हाजबनी कहने से भी ये सारे अहकाम उस गुलाम के लिए साबित हो जाते हैं। मालूम हुआ कि हादा हुर्रुन से जो आजादी साबित हुई वो बिल्कुल उसी आजादी की तरह है जो हाजबनी की वजह से साबित हुई है, जात के एतबार से भी और अहकाम के एतबार से भी, लिहाजा बेटा होने को हुर्रियत से मजाज करार दिया जा सकता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया आपको कि इसी तरह है मसला अगर कोई शख्स अपने गुलाम के बारे में कहे हाजा अभी, या बांदी के बारे में कहे हादी ही उम्मी, और हाल यह है कि यह गुलाम या बांदी जो है इसके मां बाप नहीं हो सकते, ये गुलाम या बांदी इसके हम उम्र हैं या इससे उम्र में कम हैं, वो इसके मां बाप नहीं हो सकते, तो इस सूरत में भी साहिबैन और इमाम साहिब का यही इख्तिलाफ है। इमाम साहिब के नजदीक वो गुलाम या बांदी आजाद हो जाएंगे जबकि साहिबैन के नजदीक आजाद नहीं होंगे। और उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर कोई शख्स अपने से कम उम्र गुलाम के बारे में कहे हादा जद्दी, ये मेरा दादा है या ये मेरा नाना है, तो बस वो कहा फरमाते हैं इसके अंदर भी यही इख्तिलाफ है इमाम साहब और साहिबैन का, जबकि बस वो कहा फरमाते हैं कि इस सूरत में बिल इत्तेफाक ये गुलाम आजाद नहीं होगा। इमाम साहब और साहिबैन का इसमें इत्तेफाक है कि ये गुलाम आजाद नहीं होगा, वजह ये कि गुलाम को हाजा जद्दी कहा और ये कहना उस गुलाम के अंदर आजादी का तकाजा करता है, लेकिन वास्ते के साथ, वास्ते के साथ, और वो वास्ता बाप है और वो यहां कलाम के अंदर जिक्र नहीं, लिहाजा इस हाजा जद्दी को हादा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दिया जा सकता। और इसी तरह अगर आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हादा अखी, ये मेरा भाई है, तो जाहिर रिवायत के मुताबिक गुलाम आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई के साथ रिश्ता मां बाप के वास्ते से होता है और वो वास्ता यहां पर जिक्र नहीं है। जबकि एक रिवायत इमाम साहब से है कि हादा अखी कहने से भी गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ममलूक के अंदर जैसे बेटा होना यह सबब है आजादी का, इसी तरह ममलूक के अंदर भाई होने का वसफ भी साबित हो जाए तो यह भी सबब है आजादी का, तो वह आजाद हो जाएगा भाई। और अगर आका ने अपने गुलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा हाजा बनती, ये मेरी बेटी है, अब वो गुलाम है मर्द है और आका उसे क्या कह रहा है हाजा बनती, तो बेटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए, तो इस सूरत में भी बास फुकहा फरमाते हैं हमारे अइमा का इसमें इख्तिलाफ है, और जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत में बिल इत्तेफाक ये गुलाम आजाद नहीं होगा। वजह यह कि यहां पर इशारा और तस्मिया जमा हो गए, हाजा इसमें इशारा है और इबनती ये तस्मिया है, और जब इशारा और तस्मिया जमा हो जाए तो फिर देखा जाएगा कि मुशारुन इले और मुसम्मा की जिन्स एक है या अलग अलग है, और यहां पर मुशारुन इले और मुसम्मा की जिन्स अलग अलग है क्योंकि मुशारुन इले गुलाम है, जिसकी तरफ इशारा किया वो गुलाम है, और नाम किसका जिक्र किया बेटी का, और वो मुअन्नस है, तो मुशारुन इलैह जो है वो मुजक्कर है और मुसम्मा जो है वो मुअन्नस है, और इंसानों के अंदर मर्द और औरत जो है इनको अलग अलग जिन्स शुमार किया जाता है, दोनों को अलग अलग जिन्स शुमार किया जाता है। वजह यह कि मर्द और औरत की तख्लीक के मकासिद अलग अलग हैं, मर्द की तख्लीक का मकसद यह है कि वो पैगंबर हो सके, वो हाकिम और खलीफा हो सके, और वो हुदूद और किसास के मसलों में गवाह हो सके, इसी तरह वो जुम्मा और ईदेन की नमाजें कायम कर सके, जबकि औरत की तख्लीक का मकसद यह है कि वो घर के कामकाज को संभाले और इसी तरह बच्चों को जन्म दे। तो मर्द की तख्लीक के मकासिद अलग, औरत की तख्लीक के मकासिद अलग, तो ये अलग अलग जिन्सें शुमार होती हैं। तो यहां पर भी आका ने जब कहा हाजा बनती, तो मुशारुन इलैह वो तो मुजक्कर है मर्द है, और मुसम्मा यानी जिसको जिक्र किया वो तो मुअन्नस है, और मर्द और औरत दोनों हैं जो हैं अलग अलग जिन्सें हैं, तो जब मुशारुन इलैह और मुसम्मा की जिन्स अलग अलग हो तो फिर उस सूरत के अंदर मुसम्मा का एतबार होता है, हुक्म का ताल्लुक मुसम्मा से होता है, और मुसम्मा तो यहां पर मुअन्नस है और मुअन्नस तो यहां मौजूद ही नहीं है, लिहाजा आका का यह कलाम लग्व चला जाएगा और यह गुलाम आजाद नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। وَإِنْ قَالَ لِأَمَّتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَمَّرِي وَنَوَابِهِ الْعِتْقَ لَمْ تَعْتِقْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَعْتِقُ إِذَا نَوَى। याद रखिए हमारे नजदीक हुर्रियत वाला लफ्ज बोलकर उसके जरिए तलाक का इरादा तो सही है, लेकिन इसका बरअक्स जायज नहीं है कि आका जो है तलाक वाला लफ्ज जिक्र करे और इरादा आजादी का करे। आजादी वाला लफ्ज बोलकर तलाक का किनाया करना सही है, मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है अंत हुर्रतुन तू आजाद है, और तलाक की नीयत करता है तो तलाक वाकई हो जाएगी। अंत हुर्रतुन कहने से तलाक वाकई हो जाएगी जब खावंद जो है उसमें तलाक की नीयत करे। लेकिन अगर इसका बरअक्स मामला हो, आका ने अपनी बांदी से कहा अंत तालिकुन और नीयत कर रहा है हुर्रियत की कि तू आजाद है, तो याद रखिए इस सूरत में आका नीयत कर भी ले फिर भी बांदी आजाद नहीं होगी। वजह यह कि यह जो तलाक का लफ्ज है यह आजादी का एहतमाल रखता ही नहीं। जब एक लफ्ज के अंदर एक माना का एहतमाल ही नहीं है तो आप नीयत कर भी ले वो माना साबित नहीं होगा। किसी लफ्ज में एक माना का इहतमाल हो तो फिर नीयत करने से वो माना साबित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अंत हुर्रतुन के जरिए तलाक का इरादा सही है, वजह यह कि अंत हुर्रतुन के अंदर तलाक का इहतमाल मौजूद है। अंत हुर्रतुन का माना तू आजाद है, इसका यह माना भी हो सकता है कि तू कामकाज से आजाद है, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, और अंत हुर्रतुन का यह माना भी हो सकता है कि तू मेरे निकाह से आजाद है। तवज्जो है, तो देखो यहां पर तलाक के माना का इहतमाल है अंत हुर्रतुन के अंदर, लिहाजा खावंद अपनी बीवी से अंत हुर्रतुन कहता है और तलाक की नीयत करता है, और तलाक के माना का यहां इहतमाल भी था, तो खावंद की नीयत करने से वो माना साबित हो जाएगा और बीवी को तलाक हो जाएगी। लेकिन इसका बरअक्स आका अपनी बांदी से कहता है अंति तालिकुन। अब अंति तालिकुन के अंदर तो अंत हुर्रतुन के माना का कोई एहतमाल नहीं है, लिहाजा आका अपनी बांदी से कहे अंति तालिकुन और नीयत करे अंत हुर्रतुन कि तू आजाद है, तो यह नीयत लगव है, बेकार है, बांदी आजाद नहीं होगी क्योंकि अंति तालिकुन के अंदर हुर्रियत वाले माना का एहतमाल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। और याद रखना यही हुक्म है तलाक के किनायात का भी, तलाक के किनायात का भी। जैसे तलाक के सरीह अल्फाज अंति तालिकुन के जरिए हुर्रियत की नीयत करना सही नहीं, इसी तरह तलाक के जो किनायात हैं अंति बाइनुन या तखमरी वगैरह उनके जरिए भी आजादी की नीयत की जाए तो आजादी साबित नहीं होगी भाई। जबकि शवाफ़ इख्तिलाफ करते हैं हमसे, वो कहते हैं कि जैसे अंति हुर्रतुन के जरिए अंति तालिकुन की नीयत सही है, इसी तरह अंति तालिकुन के जरिए अंति हुर्रतुन की नीयत भी सही है। तो वो दोनों तरफ से मजाज को सही करार देते हैं, यानी हुर्रियत वाले लफ्ज को तलाक के लिए इस्तेमाल किया जाए तो भी ये सही, और तलाक वाले लफ्ज को हुर्रियत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये भी सही है। जबकि हमारे नजदीक हुर्रियत वाले लफ्ज को तो तलाक के लिए मजाजन इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हुर्रियत के अंदर तलाक के माना का इहतमाल है, लेकिन तलाक वाले लफ्ज को मजाजन हुर्रियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि तलाक के लफ्ज में हुर्रियत का इहतमाल नहीं है। तो कहते हैं देखिए भाई किताब पर, वह इन काल अली अमति ही, और अगर आका ने अपनी बांदी से कहा अंति तालिकुन तुझे तलाक है, ये तलाक का सरीह लफ्ज जिक्र कर दिया, औ बा इन उन औ तखम मरी ये किनाये जिक्र कर दिए, अंति बा इन उन तू जुदा है ये तलाक से किनाया है भाई। मसल खावन बीवी से कहता है अंति बा इन उन तू जुदा है, यानी मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, तू मुझसे जुदा है, और इसका यह माना भी हो सकता है अंति बा इन उन तू जुदा है, यानी और औरतों से तू जुदा है अपनी आदतों में या अपने हुस्न जमाल में, तो दोनों माना हो सकते हैं। तो ये किनाया है तलाक से। या इसी तरह तखम्मरी, तखम्मुर जो है ये खिमार से है, खिमार यानी दुपट्टा ओढ़नी भाई, तखम्मरी तू दुपट्टा ओढ़ ले, तो ये भी तलाक से किनाया है भाई। इसके ये माना भी हो सकता है कि तू दुपट्टा ओढ़ ले, मुझसे पर्दा कर ले, मैंने तुझे तलाक दे दी है, और इसका यह माना भी हो सकता है कि तू दुपट्टा ओढ़ ले और मेरे साथ तलाक वगैरह की बहस न कर बल्कि मुअज्जज औरतों की तरह दुपट्टा ओढ़ ले, तो लिहाजा यह भी किनाया है। तो आका ने अपनी बांदी से अंति तालिकुन कहा, यानी तलाक का सरीह लफ्ज जिक्र किया, या अंति बाइनुन या तखम्मरी कहा, यानी तलाक का किनाया लफ्ज जिक्र किया, तो इंदल अहनाफ दोनों सूरतों में आजादी वाके नहीं होगी, चाहे आका आजादी की नीयत ही क्यों ना कर ले। जबकि शवाफे के नजदीक दोनों सूरतों में आजादी साबित हो जाएगी और वो बांदी आजाद हो जाएगी। ये तलाक के अल्फाज में उनके नजदीक आका का आजादी की नीयत करना सही है। तो कहते हैं वह इन काल अली आमती ही, और अगर आका ने अपनी बांदी से कहा अंति तालिकुन के तुझे तलाक है, औ बा इन उनकी तू जुदा है, औ तखम्मरी के तू दुपट्टा ओढ़ ले, वह नवाबी ही लड़ित का, और इसके जरिए आका ने आजादी की नीयत की, लम तातिक तो ये बांदी आजाद नहीं होगी। वकाल शाफी रहमहुल्लाहु तातिकु ईजा नवा, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बांदी आजाद हो जाएगी ईजा नवा, जब आका आजादी की नीयत करे। तो उनके नजदीक तलाक के अल्फाज से भी आजादी वाके हो जाएगी जब आका इसकी नीयत करे। वकदा अला हादल खिलाफ साइरु अल्फाज सरीह वल किनायती, और इसी तरह इसी इख्तिलाफ पर हैं साइरु अल्फाज सरीह वल किनायती, बाकी अल्फाज सरीह और किनाया के, यानी तलाक के जो बाकी अल्फाज हैं चाहे वो सरीह हैं चाहे वो किनाया हैं, उनके अंदर भी हमारा और शवाफिया का इसी तरह इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक उनको आजादी के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उससे आजादी साबित नहीं होगी, जबकि उनके नजदीक इनको मजाजन आजादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे आजादी साबित हो जाएगी। तो कहते हैं वकदा अला हादल खिलाफी, और इसी तरह इसी इख्तिलाफ पर हैं साइरु अल्फाज सरीह वल किनायती, बाकी الفاظ صریح اور کنایا کے علامہ قال مشایخہم رحمہم اللہ بوجہ اس کے جو ان شوافع کے فقہا نے کہا ہے. علی میں نے بتایا کہ علی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, تو یہاں علت والا معنی کہ اسی اختلاف پر ہے. صریح اور کنایا کے باقی الفاظ بھی علامہ قال مشایخہم رحمہم اللہ بوجہ اس کے جو شوافع کے فقہا نے فرمایا ہے. یاد رکھو امام شافعی رحمہ اللہ سے صرف انتی طالقن کے بارے میں منقول ہے. وہ فرماتے ہیں انتی طالقن کو مجازن انتی حرتن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن طلاق کے باقی الفاظ کے بارے میں ان سے کوئی بات ذکر نہیں. لیکن شوافع کے باقی فقہا فرماتے ہیں کہ طلاق کے تمام الفاظ کا یہی حکم ہے, چاہے وہ صریح ہوں چاہے کنایا. اپنی باندی کے لیے آقا جب ان الفاظ کو استعمال کرے اور آزادی کی نیت کرے تو اسے آزادی ثابت ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَقَدَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ الْفَاظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ, اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہیں صریح اور کنایا کے باقی الفاظ. علامہ قال مشایخہم رحمہم اللہ بوجہ اس کے جو ان شوافع کے فقہا نے فرمایا ہے. لہو انہو نوا جی, اب آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آ رہی ہے. دلیل سنیں امام شافعی رحمہ اللہ کی. لہو, امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوا ما یحتملہ لفظہ, کہ آقا نے نیت کی ہے ما اس معنی کی, یحتملہ لفظہ کہ جس کا یہ لفظ احتمال رکھتا ہے. جی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا نے طلاق کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس کے اندر آزادی کی نیت کی ہے, اور طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال رکھتا ہے. ہم نے تو کہا کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال نہیں رکھتا, لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال رکھتا ہے. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انت طالقن یہ انت حرتن کا احتمال رکھتا ہے, اس کے اندر اس معنی کا بھی احتمال ہے. لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوا ما یحتملہ لفظہ, کہ آقا نے اس معنی کی نیت کی ہے کہ جس کا اس لفظ میں احتمال ہے. بھئی یاد رکھو آپ پڑھ چکے ہیں, ایک لفظ میں ایک معنی کا احتمال ہو تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے. اگر ایک معنی کا احتمال ہی نہیں ہے اس کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. جیسے کوئی شخص بکری کہتا ہے اور ہاتھی کا ارادہ کرتا ہے, بھئی بکری کے لفظ کے اندر تو ہاتھی کے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے, لہذا آپ ہاتھی کی نیت بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا نے اس معنی کی نیت کی ہے جس کا یہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہے. لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مُوَافَقَتًا, اس لیے کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان موافقت ہے. بھئی ایک ہے غلام کا یا باندی کا مالک ہونا, تو اس میں مل کے یمین حاصل ہوتی ہے, اس کی ذات کا مالک ہوتا ہے انسان. اور نکاح کے اندر مل کے نکاح حاصل ہوتی ہے انسان کو, یعنی بیوی کے منافع کا مالک ہوتا ہے انسان کہ بیوی سے وہ صحبت کر سکتا ہے. تو نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح منافع کی ملکیت کا نام ہے, اور مل کے یمین وہ ذات کی ملکیت, اس میں انسان دوسرے کی ذات کا مالک ہوتا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں ملکیتیں ایک جیسی ہیں. دونوں ملکیتیں ایک جیسی ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے دونوں ملکیتیں ایک جیسی کیسے ہیں؟ ایک میں ایک شخص دوسری چیز کی پوری ذات کا مالک ہے اور ایک میں صرف منافع کا مالک ہے. مثلا ایک مکان ہے آپ کا, تو آپ اس مکان کے مالک ہیں, ذات کی اس کے مالک ہیں. اور ایک ہے آپ کرائے پر مکان لے کر رہتے ہیں, تو یہاں صرف آپ منافع کے مالک ہیں مکان کے مالک نہیں. تو منافع کا مالک ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے, اور ذات کا مالک ہونا اور چیز ہوتی ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ دونوں ملکیتیں ایک دوسرے جیسی ہیں. کس طرح وہ دیکھیے بیان فرمائیں گے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مُوَافَقَتًا, اس لیے کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان موافقت ہے, ایک مل کے نکاح اور ایک مل کے یمین. بھائی اِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِلْكُ عَيْنٍ, اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے مِلْكُ الْعَيْنِ وہ ذات کی ملکیت ہے. عین کہتے ہیں ذات کو, دونوں میں سے ہر ایک وہ ذات کی ملکیت ہے. بھائی کیسے ذات کی ملکیت ہے؟ मिलके यमीन तो जात की मिल्कियत है और मिलके निकाह तो सिर्फ मुनाफिया की मिल्कियत है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये मिलके निकाह भी मिलके यमीन की तरह है हुक्म के एतबार से, यानी इस पर भी मिलके ऐन वाला ही हुक्म लगा दिया जाएगा, इस पर भी मिलके ऐन वाला ही हुक्म लगा दिया जाएगा। तवज्जो है, यानी हकीकत के एतबार से तो मिलके निकाह मिलके ऐन नहीं, लेकिन इस पर भी मिलके ऐन वाला ही हुक्म लगा दिया जाएगा
जी।
मिलके ऐन तो कहते हैं इद कुल वाहिदिन मिनहुमा मिल्कुल ऐन, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक जो है वो जात की मिल्कियत है। अम्मा मिल्कुल यमीन फज़ाहिरन, तो मिलके यमीन जो है वो तो जाहिर है, मिलके यमीन में तो इंसान जात का मालिक होता है, गुलाम या बांदी की जात का मालिक होता है। वह कजा मिल्कुल निकाह फी हुक्म मिल्कुल ऐन, और इसी तरह मिलके निकाह जो है ये भी मिलके ऐन के हुक्म में है। हत्ता कानत ताबीतु मिन शर्तिही, यहां तक के मुअब्बद होना ये इसकी शर्त में से है। वह तौकीतु मुबतिलन लहू, और वक्त मुकर्रर करना वो इसको बातिल कर देता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मिलके यमीन में इंसान गुलाम या बांदी की जात का मालिक बन जाता है, और चंद दिन के लिए बना या हमेशा के लिए बना, हमेशा के लिए मालिक है, जब तक वो आका उनको बेचता नहीं है वो आका की मिल्क से नहीं निकलेंगे। इसी तरह मिलके निकाह भी जो इंसान को हासिल होती है वो भी हमेशा के लिए हासिल होती है। एक शख्स औरत से निकाह करता है तो वो निकाह हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर आप उसमें मुद्दत की कैद लगा देते हैं कि मैं 6 माह के लिए निकाह करता हूं या साल के लिए, तो यह निकाह बातिल है, ये तो निकाह मुता बन जाएगा भाई, और वह शरअन बातिल है। तो मालूम हुआ जैसे मिलके यमीन हमेशा के लिए होती है, मिलके निकाह का भी हमेशा के लिए होना जरूरी है। अगर आप उसमें वक्त की कैद लगाएंगे तो वो निकाह ही बातिल है। तो मालूम हुआ मिलके निकाह भी मिलके यमीन की तरह है, जैसे मिलके यमीन में मुअब्बद मिल्कियत हासिल होती है, इस तरह मिलके निकाह में भी मुअब्बद मिल्कियत हासिल होती है। तो कहते हैं हत्ता कानत ताबीदु मिन शर्ती ही, यहां तक के मुअब्बद होना यानी हमेशा के लिए होना मिन शर्ती ही, ये निकाह की शर्त में से है। वह तौकीतु मुबतिलन लहू, वक्त युवक्कितु तौकीत का माना है वक्त मुकर्रर करना, वह तौकीतु मुबतिलन लहू, और वक्त मुकर्रर करना ये उसको बातिल करने वाला है। वह अमलुल लफ्ज़ैन फी इस्काति मा हुवा हक़्क़ुहु, अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इतना तो हमने बतला दिया कि मिलके यमीन और मिलके निकाह दोनों एक दूसरे जैसी हैं, और मिलके यमीन जो है उसको आजादी के लफ्ज के साथ साकित किया जाता है। आका अपनी बांदी से कहेगा अंत हुर्रतुन, तो वो बांदी आजाद हो जाएगी और मिलके यमीन साकित हो जाएगी। इसी तरह जब खावन जो है उसको मिलके निकाह हासिल है बीवी पर, तो खावन जब बीवी से कहेगा अंत तालिकुन, तो इसके जरिए खावन ने अपनी मिल्कियत को साकित कर दिया। मालूम हुआ आजाद करना यह भी इस्कात मिल्कियत का नाम है, और तलाक देना यह भी इस्कात मिल्कियत का नाम है। आका अपनी बांदी को आजाद करेगा तो मिलके यमीन साकित हो जाएगी, और इसी तरह खावंद अपनी बीवी को तलाक देगा तो मिलके निकाह साकित हो जाएगी। मालूम हुआ तलाक भी इस्कात मिल्कियत का नाम है, और आजाद करना यानी इताक जो है वो भी इस्कात मिल्कियत का नाम है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अमलुल लफ्ज़ैनी, और ये दोनों लफ्जों का अमल, कौन से दोनों लफ्ज, एक तलाक वाला और एक हुर्रियत वाला। कहते हैं वअमलुल लफ्ज़ैन फी इस्काति मा हुवा हक़्क़ुहु, और दोनों लफ्जों का अमल जो है फी इस्काति मा, उस चीज के साकित करने में है कि हुआ हक़्क़ुहु, जो इस कहने वाले का हक है। इन दोनों लफ्जों का अमल क्या है कि ये उस कहने वाले के हक को साकित कर देती हैं। वह हुवल मिल्कु, और वो उसकी मिल्कियत है। तलाक का लफ्ज खावंद कहेगा तो खावंद का जो हक मिल्कियत था यानी मिलके निकाह वो साकित हो जाएगा, और आका अपनी बांदी से कहेगा अंत हुर्रतुन, तो इस अंत हुर्रतुन की वजह से आका का जो हक मिल्कियत था यानी मिलके यमीन वो मिल्कियत साकित हो जाएगी। तो चाहे अंत तालिकुन कह लें चाहे अंत हुर्रतुन कह दें, दोनों में इस्कात मिल्कियत है, कहने वाला अपने हक को दूसरे पर से साकित कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अमल उल लफ्ज़ैनी, और दोनों लफ्जों का अमल जो है फी इसकाती मा उस चीज के साकित करने में है, हुआ हक हु जो उस कहने वाले का हक है, वह हुआ मिल्कु और वो उसकी मिल्कियत है। तो अंत हुर्रतुन ये भी इसकाते मिल्कियत का नाम है और अंत तालिकुन ये भी इसकाते मिल्कियत का नाम है। चुनाचे इसीलिए इनकी तालीक भी सही है। याद रखो याद रखो, इसकात को मुअल्लक किया जा सकता है
जी।
किसको? एक है इसकात एक है इसबात। इसकात में एक चीज को आप साकित करते हैं खत्म करते हैं और इसबात में आप एक चीज को साबित करते हैं। मसलन आपने एक आदमी से बैअ की, मसलन आपने उससे किताब खरीदी कि ये किताब मैंने आपसे 500 रुपए में खरीद ली, वो कहता है मुझे मंजूर है, तो बैअ करते ही आप इस किताब में आपकी मिल्कियत साबित हो गई, आप इस किताब के मालिक बन गए। तो बैअ किस चीज का नाम है? इस बात का नाम है
जी।
और इसी तरह निकाह करता है, एक आदमी एक औरत से निकाह करता है तो जैसे ही इजाब और कबूल हुआ ये दोनों मियां बीवी बन गए, खावंद की मिल्कियत बीवी में साबित हो गई। तो निकाह भी इस बात मिल्कियत का नाम, बैअ भी इस बात मिल्कियत का नाम, जबकि तलाक और आजादी ये इसकात का नाम है। और याद रखो फिका का जाबता है कि ये जो इसकात होते हैं ये तालीक को कबूल कर लेते हैं। आप इसकात को मुअल्लक कर सकते हैं किसी शर्त या मिल्कियत के साथ, जबकि जो इस बात होता है वह तालीक को कबूल नहीं करता, वहां आप निकाह या बैअ वगैरह को मुअल्लक नहीं कर सकते। मसलन एक आदमी दूसरे शख्स से याकद करता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बैअ हो गई, ये तो आप इस बात को मुअल्लक कर रहे हैं, इस बात को मुअल्लक नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि ये तो जुए जैसी सूरत बन गई, पता नहीं वो काम होता है या नहीं होता, नफा होता है या नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो ये जुए जैसी सूरत बन गई। तो जो इस बात है वो तालीक को कबूल नहीं करता, उसको किसी शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता, जबकि जो इसकात है वो तालीक को कबूल कर लेता है। आप उसको शर्त या मिल्कियत के साथ मुअल्लक कर सकते हैं। मसलन एक आदमी बीवी से कहता है कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो तलाक इसकात का नाम है। तो देखो यहां तालीक हो गई, ये तलाक मुअल्लक हो गई, ये औरत उस घर में जाएगी तो तलाक वाकई हो जाएगी। या आका अपने गुलाम से कहता है कि अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है, तो यहां पर भी देखो ये आजादी ये इसकात का नाम है, इसलिए ये तालीक को कबूल कर लेता है, गुलाम उस घर में जाएगा तो आजाद हो जाएगा। तो हासिल कलाम ये कि जो इसकात है वो तालीक को कबूल कर लेते हैं और जो इस बात है वो तालीक को कबूल नहीं करता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक भी इसकात का नाम है और ये आजादी ये भी इसकात का नाम है, इसलिए दोनों तालीक को कबूल कर लेते हैं। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह अमलुल लफ्ज़ैनी फी इसकाति मा हुवा हक्कुहु, और ये दोनों लफ्जों का अमल जो है फी इसकाति उस चीज के साकित करने में है, मा हुवा हक्कुहु जो उस कहने वाले का हक है। ये दोनों लफ्ज भाई कौन से दोनों लफ्ज? अंति हुर्रतुन और अंति तालिकुन। अंति हुर्रतुन से भी आका का अपना हक बांदी से साकित हो जाता है, मिल्कियत साकित हो जाती है, और इसी तरह खावन जब अपनी बीवी से अंति तालिकुन कहता है तो इसके अंदर भी खावन का हक बीवी पर से साकित हो जाता है, मिलके निकाह खत्म हो जाती है। तो कहते हैं वह अमलुल लफ्ज़ैनी, और इन दोनों लफ्जों का अमल जो है फी इसकाति मा हुवा हक्कुहु, ये उस चीज के साकित करने में है जो इस कहने वाले का हक है, वह हुवल मिल्कु और वो उसकी मिल्कियत है, वो साकित हो जाएगी। वलिहादा यसिहु तालीकु फीही बिशर्ती, और इसीलिए इसके साथ तालीक बिशर्त सही है। तलाक और इताक दोनों किस चीज का नाम है? इसकात का नाम है, इसीलिए इनके दरमियान तालीक भी शर्त भी सही है, इनको शर्त के साथ मुअल्लक करना सही है भाई। अम्मल अहकाम तस्बुतु बिसबबिन साबिकिन व हुवा कौनुहु मुकल्लफन वलिहादा यस्लुहु लफ्ज़तुल इत्क़ि वत्तहरीरि किनायतन अनि तलाक फकदा अक्सुहु। भाई देखिए एक सतर बाद हमारी दलील आ रही है, पहले थोड़ा सा उसको देख लें फिर यहीं से दोबारा हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील पढ़ेंगे। भाई नीचे एक सतर बाद है, वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु नवा मा ला यहतमिलुहु लफ्जुहु, कि उस आका ने उस चीज की नीयत की है कि जिसका एहतेमाल वो लफ्ज नहीं रखता। आका ने अपनी बांदी से कहा है अंति तालिकुन, और नीयत किसकी कर रहा है? आजादी की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अंति तालिकुन के अंदर आजादी का एहतेमाल है, लिहाजा आका की नीयत सही है, बांदी आजाद हो जाएगी। जबकि हमारे नजदीक अंति तालिकुन के अंदर आजादी का एहतेमाल ही नहीं है। जब एक चीज का एहतेमाल ही नहीं है तो उसकी नीयत भी नहीं की जा सकती। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु नवा मा ला यहतमिलुहु लफ्जुहु, कि आका ने उस इताक की नीयत की है कि तलाक का लफ्ज उसका एहतेमाल नहीं रखता। लिअन्नल इताक लुगतन, इसलिए क्योंकि इताक जो है लुगतन अरबी जुबान के एतबार से इस्बातुल कुव्वति, वो कुव्वत को साबित करना है। एक चीज में कुव्वत ना हो उसमें कुव्वत साबित कर दी जाए, इसको इताक कहते हैं। इसको एताक चुनाचे अरबी जुबान में कहते हैं, जब परिंदे का बच्चा बड़ा हुआ, ताकतवर हो गया और घोंसले से उड़ने के काबिल हो गया, तो अरबी में कहते हैं आताका ताइरो, परिंदा ताकत वाला हो गया, यानी अभी उड़ने के काबिल हो गया। तो आताका का माना ताकत वाला होना, तो इसी को बाबी हाल में ले जाओ आताका, तो आताका का माना है कुव्वत देना, कुव्वत साबित करना। आताका का माना खुद ताकतवर होना, और आताका का माना दूसरे को कुव्वत देना, दूसरे में कुव्वत साबित करना। और गुलाम भी देखो, गुलाम जब तक गुलाम था वो तो बेजान चीजों की तरह था, उसको तो बेजान चीजों की तरह बेचा जाता है और उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं होता। वो अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से बैउ शिरा नहीं कर सकता, वो किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता। तो गुलाम तो बेजान चीजों की तरह था, लेकिन जब आका उसको आजाद करेगा तो आका ने उसको कुव्वत दे दी, आका ने उसके अंदर कुव्वत साबित कर दी, अब उसको ये सारी विलायतें हासिल हो गई। वो शादी भी अपनी मर्जी से कर सकता है, वो तिजारत भी कर सकता है, वो अहले शहादत भी हो गया भाई, वो चीजों का मालिक भी अब बन सकता है। तो आका ने उसमें कुव्वत साबित कर दी, ये कुव्वत पहले गुलाम में नहीं थी। तो इताक किस चीज का नाम है? इस बात कुव्वत का नाम है, एक चीज में कुव्वत साबित करना जो पहले नहीं थी। जबकि इसके मुकाबले में तलाक जो है, तलाक का माना है रफ़उल कैदी, कैद यानी बंदिश को दूर कर देना, रुकावट को दूर कर देना, इसको कहते हैं तलाक भाई। बंदिश को दूर कर देना, रुकावट को दूर कर देना, क्योंकि तलाक का लफ्ज माखूज है अरबों के इस कौल से, अरब जब किसी ऊंट को रस्सी से खोल देते तो कहते अतलक्तुल बाईरा, मैंने ऊंट को आजाद छोड़ दिया, मैंने ऊंट को खुला छोड़ दिया। तो अतलकल बाईर का क्या माना? ऊंट को खुला छोड़ना, यानी रुकावट को और बंदिश और रस्सी को दूर कर देना। और इसी से तलाक का लफ्ज भी है, मालूम हुआ तलाक का माना है रुकावट को दूर करना, बंदिश को दूर करना। जी। मुझे बताइए, जब मालिक ने ऊंट की रस्सी खोल दी जी। तो क्या रस्सी खोलने की वजह से ऊंट में चलने की ताकत आ गई, या ऊंट में पहले से ही चलने की ताकत मौजूद थी? पहले से ऊंट में चलने की ताकत मौजूद थी, हां सिर्फ एक मान्या था, एक रुकावट थी कि वो बांधा हुआ था। तो जब उसको खोल दिया तो आपने कैद खोल दी, तो वो अब चल पड़ा, अब आजादी से घूमता चरता फिरेगा भाई। तो तलाक इस बात कुव्वत का नाम नहीं है, बल्कि तलाक रफ़े कैद का नाम है, कैद को उठाना, बंदिश को उठा देना। कुव्वत वहां पहले से ही मौजूद थी। और इताक किस चीज का नाम है? इस बात कुव्वत का नाम है, वहां पहले से कुव्वत मौजूद नहीं थी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक इस बात कुव्वत का नाम है जो पहले मौजूद नहीं थी, और दूसरा जो है वो सिर्फ रफ़े कैद का नाम है, जहां पहले से कुव्वत मौजूद थी, सिर्फ एक रुकावट थी, उस रुकावट को दूर कर दिया गया भाई। तो जब दोनों अलग अलग चीजें हैं तो अंति तालिकुन बोलकर अंति हुर्रतुन का इरादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंति तालिकुन का माना है मैंने रुकावट दूर कर दी, और अंति हुर्रतुन का माना तो यह है मैंने आपको कुव्वत दे दी। तो लिहाजा यहां अंति तालिकुन को अंति हुर्रतुन से मजाज करार नहीं दिया जा सकता। तो हासिल ये, हासिल ये कि हमारे नजदीक इताक नाम है इस बात कुवत का, कुवत साबित करना, कुवत देना, क्योंकि गुलाम के अंदर पहले न गवाही देने की अहलियत थी, न मालिक बनने की अहलियत थी, न वो अपनी मर्जी से निकाह वगैरह का तसरुफ कर सकता था, लेकिन अब आका जब उसको आजाद करेगा तो ये उसमें कुव्वत साबित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब फिर आइए जरा इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील पर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही थी, वो फरमाते हैं कि इताक वो भी इसकात का नाम है और तलाक जो है वो भी इसकात का नाम है और दोनों मिल्कियतों में भी मुआफकत है, दोनों मिल्कियतें भी एक जैसी हैं, लिहाजा एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे नजदीक इताक वो इस बात कुव्वत का नाम है, वो इसकात का नाम नहीं बल्कि इस बात का नाम है। चुनांचे इसीलिए गुलाम के अंदर पहले शहादत की अहलियत नहीं थी, उसके अंदर चीजों का मालिक बनने की अहलियत नहीं थी, उसमें अपना निकाह अपनी मर्जी से करने की अहलियत नहीं थी, तवज्जो है। लेकिन जब वो आजाद हो गया तो इन चीजों की अहलियत उसमें आ गई, तो मालूम हुआ इताक वो इस बात का नाम है, इस कात का नाम नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये जो इताक है ये इस बात कुव्वत का नाम नहीं है, ये इस कात मिल्कियत का नाम है। हमने आपको बतला दिया, हमने आपको बतला दिया कि एक है मिलके निकाह, एक है मिलके यमीन, दोनों मिल्कियतों के अंदर मुआफकत है, मुनासबत है, ये दोनों मिलके आयन के दर्जे में हैं। मिलके यमीन का तो मिलके आयन होना जाहिर है और जो मिलके निकाह है वो भी मिलके आयन के हुक्म में है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी ताबीद शर्त है, उसका मुअब्बद होना शर्त है और तौकीद जो है वो उसको बातिल करने वाली है भाई। तो ये दोनों मिल्कियतों में मुनासबत है और ये जो दोनों लफ्ज हैं, एक तलाक वाला एक हुर्रियत वाला, ये दोनों लफ्ज इन मिल्कियतों को साकित करते हैं। तो मालूम हुआ तलाक और इताक ये इसकात मिल्कियत का फायदा देते हैं और इसी वजह से इस इताक के अंदर भी शर्त के जरिए तालीक सही है, इसको शर्त के जरिए मुअल्लक करना सही है, क्योंकि इसकात जो है उसको तो मुअल्लक किया जा सकता है लेकिन इस बात मिल्कियत जो है कि मिल्कियत साबित करना, इसको तो शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता। तो ए अहनाफ, आपके नजदीक भी इताक जो है उसको शर्त के साथ मुअल्लक किया जा सकता है। मालूम हुआ ये इसकात की कबील से है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलिहादा यसिहु तालीकु फीहि बिशर्ती, और इसीलिए इताक के अंदर तालीक भी शर्त सही है और इसी वजह से इताक को शर्त के साथ मुअल्लक करना सही है। अम्मल अहकाम तस्बुतु बिसबबिन साबिकिन वहुवा कौनुहु मुकल्लफन, हमने कहा था इताक जो है इस बात कुव्वत का नाम है, चुनांचे इसीलिए गुलाम जो है इससे पहले उसमें शहादत की अहलियत नहीं थी, आजाद होगा उसमें शहादत की अहलियत आ जाएगी, वो काजी बन सकता है, वो चीजों का मालिक बन सकता है, वो बेउशिरा और तिजारत कर सकता है, जबकि ये कुव्वत उसमें पहले मौजूद नहीं थी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, इताक जो है वो इस बात कुव्वत का नाम नहीं है, ये इसकात मिल्कियत का नाम है और ये जो गुलाम के अंदर इन चीजों की कुव्वत आ गई, कहते हैं ये कुव्वत उसके अंदर पहले से साबित थी क्योंकि वो इंसान है, आकिल है, बालिग है, मुकल्लफ है, तो ये जो चीजें थी इनकी कुव्वत उसके अंदर पहले से ही साबित थी। हां सिर्फ एक मान्या मौजूद था कि वो गुलाम था, इसलिए वो गवाह नहीं बन सकता था। हां अगरचे गवाह बनने की सलाहियत उसमें पहले थी क्योंकि वो मुकल्लफ है। मुकल्लफ का क्या माना, जिम्मेदार भाई, इंसान को अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया है, उस पर शरीय अहकाम लागू होते हैं भाई। तो ये जो गुलाम है ये इंसान है, आकिल है, बालिग है, मुकल्लफ है, लिहाजा इसके अंदर गवाही की भी अहलियत थी, इसके अंदर बेउशिरा की भी अहलियत थी और इसके अंदर अपना निकाह करने की भी अहलियत थी, लेकिन एक मान्या आ गया था, एक रुकावट आ गई थी कि यह गुलाम था भाई। और अब जब आका ने इसको आजाद कर दिया वाका ने इस पर से मिल्कियत साकित कर दी, तो अब वो जो कुव्वत थी वो जाहिर हो गई। पहले वो कुव्वत क्या थी, छुपी हुई थी, अब जाहिर हो गई। तो ए अहनाफ, आपका ये कहना कि इता की वजह से गुलाम में यह कुव्वत साबित हो गई, यह हमें कबूल नहीं, बल्कि इता की वजह से यह कुव्वत जाहिर हुई है, यह कुव्वत उसमें पहले से ही मौजूद थी आकिल बालिग इंसान होने की वजह से। तो कहते हैं अमल अहकाम तस्बुतु भी सबब इन साबिकिन, और बाकी जो अहकाम हैं यानी आजादी के जो अहकाम हैं, तस्बुतु भी सबब इन साबिकिन, वो तो साबित होते हैं साबका सबब की वजह से। वह हुआ कौनुहु मुकल्लफन, और वो इस गुलाम का मुकल्लफ होना है कि ये आकिल बालिग है, भाई ये जिम्मेदार है, अल्लाह ने इसको जिम्मेदार बनाया है, इस पर शरीयत काम लागू होते हैं। अलबत्त सिर्फ एक मानिया आ गया था जिसकी वजह से ये कुव्वत उसकी जाहिर नहीं हो रही थी, अब ये कुव्वत जाहिर हो गई। मालूम हुआ इताक जो है वह इस बात कुव्वत का नाम नहीं है, बल्कि ये इस कात मिल्कियत का नाम है, और जब मिल्कियत साकित होगी तो कुव्वत जो पहले से मौजूद थी वो जाहिर हो जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं अमल अहकाम तस्बुतु बिसबबिन साबिकिन, तो ये जो आजादी के अहकाम हैं ये साबका सबब की वजह से साबित होते हैं। वह हुआ कौनुहु मुकल्लफन, और वो इस गुलाम का मुकल्लफ होना है, जिम्मेदार होना है। वलिहादा यस्लुहु लफ्ज़तुल इत्क व तहरीर किनायतन अनित तलाक फकज़ा अक्सुहु। इमाम शाफी रहमल्ला की दलील चल रही है, तवज्जो से सुनिए। इमाम शाफी रहमल्ला ने इस दलील के आगाज में जिक्र फरमाया कि ये जो तलाक का लफ्ज है ये आजादी का एहतमाल रखता है जी। हमने तो क्या कहा कि तलाक का लफ्ज आजादी का एहतमाल नहीं रखता, लेकिन इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं कि तलाक का लफ्ज आजादी का एहतमाल रखता है। और फिर इमाम शाफी रहमल्ला ने वजह जिक्र फरमाई, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये दोनों मिल्कियतों के अंदर मुनासबत है, एक मिलके यमीन और एक मिलके निकाह, और नीज ये जो तलाक और आजादी के लफ्ज हैं ये इन मिल्कियतों को साकित कर देते हैं, ये दोनों इसकात का नाम है। इसीलिए तो जिस तरह तलाक के अंदर तालीक सही है, इसी तरह इताक के अंदर भी शर्त के जरिए तालीक सही है। अगर इताक इसकात का नाम न होता तो फिर इसमें तो तालीक ही सही नहीं होनी थी, लेकिन उसके अंदर तालीक भी सही है। मालूम हुआ इताक और तलाक दोनों में मुनासबत है, इसीलिए तो ए अहनाफ आपके नजदीक भी इताक वाला लफ्ज बोलकर तलाक का इरादा करना सही है। मैंने आपको बतलाया खावंद अगर अपनी बीवी से कहता है अंत हुर्रतुन, तू आजाद है, और नियत करता है तलाक की, तो तलाक वाकई हो जाएगी, तो तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि ये किनाया है और किनाये के अंदर और माना का भी इस्तेमाल होता है, तो अंत हुर्रतुन का यह माना भी हो सकता है कि तू कामकाज से आजाद है, तुझे आज से कामकाज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी मुलाजिमा वगैरह का बंदोबस्त कर दूंगा, और इसका यह माना भी हो सकता है कि तू आजाद है यानी मेरे निकाह से आजाद है, मैंने तुझे तलाक दे दी है। तो इमाम शाफी रहमल्ला की दलील चल रही है, इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं कि ए अहनाफ आपके नजदीक हुर्रियत वाला लफ्ज यानी इताक वाला लफ्ज बोलकर तलाक की नियत सही है। मालूम हुआ इताक की मुनासबत है तलाक के साथ, इताक की मुनासबत है तलाक के साथ, अगर मुनासबत न होती तो फिर आप इताक को तो तलाक में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो दोनों लफ्जों के अंदर मुनासबत मौजूद है, इसीलिए इताक वाला लफ्ज बोलकर तलाक का इरादा सही है। जब इताक वाला लफ्ज बोलकर तलाक का इरादा सही है तो तलाक वाला लफ्ज बोलकर इताक का इरादा भी सही होगा, क्योंकि दोनों में मुनासबत पाई जा रही है। मुनासबत मुनासबत देखो बाबे मुफाला है, नासब युनासिबो मुनासबतन, और बाबे मुफाला जानिबैन से फेल चाहता है। जब मैं कहता हूं कि जैद जैद अमर जैसा है तो इसका मतलब है अमर भी जैद जैसा है, दोनों तरफ से मुनासबत मौजूद है। तो ए अहनाफ आपके नजदीक इताक बोलकर तलाक का इरादा सही, क्योंकि दोनों में मुनासबत है। जब इताक की तरफ से मुनासबत मौजूद है तो तलाक की तरफ से भी इताक के साथ मुनासबत मौजूद है, लिहाजा तलाक का लफ्ज बोलकर भी इताक का इरादा किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। व लिहाजा और इसी वजह से वलिहाजा, इसी वजह से क्या माना, यानी कि जो तलाक का लफ्ज है यह इताक का इहतेमाल रखता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जहां शुरू हुई थी जरा वहां देखिए, लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहु नवा मा यहतमिलुहु लफ्जुहु, कि आका ने उस इताक की नीयत की है कि तलाक का लफ्ज उसका इहतेमाल रखता है, तलाक का लफ्ज उसका इहतेमाल रखता है। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दोनों मिल्कियतों में मुनासबत जिक्र कर दी, और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बतलाया कि ये तलाक और इताक दोनों इस्कात का नाम है। मालूम हुआ दोनों के दरमियान मुनासबत मौजूद है, और जब दोनों के अंदर मुनासबत मौजूद है तो मालूम हुआ तलाक के अंदर इताक का इहतेमाल है, तलाक के अंदर इताक का इहतेमाल है। जब उसका इहतेमाल है तो उसकी नीयत करना भी सही है भाई। तो कहते हैं वली हादा, और इसी वजह से कि तलाक का लफ्ज इताक का इहतेमाल रखता है, इसी वजह से यसलुहु लफ्जतुल इत्क व तहरीरी, के इत्क और तहरीर, इत्क का माना भी आजादी, तहरीर का माना आजाद करना। वली हादा यसलुहु लफ्जतुल इत्क व तहरीरी, और इसी वजह से इत्क और तहरीर का जो लफ्ज है वो सलाहियत रखता है, किनायतन अनी तलाकी, तलाक से किनाया होने का, कि इताक वाला लफ्ज खावंद बोले और किनाया किससे करे, तलाक से। खावंद अपनी बीवी से कहे अंत हुर्रतुन, और इरादा किसका करता है, तलाक का, तो ए अहनाफ आपके नजदीक भी तलाक वाके हो जाएगी। मालूम हुआ इन दोनों में क्या है, मुनासबत है। तो कहते हैं वलिहादा यसलुहु लफ्जतुल इत्क व तहरीरी किनायतन अनी तलाकी, और इसी वजह से इत्क और तहरीर का जो लफ्ज है वो सलाहियत रखता है कि वो तलाक से किनाया हो। फकदा अक्सुहु, तो इसी तरह इसका बरअक्स भी होगा कि तलाक का लफ्ज भी सलाहियत रखता है कि वो इताक से किनाया हो, क्योंकि मुनासिबत सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, मुनासिबत दोनों तरफ से होती है। जब मैंने कहा जैद की अमर के साथ मुनासिबत है जी, तो इसका मतलब है अमर की भी जैद के साथ मुनासिबत है। यह नहीं हो सकता सिर्फ जैद की तो अमर से मुनासिबत हो और अमर की जैद के साथ मुनासिबत ना हो, मुनासिबत दोनों तरफ से होती है जी। मसलन जैद की अमर के साथ मुनासिबत है किस चीज में, सखावत में, जैद के अंदर भी सखावत है और अमर के अंदर भी सखावत। तो जब जैद की अमर के साथ मुनासबत है सखावत के अंदर, तो अमर की भी सखावत में जैद के साथ मुनासबत है, तो ये मुनासबत दोनों जानिब से होती है। तो जब इताक जो है उसको तलाक के लिए बतौर किनाया इस्तेमाल किया जा सकता है, तो तलाक को भी इताक के लिए बतौर किनाया इस्तेमाल किया जा सकता है। दलील समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं वलिहादा यसलुहु लफ्जतुल इत्क व तहरीरी किनायतन अनी तलाकी, और इसीलिए इत्क और तहरीर का जो लफ्ज है यह सलाहियत रखता है तलाक से किनाया होने की। फकदा अक्सुहु, तो इसी तरह इसका बरअक्स भी होगा, यानी तलाक का लफ्ज जो है वो भी सलाहियत रखता है कि इत्क और तहरीर से किनाया हो जाए। आगे देखिए, आगे हमारी दलील आ रही है वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु नवा, हमारी दलील क्या थी कि तलाक का लफ्ज इताक का इहतेमाल नहीं रखता। इताक का लफ्ज तो तलाक का इहतेमाल रखता है, लेकिन तलाक का लफ्ज इताक का इहतेमाल नहीं रखता। और हमने बतलाया था कि इताक जो है वो इस बात कुव्वत का नाम है, कुव्वत साबित करना, और तलाक जो है वो रफ़े कैद का नाम है। देखिए भाई साहिब हिदाया इस सब को अब बयान फरमाएंगे। वलना, और हमारी दलील ये है कि अन्नहु नवा माला यहतमिलुहु लफ्जुहु, कि आका ने उस इताक की नीयत की है, ला यहतमिलुहु लफ्जुहु, के तलाक का लफ्ज उसका इहतेमाल नहीं रखता। लिअन्नल इताक लुगतन, इसलिए क्योंकि इताक जो है वो अरबी जुबान के एतबार से इस बातुल कुव्वती, कुव्वत को साबित करना है। मैंने आपको बतलाया था कि इताक का लफ्ज आतकत ताइर से माखूज है। अरबी जुबान में कहते हैं जब कोई परिंदे का बच्चा ताकतवर हो जाए और उड़ने के काबिल हो जाए तो अरबी जुबान में कहते हैं आतकत ताइर, परिंदा ताकतवर हो गया। तो आताका मुजर्रद से है, इसका माना है ताकत वाला होना। इसी को बाबे फाल में ले गए, आताका योति को इताक, इसका माना है दूसरे को ताकत देना। तो कहते हैं लि अन अल इताक लुगतन इस बातुल कुवती, इसलिए क्योंकि इताक जो है अरबी जुबान के एतबार से वो कुवत को साबित करना है। व तलाक रफ़ुल कैदी, और तलाक जो है वो कैद को उठाना है, यानी अरबी जुबान के एतबार से। मैंने बतलाया आपको कि तलाक का लफ्ज जो है वो अतलकल बईर से माखूज है। अरबी जुबान में कहते हैं जब कोई शख्स ऊंट को आजाद छोड़ दे तो कहता है अतलकतुल बईरा, मैंने ऊंट को आजाद छोड़ दिया, मैंने ऊंट को खुला छोड़ दिया, यानी कैद और बंदिश को दूर कर दिया, रस्सी को दूर कर दिया। और देखिए ऊंट के अंदर चलने की कुव्वत पहले से मौजूद थी, सिर्फ एक बंदिश और रुकावट और रस्सी मौजूद थी जो उसको चलने नहीं दे रही थी। अब जब वो बंदिश और रुकावट दूर हो गई तो ऊंट अब आजादी से घूम फिर सकता है। तो कहते हैं वह तलाक रफ़ुल कैदी, और तलाक जो है वो कैद को उठाना है, वो बंदिश को दूर करना है अरबी जुबान के एतबार से। वहादा, और ये इसलिए लिअन्न अल-अब्द, भैया इताक इस बात कुव्वत का नाम है, इताक इस बात कुव्वत का नाम है। किस तरह इस बात कुव्वत है, तफसील मैंने बयान कर दी थी कि गुलामी के दौरान गुलाम को किसी किस्म की विलायत हासिल नहीं होती, लेकिन जब आजाद होता है तो उसमें कुव्वत आ गई, वो अब हर तरह की विलायत और अहलियत उसमें साबित हो गई। तो बई एतबार गुलाम के अंदर कुव्वत साबित कर दी आका ने बई। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए लिअन्न अल-अब्द उल्हिक बिल जमादाती, कि गुलाम जो है उसको मिलाया गया है जमादात के साथ, यानी बेजान चीजों के साथ। गुलाम तो बेजान चीजों की तरह है, उसकी बेउ शिरा की जाती है, उसको किसी किस्म का इख्तियार नहीं होता। तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लिअन्न अल-अब्द उल्हिक बिल जमादाती, गुलाम जो है उसको बेजान चीजों के साथ मिलाया गया है, यानी वो बेजान चीजों जैसा है। वबिल इताक यहया फयकदिरु, वबिल इताक यहया हयिया, यहया का माना है जिंदा होना, और इताक की वजह से यह गुलाम जिंदा हो जाता है। फयकदिरु, तो कादिर हो जाता है। अब वो शहादत देने पर भी कादिर और हर किस्म की विलायत पर भी कादिर हुआ, वो उसको हासिल हो गई। तो कहते हैं वबिल इताक यहया फयकदिरु, और इताक की वजह से वो जिंदा हो जाता है तो वो कादिर हो जाता है इन तमाम तसर्रुफात पर। वला कदालिकल मनकूहतु फइन्नहा कादिरतुन। अच्छा भाई, तो मालूम हुआ इताक इस बात कुव्वत का नाम है, यानी वो कुव्वत जो गुलाम में पहले मौजूद नहीं थी, अब वो कुव्वत उसके लिए साबित कर दी गई। और जबकि इसके मुकाबले में तलाक रफ़ कैद का नाम है, चुनांचे जो औरत है, औरत मनकूहा जो है, मनकूहा जिसका निकाह हो गया, उसमें हर किस्म के तसर्रुफात की पहले से ही कुव्वत मौजूद है, वो आजाद है, आकिला है, बालिगा है, तो मनकूहा में हर किस्म के तसर्रुफात की अहलियत पहले से मौजूद है। हां, निकाह की वजह से कुछ पाबंदियां उस पर आ गईं, मसलन वो अब आगे किसी और से निकाह नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले से ही किसी एक शख्स की मनकूहा है भाई। तो ये औरत पर पाबंदी आ गई, रुकावट आ गई निकाह की वजह से। किसकी वजह से? निकाह की वजह से रुकावट आ गई। कुदरत और सलाहियत औरत में मौजूद है लेकिन निकाह की वजह से रुकावट है। जब खावन तलाक दे देगा तो यह रुकावट भी खत्म हो जाएगी, फिर औरत इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह भी कर सकती है। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ इताक के अंदर गुलाम में कुव्वत साबित की जाती है, जबकि तलाक के अंदर औरत में कुव्वत साबित नहीं होती, बल्कि वहां रुकावट और बंदिश दूर हो जाती है, यानी रफ़उल कैद होता है। तो कहते हैं वला कदालिकल मनकूहतु, और मनकूहा औरत जो है वो ऐसी नहीं है। फइन्नहा कादिरतुन, क्योंकि वो तो हर तरह के तसर्रुफात पर कादिर होती है। इल्ला अन्न कैदन निकाह मानिउन, मगर ये कि निकाह की जो कैद है, निकाह की जो बंदिश है, मानिउन वो मानिया बन जाती है, बास तसर्रुफात से मान्या बन जाती है, वो अब औरत किसी और से निकाह नहीं कर सकती। वह भी तलाक यरतफिउल मानिउ, और तलाक की वजह से वो मान्या भी उठ जाता है। तो तलाक जो है वो रफ़े कैद का नाम है, उससे बंदिश और रुकावट दूर होती है, उसकी वजह से कोई नई कुव्वत औरत में साबित नहीं होती भाई, कुव्वत उसमें पहले से मौजूद थी। तो कहते हैं वह बितलाकियर तफीउल मानिउ, और तलाक की वजह से वो मान्या भी उठ जाता है। फयाज हरुल कुव्वतु, तो कुव्वत जाहिर हो जाती है, औरत के अंदर कुव्वत पहले से मौजूद थी, अब मसलन निकाह करने की कुव्वत उसमें पहले से थी, लेकिन अब जब एक जगह निकाह कर लिया तो अब मानेअ आ गया, अब ये आगे निकाह नहीं कर सकती। लेकिन जब खावन तलाक दे देगा अब ये मानेअ भी चला गया, तो औरत में कुव्वत साबित नहीं हुई, बल्कि वो जो कुव्वत थी वो जाहिर हो गई, वो कुव्वत जाहिर हो गई। तो यूं कहो कि एताक वो इस बात कुव्वत का नाम है, कुव्वत साबित करना, और तलाक जो है वो इजहार कुव्वत का नाम है, उसमें कुव्वत जाहिर हो जाती है, जाहिर कर दी जाती है। तो कहते हैं वह भी तलाकियर तफियुल मानिया, और तलाक की वजह से वो मानिया जो है वो उठ जाता है। फयाजहर उल कुव्वत, तो कुव्वत जाहिर हो जाती है, अब वो औरत आगे निकाह कर सकती है। वला खफा अनल अव्वल अकवा, और इस बात में कोई खिफा नहीं कि पहला जो है वो ज्यादा कवी है, पहला ज्यादा कवी है। भाई देखो एताक किस चीज का नाम है, इस बाते कुव्वत, कुव्वत साबित करना, और तलाक जो है वो रफ़े कैद का नाम है, कैद और बंदिश को दूर कर देना, यानी उसमें इजहार कुव्वत होता है, कुव्वत को जाहिर करना, यानी कुव्वत पहले से थी लेकिन सिर्फ उसको जाहिर किया गया, और जाहिर सी बात है इस बाते कुव्वत ये आला है किसके मुकाबले में, इजहार कुव्वत के मुकाबले में, यानी इस बात कुव्वत वो ज्यादा कवी है किसके मुकाबले में, इजहार कुव्वत के मुकाबले में। और याद रखना साहिब हिदाया भी आपको आगे बतलाएंगे कि एक है लफ्ज का हकीकी माना और एक है मजाजी माना। आप एक लफ्ज को एक मजाजी माना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि वह मजाजी माना कुव्वत के अंदर, कुव्वत के अंदर हकीकी माना से बढ़कर ना हो, हकीकी माना से ज्यादा ना हो। भाई मसलन जैद भी बहादुर है, शेर भी बहादुर है, अब आप शेर का लफ्ज जैद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि शेर बहादुरी में जैद से बढ़कर है भाई, तो वो शेर का लफ्ज आप जैद के लिए जो बहादुरी में शेर से कम है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जैद बहादुरी में शेर से भी ज्यादा है तो अब आप शेर का लफ्ज जैद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो आप जैद के दर्जा कम कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय भाई। तो लिहाजा जब भी एक लफ्ज को मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए तो जरूरी है कि वो मजाजी माना हकीकी माना से कुव्वत में ज्यादा ना हो भाई, ये शर्त है। बात समझ में आ गई, क्या जाब्ता हुआ कि लफ्ज को जब भी किसी मजाजी माना में इस्तेमाल करना हो यह जरूरी है कि वह मजाजी माना हकीकी माना से कुव्वत के अंदर बढ़ा हुआ ना हो भाई। तो अब यहां पर भी साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि एताक जो है वह इस बात कुव्वत का नाम है, कुव्वत साबित करना, और तलाक जो है वह रफ़े कैद यानी इजहार कुव्वत का नाम है, और जाहिर सी बात है इस बात कुव्वत वो ज्यादा कवी है, उसमें कुव्वत साबित कर दी जो पहले मौजूद ही नहीं थी, और तलाक के अंदर सिर्फ सिर्फ मानिया को दूर किया गया है, कुव्वत सिर्फ जाहिर की गई है, वो पहले से मौजूद थी, तो कुव्वत में कौन ज्यादा, इस बात कुव्वत जो है वो ज्यादा है, उसमें कुव्वत साबित की जाती है जो पहले से मौजूद ही नहीं थी। तो मालूम हुआ एताक वो कुव्वत के अंदर बढ़कर है और तलाक कुव्वत के अंदर कम दर्जे की है, तो तलाक का लफ्ज आला यानी एताक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दलील समझ में आई, तो कहते हैं वला खफा अनल अव्वल अकवा, और इस बात में कोई खिफा नहीं है कि अव्वल यानी एताक जो है अकवा वो ज्यादा कुव्वत वाला है तलाक के मुकाबले में, लिहाजा तलाक का लफ्ज एताक के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वली अन्ना, यहां से दूसरा जवाब दे रहे हैं, भाई देखिए साहिब हिदाया ने जो पहला जवाब दिया वो मनई था और दूसरा जवाब तस्लीमी देंगे। जवाब मनई जिसमें मुखालिफ की बात का इनकार किया जाता है, जवाब तस्लीमी जिसमें मुखालिफ की बात को तस्लीम किया जाता है और फिर जवाब दिया जाता है। तो पहला जवाब मनई था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे एताक जो है वो इस्कात मिल्कियत का नाम है, मिल्कियत को साकित करना। हमने कहा नहीं, एताक इस्कात मिल्कियत का नाम नहीं है बल्कि वो इस बात कुव्वत का नाम है, इस्कात का नाम नहीं बल्कि इस बात यानी साबित करने का नाम है। तो पहला जवाब इनकारी था, पहला जवाब मनई था, बात समझ में आ गई। अब दूसरा जवाब तस्लीमी देंगे कि हमें तस्लीम है, इताक भी इसकात का नाम है, इताक भी इसकात का नाम है, साकित करने का नाम है। तो कहते हैं जवाब तस्लीमी अब दे रहे हैं, कहते हैं वली अन्न मिल्क अल यमीनी फौक मिल्क निकाही, और इसलिए क्योंकि मिल्क यमीन जो है वो मिल्क निकाह से बढ़कर है, मिल्क यमीन मिल्क निकाह से बढ़कर है। भाई भाई देखिए, जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो खावंद को मिल्क मुता हासिल हो जाती है, खावंद के लिए इस औरत से सोहबत करना जायज हो जाता है। इसी तरह जब कोई शख्स किसी बांदी को खरीदता है तो खरीदने की वजह से उसको मिलके यमीन हासिल हुई, और इस मिलके यमीन की वजह से उसको मिलके मुता भी हासिल हो गई, मिलके मुता भी हासिल हो गई, मालूम हुआ मिलके यमीन के जिमन में मिलके मुता भी हासिल हो जाती है, मिलके यमीन के जिमन में मिलके मुता भी हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं है कि मिलके निकाह के जिमन में मिलके यमीन हासिल हो जाए। एक आदमी एक औरत से निकाह करे और आदमी उसका मालिक बन जाए, नहीं भाई, मिलके निकाह के जिमन में कभी इंसान उस औरत का मालिक नहीं बनता, सिर्फ उसके लिए मिलके मुता हासिल होती है। तो मिलके निकाह के जिमन में मिलके यमीन कभी भी हासिल नहीं हो सकती, लेकिन मिलके यमीन के जिमन में मिलके मुता हासिल हो सकती है। मालूम हुआ मिलके यमीन मिलके निकाह से बढ़कर है भाई। तो कहते हैं वली अन्ना मिलकल यमीनी फौका मिल्क निकाही, और इसलिए क्योंकि मिल्क यमीन जो है वो मिल्क निकाह से बढ़कर है, फकान इसकातुहु अक्वा वल्लफ्ज़ु यस्लुहु मजाज़न अम्मा हुवा दून हकीकतिही। साहिब हिदाया जवाब तस्लीमी जिक्र फरमा रहे हैं भाई कि हमें भी तस्लीम है, इताक भी इसकाते मिल्कियत का नाम है, यानी मिल्कियत को साकित करना, मिल्कियत को खत्म करना, लेकिन मिलके यमीन वो आला है किसके मुकाबले में, मिलके निकाह के मुकाबले में। मिलके यमीन के जिमन में मिलके मुता हासिल हो जाती है, लेकिन मिलके निकाह के जिमन में कभी भी मिलके यमीन हासिल नहीं होती। मालूम हुआ मिलके यमीन अकवा है किसके मुकाबले में, मिलके निकाह के मुकाबले में। जब मिलके यमीन अकवा है तो इसका इसकात भी अकवा होगा, तो इसका इसकात भी अकवा होगा मिलके निकाह के इसकात के मुकाबले में। मालूम हुआ मिलके यमीन का इसकात अकवा है और मिलके निकाह का इसकात अदना है, लिहाजा मालूम हुआ तलाक के अंदर अदना दर्जे का इसकात है और इताक के अंदर आला दर्जे का इसकात है, लिहाजा तलाक जो अदना दर्जे का इसकात है उसको मजाजन इताक के लिए जो उससे इसकात में बढ़कर है उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वही बात भाई के एक लफ्ज को आप मजाजी माना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो मजाजी माना हकीकी माना से कुवत में बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और यहां पर इसकाते मिलके निकाह जो है यानी तलाक वो अदना है और इसकाते मिलके यमीन यानी इताक वो आला है, तो अदना यानी तलाक को आला यानी इताक के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वली अन्ना मिलकल यमीनी फौका मिल्क निकाह है, और इसलिए क्योंकि मिल्क यमीन जो है वो मिल्क निकाह से बढ़कर है, फकान इसकातुहु अकवा, तो मिल्क यमीन का इसकात जो है वो भी ज्यादा कवि होगा मिल्क निकाह के इसकात के मुकाबले में। व लफ्ज़ यस्लुहु मजाजन अम्मा हुवा दून हकीकतिही, और लफ्ज़ जो है वो सलाहियत रखता है मजाज होने की, अम्मा हुवा दून हकीकतिही, उस माना से जो उसकी हकीकत से कम दर्जे का हो। लफ्ज जो है वो मजाज होने की सलाहियत रखता है उस माना से जो उसके हकीकत से यानी उसके हकीकी माना से कम दर्जे का हो, तवज्जो है। तो कहते हैं वल्लफ्ज़ यस्लुहु मजाजन, और लफ्ज जो है वो सलाहियत रखता है मजाज होने की, अम्मा हुआ दून हकीकतिही, उस माना से जो उसकी हकीकत से कम दर्जे का हो, ला अम्मा फौकहु, न के उस माना से जो उसकी हकीकत से बढ़कर हो। फलिहाद अम्तना फिल मुतनाजा फीही वंसा गफी अक्सी ही, मुतनाजा फीह भाई तनाजो का माना है झगड़ा, झगड़ा तो तनाजो का माना है झगड़ा, और हमारा और शवाफे का झगड़ा किस चीज में है? हमारे नजदीक इताक वाला लफ्ज़ बोलकर तलाक का इरादा तो सही है, लेकिन तलाक वाला लफ्ज़ बोलकर इताक का इरादा सही नहीं। और जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों सूरतें जायज हैं, इताक बोलकर तलाक का इरादा भी सही और तलाक बोलकर इताक का इरादा भी सही। मालूम हुआ हमारा और उनका झगड़ा इस बात में है कि तलाक का लफ्ज़ इताक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तलाक का लफ्ज़ इताक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो इसमें झगड़ा है। यह है मुतनाजा फीह। तो यह जो मुतनाजा फीह है, इसके अंदर तलाक का लफ्ज इताक के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं इसमें तलाक का लफ्ज इताक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने बतला दिया कि जैसे तलाक इस्कात मिल्कियत का नाम है, इसी तरह इताक भी इस्कात मिल्कियत का नाम है। लेकिन इताक से जो इस्कात आता है वो अकवा है, और जो तलाक से इस्कात आता है वो अदना है, और अदना को आला के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर तर्जमा देख लीजिए, वल्लफ्ज़ यस्लुहु मजाजन अम्मा हुआ दूना हकीकतिही ला अम्मा हुआ फौकहू, और लफ्ज़ जो है वो मजाज होने की सलाहियत रखता है उस माना से जो उसकी हकीकत से कम दर्जे का हो, ला अम्मा हुआ फौकहू न कि उस माना से जो उसकी हकीकत से बढ़कर हो। फलिहाद अम्तना फिल मुतनाज़ाई फीही, और इसीलिए मजाज मुमतना होगा फिल मुतनाज़ाई फीही। मुतनाज़ा फी मसले में उसमें मजाज मुमतना होगा। वन सागा फी अक्सी ही, इन सागा या सागो इन सियागन का माना है जायज होना। तो तलाक, इधर देखिए, तलाक बोलकर इताक का इरादा करना यह तो जायज नहीं, लेकिन इताक बोलकर तलाक का इरादा जायज है, क्योंकि इताक है आला दर्जे का और तलाक है अदना दर्जे की, और आला का लफ्ज अदना के लिए मजाजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये माना है वन सागा फी अक्सी ही, और जायज होगा इसके बराक्स सूरत में। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कहते हैं वइदा काल अली अब्दी ही अंत मिसलुल हुर्र लम यातिक, आका ने अपने गुलाम से कहा कि तू आजाद आदमी जैसा है। अंता मिसलुल हुर्री, तू आजाद आदमी जैसा है, आका ने अपने गुलाम से कहा। तो फुकहा फरमाते हैं ये आजाद नहीं होगा। वजह ये, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे, वजह यह कि जो मिसल का लफ्ज है यह आम लोगों में इस्तेमाल होता है बाज़े सिफात में मुशारकत बयान करने के लिए। जब कहा जाए जैद अमर जैसा है, तो कहने वाले का यह मतलब नहीं होता कि जैद हर चीज में अमर जैसा है, बल्कि मतलब होता है बाज़े सिफात के अंदर जैद अमर जैसा है। मसलन जैसे अमर सखी है, इसी तरह जैद भी सखी है, या जैसे अमर बहादुर है, जैद भी बहादुर है। तो लिहाजा ये जो मिसल का लफ्ज है बाज़े सिफात के अंदर मुशारकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्फ में, यानी आम लोगों की आदत में। तो यहां पर भी आका ने अपने गुलाम से क्या कहा है, अंता मिसलुल हुर्री, तू आजाद आदमी जैसा है, मिसल का लफ्ज जिक्र किया, और मिसल का लफ्ज तो बाज़ सिफात में मुशारकत के लिए जिक्र किया जाता है। तो अब इसका यह माना भी हो सकता है कि ए गुलाम तू आजाद आदमी की तरह है बहादुरी में, या यह माना भी हो सकता है कि ए गुलाम तू आजाद आदमी की तरह है अकलमंदी के अंदर, और इसका यह माना भी हो सकता है तू आजाद आदमी की तरह है आजादी में। आजादी भी तो एक सिफत है। तो लिहाजा मिसल का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मिसल का लफ्ज बाज़े सिफात में मुशारकत के लिए आता है, तमाम सिफात में मुशारकत के लिए नहीं आता। लिहाजा अब किस सिफत में मुशारकत जिक्र की जा रही है वो यहां जिक्र नहीं। ये भी एहतमाल है आजादी में मुशारकत बयान की जा रही हो, और यह भी हो सकता है कि अकलमंदी के अंदर मुशारकत बयान की जा रही हो, और यह भी हो सकता है कि आजादी के अंदर मुशारकत बयान की जा रही हो। तो लिहाजा आजादी में शक आ गया जी। क्योंकि अगर आजादी में मुशारकत बयान करेगा फिर तो गुलाम आजाद हो जाएगा, लेकिन वो तो यहां पर यकीनी नहीं, सिफत तो उसने जिक्र नहीं की कि किस सिफत में तू आजाद की तरह है। तो लिहाजा ये गुलाम के आजाद होने में शक आ गया, शक आया तो ये गुलाम आजाद नहीं होगा। तो ये माना है लि अन अल मिसल युस्तामल लिल मुशारकति फी बाज़िल मआनी उर्फन, इसलिए क्योंकि मिसल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लिल मुशारकति फी बाज़िल मआनी, बाज़े मानी यानी बाज़े सिफात के अंदर मुशारकत बयान करने के लिए, उर्फन उर्फ के एतबार से यानी आम लोगों की आदत यह है कि मिसल का लफ्ज बाज़े सिफात में मुशारकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तमाम सिफात में नहीं। अगर तमाम सिफात के लिए इस्तेमाल होता तो फिर तो माना यह था अंत मिसलुल हुर्री, ए गुलाम तू आजाद की तरह है तमाम सिफात में। जब तमाम सिफात में आजाद की तरह है तो मालूम हुआ आजादी की सिफत में भी तो आजाद की तरह है, तो उस सूरत में इसने आजाद हो जाना था। लेकिन मिसल का लफ्ज तो तमाम सिफात में मुशारकत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बाज़ सिफात में मुशारकत के लिए इस्तेमाल होता है और वह बाज़ सिफत तो यहां जिक्र नहीं, लिहाजा गुलाम की आजादी में शक आ गया कि पता नहीं आजादी में मुशारकत बयान कर रहा है कि तू भी आजाद आदमी की तरह आजाद है, या बहादुरी वगैरह में मुशारकत बयान कर रहा है कि तू भी आजाद आदमियों की तरह बहादुर है, तो आजादी में शक आ गया और शक की वजह से गुलाम आजाद नहीं होगा, क्योंकि गुलाम का गुलाम होना तो यकीनी और आजाद होने में शक आया। हालांकि फिका का जाब्ता है अल यकीन ला यजूल इल्ला बिल यकीन, यकीन यकीन ही के जरिए खत्म हो सकता है, तो गुलाम होना यकीनी, गुलाम है ना, आका अपने गुलाम से कह रहा है, और आजादी में क्या आ गया, शक आ गया, और शक की वजह से यकीनी चीज खत्म नहीं हो सकती। भाई तो कहते हैं लि अन अल मिसल युस्तामल लिल मुशारकति फी बाज़िल मआनी उर्फन, इसलिए क्योंकि मिसल का लफ्ज वो बाज़े सिफात के अंदर मुशारकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्फन उर्फ के एतबार से, फवका शक फिल हुर्रियति, लिहाजा गुलाम के आजाद होने में शक आ गया तो वह आजाद नहीं होगा। शारहीन फरमाते हैं कि यह वो सूरत है जब आका ने नीयत न की हो आजादी की, अगर आका ने आजादी की नीयत की है और फिर कहा है अंता मिस्लुल हुर्री तू आजाद जैसा है, तो अब तो आजादी की नीयत कर ली, मतलब आका के कहने का मतलब यह है कि तू आजादी की सिफत में आजाद जैसा है, यानी मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तो इस सूरत में फिर गुलाम आजाद हो जाएगा। अंता मिस्लुल हुर्री, आका नीयत न करे तो गुलाम आजाद नहीं, और आका नियत करेगा तो गुलाम आजाद हो जाएगा। वलौ काल मा अंत इल्ला हुर्रुन अतका, आका ने अपने गुलाम से कहा मा अंत इल्ला हुर्रुन, मा अंत इल्ला हुर्रुन, तू नहीं है इल्ला हुर्रुन मगर आजाद, ये तो था मा और इल्ला के साथ तर्जमा, तू नहीं है मगर आजाद, बा मुहावरा तर्जमा कैसे करेंगे, तू आजाद ही है, बा मुहावरा तर्जमा क्या होगा, तू आजाद ही है। तो याद रखो इसके अंदर तो और ज्यादा जोर आ गया, एक सूरत यह आका अपने गुलाम से कहता है तू आजाद है, इसमें भी गुलाम आजाद होगा, और एक आका यूं कहता है तू आजाद ही है, तो इसके अंदर तो और ज्यादा जोर आ गया बात के अंदर, इसके अंदर ताकीद आ गई, तो इसमें बतरीके औला गुलाम आजाद हो जाएगा। भाई तो कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने कहा मा अंत इल्ला हुर्रुन के तू आजाद ही है, आता गुलाम आजाद हो जाएगा, लियान अल इस्तिस्ना मिनन नफी इस बात उन अला वजह ताकीद, लियान अल इस्तिस्ना मिनन नफी, इसलिए क्योंकि नफी से जो इस्तिस्ना होता है इस बात उन अला वजह ताकीदी, वो इस बात होता है अला वजह ताकीद, ताकीद के तरीके पर नफी आई ना, मा अंता ये मा किस लिए है, नफी के लिए, और आगे इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया गया मा अंता इल्ला हुर्रुन, तो नफी से जो इस्तिस्ना होता है वो इस बात है, इल्ला क्या करता है नफी को आकर तोड़ देता है, तो ताकीद के तरीके पर इस बात आ गया, भाई ताकीद आ गई, जोर आ गया कलाम के अंदर। तो कहते हैं लियान अल इस्तिस्ना मिनन नफी इस बात उन अला वजह ताकीदी, इसलिए क्योंकि नफी से इस्तिस्ना जो होता है वो ताकीद के तरीके पर इस बात होता है, कमा फी कलिमति शहादती, जैसे कि कलिमा शहादत में है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, तो देखो यहां नफी के बाद इस्तिस्ना आया, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, इसका बामुहावरा तर्जमा कैसे करेंगे कि माबूद अल्लाह ही है, माबूद अल्लाह ही है, एक कहा जाए माबूद अल्लाह है और एक है कि माबूद अल्लाह ही है, इसके अंदर तो और ज्यादा जोर और ताकीद आ गई, बाकी सब से माबूद होने की नफी भी हो गई। तो कहते हैं कमाफी कलिमति शहादती, जैसे कि कलिमा शहादत के अंदर है, वलौ काला रअसु का रअसु हुर्रिन, सूरत यह आका ने अपने गुलाम से कहा रअसु का रअसु हुर्रिन, तेरा सर रअसु हुर्रिन आजाद आदमी का सर है, तेरा सर आजाद आदमी का सर है, तो कहते हैं इस सूरत में भी गुलाम आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर हर्फ तशबीह महजूफ है। कलाम उसने क्या जिक्र किया, रअसु का रअसु हुर्रिन, तेरा सर आजाद का सर है, असल कलाम यूं है रअसु का रअसु हुर्रिन, तेरा सर आजाद के सर जैसा है, आजाद के सर के मिसल है, और मिसल वाला मसला अभी पीछे जिक्र हुआ था, अंता मिसलुल हुर्री, उस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होता था, तो यहां पर भी रअसु का रअसु हुर्रिन या मिसलु रअसु हुर्रिन ये कहने से भी गुलाम आजाद नहीं होगा। कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने कहा रअसु का रअसु हुर्रिन, तेरा सर आजाद का सर है, ला यातिकु, तो गुलाम आजाद नहीं होगा, लियन्नहु तशबीहुन बिहस्फ हर्फिही, इसलिए क्योंकि ये हर्फ तशबीह के हजफ के साथ तशबीह है, लियन्नहु तशबीहुन बिहस्फ हर्फिही, इसलिए क्योंकि ये तशबीह है बिहस्फ हर्फिही, हर्फ तशबीह के हजफ के साथ, वलौ काला रअसु का रअसुन हुर्रुन, भाई पहले क्या कहा था रअसु का रअसु हुर्रिन, रअसु हुर्रिन रस की इजाफत की थी हुर की तरफ, तेरा सर आजाद का सर है, और अब इजाफत के बगैर कहता है रअसु का रअसुन हुर्रुन, यानी हुर को रस की सिफत बना दिया, तेरा सर जो है रअसु का, तेरा सर जो है रअसुन हुर्रुन आजाद सर है, तेरा सर आजाद सर है, तो कहते हैं इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा। वजह यह कि रस का लफ्ज अरबी जुबान में पूरी जात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी कौम का सरदार आए तो अरबी में कहते हैं जा रसुल कौमी, उस कौम का सरदार आया है, तो यहां पर भी हुर्रियत को किसकी सिफत बना रहा है रस की, और रस से पूरी जात मुराद है, तो वह गुलाम आजाद हो जाएगा। वलौ काला रअसु का रअसुन हुर्रुन, और अगर आका ने कहा कि तेरा सर जो है वो आजाद सर है, आता का गुलाम आजाद हो जाएगा, लिअन्नहु इस्बातुल हुर्रियति फीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हुर्रियत का साबित करना है, इज़ी रअसु युअब्बरु बिही अन जमीइल बदनी, इसलिए क्योंकि सर जो है इसके जरिए ताबीर किया जाता है पूरे बदन से, रास का लफ्ज जो है अरबी जुबान में इसके जरिए पूरे बदन को ताबीर किया जाता है। आगे देखिए फसलुन व मम्मल कदा रहीम महरमिम मिन हो अतका अलैह, भाई यहां तक एताक के मसाइल जिक्र किए, आका अपने गुलाम को आजाद करता है अपने इख्तियार से, अब गैर इख्तियारी आजादी को जिक्र फरमाएंगे, कोई अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बने तो वो उस पर फौरन आजाद हो जाता है, आप पढ़ चुके हैं, तो ये आजादी गैर इख्तियारी है, तो अब गैर इख्तियारी आजादी से मुतालिक मसाइल जिक्र करेंगे इस फसल में। फसलुन व मम्मलक जा रहीमी महरमी मिन हो अतका अलैही, व मम्मलक, और जो शख्स मालिक हुआ जा रहीम रिश्तेदार का, महरमी मिन हो जो उसका महरम भी हो, अतका अलैही तो वह उस पर आजाद हो जाएगा। तो दो चीजें जिक्र हैं हदीस में, रिश्तेदार भी हो और ऐसा रिश्तेदार हो कि महरम भी हो, तवज्जो है, तो ये दोनों सिफतें जब पाई जाएंगी, कोई भी शख्स ऐसे गुलाम का मालिक बने जो इसका रिश्तेदार भी है और महरम भी है, तो फौरन आजाद हो जाएगा। मसलन एक भाई ने अपने भाई को खरीदा, तो भाई उसका करीबी महरम रिश्तेदार है, तो खरीदते ही जिस लम्हे में ईजाब और कबूल करेगा, बैअ करेगा, खरीदेगा, अगले ही लम्हे के अंदर वो आजाद हो जाएगा भाई। तो कहते हैं वम मलक अजार रहीमी महरमी मिन हो अतका अलैही, और जो शख्स मालिक हुआ ऐसे रिश्तेदार का जो उसका महरम भी हो, अतका अलैही वो उस पर आजाद हो जाएगा। वहां दल्लफ मरवी यूनानी नबी अलैही सलातु वसलाम, और ये वाले लफ्ज जो हैं ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम से रिवायत किए गए हैं। साहिबे हिदायत बतलाना चाहते हैं ये हदीस है, ये जो अल्फाज जिक्र किए मतन में, ये किसके अल्फाज हैं? हदीस के कि मम्मल कजार रहम महरमी मिन हु अतकालही। तो कहते हैं वहाजल लफ्ज उमर भी यूनानी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, और ये वाला लफ्ज रिवायत किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम मम्मलकदा रहम महरम मिनहु फहुवा हुर्रुन। ये अब दूसरी हदीस जिक्र कर रहे हैं। बाज अहादीस की किताबों में यह हदीस इन अल्फाज के साथ जिक्र है। तो कहते हैं वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन मलकजा रहम महरम मिनहु, के जो शख्स अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना फहुवा हुर्रुन, तो वो आजाद है। वल्लफ्ज़ु बिउमूमिही यंतज़िमु कुल्ल क़राबतिन मुअय्यदतिन बिल महरमियति विलादन औ गैरह। भाई याद रखो, दो किस्म की कराबतें हैं। एक कराबत विलाद है, एक कराबत गैर विलाद है। विलाद यानी वलादत, वलादत यानी पैदाइश वाला रिश्ता हो। जैसे कोई शख्स अपने बेटे का मालिक बनता है तो बेटा फौरन आजाद हो गया, क्योंकि बाप बेटे में पैदाइश वाला रिश्ता है। ये मां बाप जो हैं, इन्होंने इस बेटे को जन्म दिया है, तो इनमें कौन सा रिश्ता है? वलादत वाला रिश्ता है। तो वलादत वाला रिश्ता यानी जो उसूल और फुरुआ के दरमियान होता है, एक आदमी है उसके नीचे बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियां वगैरह, और इसी तरह ऊपर की तरफ एक आदमी के वो यानी वो बच्चे के दादा दादी नाना नानी वगैरह ऊपर तक, इन सब में पैदाइश वाला रिश्ता है। इन सब में पैदाइश वाला रिश्ता है। तो आगे चल के साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इमाम शाफिर हमला फरमाते हैं कि जब पैदाइश वाला रिश्ता हो फिर इस किस्म के गुलाम को कोई खरीदेगा तो वो आजाद होगा, और रिश्तेदारों को खरीदेगा तो आजाद नहीं होगा। लिहाजा एक आदमी अपने भाई को खरीदता है, दो भाइयों के दरमियान तो वलादत वाला रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो भाई आजाद नहीं होगा। हां, लेकिन बाप अपने बेटे को खरीदता है, या बाप अपने पोते या नवासे वगैरह को खरीदता है, या बेटा अपने बाप या दादा वगैरह को खरीदता है, तो इन सारों में कौन सा रिश्ता है? पैदाइश वाला रिश्ता है। लिहाजा इस सूरत के अंदर ये सब आजाद हो जाएंगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कोई अपने ऐसे रिश्तेदार का मालिक बने कि जिनके दरमियान पैदाइश वाला रिश्ता है तो वो फौरन आजाद हो जाएगा, लेकिन जिनमें पैदाइश वाला रिश्ता नहीं है, जैसे भाई के साथ रिश्ता है या चचा के साथ रिश्ता है या मामू के साथ रिश्ता है, ये एक दूसरे के मालिक बनेंगे तो आजाद नहीं होंगे। जबकि हमारे नजदीक पैदाइश के रिश्ते को नहीं देखा जाएगा, बल्कि करीबी रिश्तेदार भी हो और उस रिश्ते की वजह से महरम भी हो एक दूसरे के, यानी ऐसे रिश्तेदारी हो कि वो एक दूसरे के महरम भी हो, उसी रिश्तेदारी की वजह से महरम बन रहा हो, किसी और वजह से नहीं, उसी रिश्तेदारी की वजह से महरम बन रहा हो, तो फिर इस किस्म के रिश्तेदार का जो भी मालिक बनेगा वो उस पर आजाद हो जाएगा। लिहाजा किसी ने अपने भाई को खरीदा या मामू को खरीदा या चचा को खरीदा तो करीबी रिश्तेदार भी हैं और एक दूसरे के महरम भी हैं, लिहाजा फौरन आजाद हो जाएंगे। इसमें वो रिश्तेदार भी आ गए जिनके साथ वलादत वाला ताल्लुक है, पैदाइश वाला ताल्लुक है, और इनके अलावा और रिश्तेदार भी आ गए। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिनमें सिर्फ पैदाइश वाला रिश्ता है सिर्फ वो आजाद होंगे, बाकी आजाद नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल्लफ्ज़ु बिउमूमिही यंतज़िमु कुल्ल। अच्छा, बात चल रही थी ये हदीस की, मैंने बतलाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि पैदाइश वाला रिश्ता हो तो फिर ही वो रिश्तेदार आजाद होगा, वैसे आजाद नहीं। हम कहते हैं नहीं, ये जो हदीस आ गई वह मम्मल कजार रहमी महरम मिन हो अतका अलैही, ये जो दूसरी हदीस है मम्मल कजार रहमी महरम मिन हो फहुआ हुर्रुन, इन दोनों के अंदर दो चीजें जिक्र हैं कि करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, लिहाजा इन दो चीजों को देखा जाएगा, चाहे वलादत हो या वलादत ना हो, दोनों सूरतें इसमें दाखिल हो जाएंगी। तो कहते हैं वल लफ्ज़ु बिउमूमिही, और ये लफ्ज़ जो ये जो हदीस का लफ्ज़ है बिउमूमिही अपने उमूम के जरिए यंतज़िमु, ये शामिल है कुल्ल क़राबतिन, हर ऐसी रिश्तेदारी को मुअय्यदतिन जिसकी ताईद की गई हो, यानी जिसको कुव्वत दी गई हो। अय्यद युअय्यिदु ताईद का क्या माना, कुव्वत देना। देखो एक है रिश्तेदार होना, रिश्तेदार तो मसलन चचा का बेटा या बेटी भी हैं, लेकिन देखो वो महरम नहीं है, तो रिश्तेदारी भी हो और उस रिश्तेदारी को कुव्वत दी गई हो किसके जरिए, महरमियत के साथ। तो कहते हैं कुल्ल कराबतिन मुअय्यदतिन बिल महरमियति, हर ऐसी रिश्तेदारी है जिसको कुव्वत दी गई हो महरमियत के साथ, महरम होने के जरिए, विलादन औ गैरहू, चाहे वो रिश्तेदारी वलादत वाली हो या गैर वलादत वाली। तर्जमा समझ में आ रहा है, फिर तर्जमा देख लीजिए। हम कहते हैं ये जो हदीस आई थी, हदीस के अंदर दो चीजें जिक्र थी, तो कहते हैं वह लफ्ज़ बि उमूमी ही, ये हदीस का जो लफ्ज है अपने उमूम के जरिए, यंतजिमु, देखो हदीस के लफ्ज आम हैं, करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, इसमें वलादत वाले भी आ गए, गैर वलादत वाले भी आ गए, तो हदीस के अल्फाज आम हैं। तो कहते हैं वल लफ्ज़ बि उमूमी ही, और ये हदीस के अल्फाज जो हैं अपने उमूम के जरिए, यंतजिमु कुल्ल कराबतिन मुअय्यदतिन बिल महरमियति, ये शामिल है हर ऐसी रिश्तेदारी को जो मुअय्यद हो, जिसको कुव्वत दी गई हो महरम होने के जरिए, विलादन औ गैरहू, चाहे वो रिश्तेदारी वलादत वाली हो या गैर वलादत वाली। व शाफिई रहिमहुल्लाह तआला युखालिफु नाफी गैरिही, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी मुखालफत करते हैं, फी गैरी ही, वलादत के अलावा में, वलादत के अंदर हो हमारे साथ मुत्तफिक हैं कि जब वलादत वाला रिश्ता हो तो ऐसे रिश्तेदार का जब कोई शख्स मालिक बनेगा वो फौरन आजाद हो जाएगा, लेकिन वलादत के अलावा हो तो फिर वो आजाद नहीं होगा। तो वह शाफिई रहमहुल्लाह ताला युखालिफु नाफी गैरी ही, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी मुखालिफत करते हैं, फी गैरी ही, वलादत के अलावा के अंदर, लहू, उनकी दलील यह है कि अन्न सुबूत अल इत्क मिन गैरी मर्ज़ात अल मालिक, अन्न सुबूत अल इत्क कि आजादी का साबित होना, मिन गैरी मर्ज़ात अल मालिक, मालिक की मर्जी के बगैर। वो फरमाते हैं आजादी का साबित होना मालिक की मर्जी के बगैर, यनफी हिल कियासु, कियास इसकी नफी करता है, औला यक्तजी ही, या कियास इसका तकाजा नहीं करता। ये जगह जरा मुश्किल है, अच्छी तरह समझ लीजिए। भाई देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वलादत वाला रिश्ता होगा तो इस किस्म के गुलाम का जैसे ही कोई मालिक बनेगा वो आजाद हो जाएगा। और पीछे जिक्र आया था भाई, पीछे एक सफा कबल एक मसला जिक्र आया था, किसी ने आका ने अपने गुलाम से कहा हाजबनी, ये मेरा बेटा है, और इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, यानी ये गुलाम आका के उम्र में बराबर है या उम्र में उससे बड़ा है। और वहां आपको बतलाया था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील जिक्र की थी साहिब हिदाया ने कि ममलूक के अंदर जब बेटा होने का वसफ साबित हो जाए तो यह सबब बनता है आजादी का। क्यों बनता है आजादी का सबब, इम्मा इजमाअन औ सिलतन लिल कराबती, या तो इस वजह से कि इस पर इजमा है कि सारी उम्मत का इस पर इजमा है कि जैसे ही कोई शख्स अपने बेटे का मालिक बनेगा वो आजाद हो जाएगा। मसलन मसलन एक आदमी है, उसकी बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और फिर इस आदमी ने आका ने कह दिया ये मेरा बच्चा है, तो जैसे ही इस गुलाम के अंदर इसके बेटा होने का वसफ साबित होगा साथ ही आजादी भी साबित हो जाएगी। इस पर इजमा है भाई कि ममलूक के अंदर जब बेटा होने का वसफ साबित होगा तो वो आजाद हो जाएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बेटा होने के अंदर तो सारी उम्मत का इजमा है कि वो शख्स अपने बेटे का मालिक बनेगा तो वो उस पर आजाद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वलादत वाला रिश्ता है, तो वलादत का रिश्ता होना चाहिए भाई, फिर ही ऐसा ममलूक खुद ब खुद आजाद हो जाएगा भाई। वो फरमाते हैं कि देखो जब कोई शख्स ऐसे गुलाम का मालिक बनता है कि उस गुलाम में और इस आदमी के दरमियान वलादत वाला रिश्ता है तो यह गुलाम आजाद हो जाता है, और ये जो गुलाम का आजाद होना है ये आका की मर्जी के बगैर है, वो चाहे या ना चाहे हर हाल में इस गुलाम ने आजाद होना है, तो गुलाम का आका की मर्जी के बगैर आजाद होना ये खिलाफुल कियास है। अकल तो यह तकाजा करती है इसको आजाद नहीं होना चाहिए, इसने इसको खरीदा है, ये इसका मालिक है, तो ये जो गुलाम आजाद होता है ये खिलाफुल कियास है, और जो चीज खिलाफुल कियास हो उस पर और चीजों को कियास नहीं किया जा सकता। गुलाम का आका की मर्जी के बगैर ही आजाद हो जाना यह खिलाफुल कियास है, अकल इसका तकाजा नहीं करती भाई। और जो चीज खिलाफुल कियास हो उस पर और चीजों को कियास नहीं किया जा सकता। तो कौन सी सूरत में गुलाम आजाद होगा? जब पैदाइश वाला रिश्ता हो। तो गैर पैदाइश वाले रिश्तों को इस पर कियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रिश्ते इससे कम दर्जे के हैं। वो रिश्ते से पैदाइश वाला रिश्ता तो सबसे कवी रिश्ता है, और जब भाई बहन के साथ रिश्ता है या चचा या मामू के साथ रिश्ता है वो पैदाइश वाला रिश्ता नहीं है, वो कम दर्जे का रिश्ता है। तो एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कयास नहीं किया जाता। फिर देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील, लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि नसुबूत अल इत्क मिन गैर मर्ज़ात अल मालिक, कि आजादी का साबित होना मालिक की मर्जी के बगैर, यनफी हिल कियास, कियास इसकी नफी करता है, औ ला यक्तज़ी ही, या कियास इसका तकाजा नहीं करता, यह कियास इसका तकाजा नहीं करता। कहते हैं इसके जरिए इशारा है दलालतुन नस की तरफ। किसकी तरफ? यानी दलालत नस के जरिए भी एक चीज को यहां दूसरी चीज के साथ नहीं मिलाया जा सकता जी। भाई देखिए दलालत नस किसे कहते हैं अच्छी तरह समझ लीजिए। दलालत नस उस इल्लत को कहते हैं जो इबारत नस से समझ में आए बगैर इज्तिहाद और इस्तेमबाद के। सिर्फ अरबी जुबान जानने वाला ही उस इल्लत को समझ ले, वहां किसी किस्म के इज्तिहाद की और गौर फिक्र की जरूरत नहीं, हर अरबी जुबान जानने वाला उसको समझ ले, उसको कहते हैं दलालतुन नस। एक हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, उस हुक्म की इल्लत अरबी जुबान जानने वाला ही समझ लेता है कि इसकी इल्लत यह है, इसकी वजह यह है, तो इसको कहते हैं दलालतुन नस। तो जब इस चीज का यह हुक्म है तो जहां जहां यह इल्लत पाई जाएगी उसका भी यही हुक्म होगा। मसलन कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा। कुरान में अल्लाह वालिदैन के बारे में फरमाते हैं कि वालिदैन को उफ भी ना कहो, वला तनहरहुमा, और ना इनको झिड़को ना इनको डांटो। तो वालिदैन को उफ कहने से भी मना किया गया, और उफ वो कलिमा है जो अरबी जुबान में जब इंसान किसी बात से तंग आ जाए तो उस वक्त ये उफ कलिमा बोलता है जी। तो उफ कलिमा इंसान जब किसी बात से तंग आ जाए तो उस वक्त उफ कलिमा कहता है। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को उफ कहने से भी मना किया है, और अरबी जुबान जानने वाला भी समझ लेता है कि यह उफ कहने से क्यों मना किया गया, क्योंकि इससे वालिदैन को तकलीफ होगी। ये तो कोई आदमी किसी बात से तंग आ जाए तब उफ कहता है, तो इससे वालिदैन को तकलीफ होगी। यहां किसी इस्तेमबात और इश्तेहाद की जरूरत नहीं है, अरबी जुबान जानने वाला हर एक समझ लेता है कि यहां ये इस हुक्म की इल्लत क्या है, इससे वालिदैन को तकलीफ होगी। तो ये है दलालतुन नस। जहां जहां अब यह इल्लत पाई जाएगी वो सब काम ममनू हो जाएंगे। तो जब वालिदैन को उफ कहना मना है तो गाली देना उनको या उनको मारना इसमें तो और ज्यादा तकलीफ होगी, लिहाजा ये बतरीके औला मना होंगे भाई। किसी इस्तेमबात की जरूरत नहीं, किसी किस्म के इश्तेहाद की यहां जरूरत नहीं, अरबी जुबान जानने वाला भी इस बात को समझता है भाई। तो इसको क्या कहते हैं? दलालतुन नस। तो दलालतुन नस उस इल्लत का नाम है जो अरबी जुबान के एतबार से हुक्म से समझ में आए, और हुक्म का मदार इस इल्लत पर होता है। जहां जहां यह इल्लत होगी वहां वही हुक्म आ जाएगा। जैसे उफ कहना मना है क्योंकि तकलीफ है, तो गाली देना और मारना वो भी बतरीके औला मना होगा क्योंकि उसमें भी तकलीफ है उनके लिए। तो हुक्म का मदार इल्लत पर होगा। चुनांचे इसीलिए उलमा फरमाते हैं अगर कोई ऐसी कौम है, उनकी ऐसी जुबान है कि उनके यहां उफ का लफ्ज ताजीम के तौर पर कहते हैं। उफ का लफ्ज किस लिए कहते हैं? बतौर ताजीम के कहते हैं, तो उनके लिए उफ कहना मना नहीं होगा भाई, क्योंकि उफ कहने से मना करने की इल्लत क्या थी? वालिदैन की तकलीफ थी भाई। बात समझ में आ गई। तो जहां यह इज्जत वाला लफ्ज है वहां तकलीफ नहीं, जब तकलीफ नहीं तो यह हुक्म भी नहीं होगा और वो उफ कह सकते हैं। नीज ये इसी तरह है जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या युहल्लदीन आमनु इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह व दरुल बैअ। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए निदा दी जाए, अजान दी जाए, तो अल्लाह के जिक्र के लिए कोशिश करो और बैअ को छोड़ दो। अब यहां अरबी जुबान जानने वाला भी समझता है यह बैअ को छोड़ने का हुक्म क्यों दिया, क्योंकि इसकी वजह से साई इलल जुमा में खलल आएगा, जुमे की तरफ तैयारी करने में और पहुंचने में खलल आएगा, लिहाजा जहां खलल आएगा वहां वो बैअ ममनू होगी और जहां खलल नहीं आएगा वहां बैअ भी जायज हो जाएगी। मसलन एक आदमी किश्ती में जा रहा है जुमे की नमाज के लिए और किश्ती में बैठे बैठे वो बैअ करता है तो ये बैअ जायज है भाई। यह एक आदमी गाड़ी में या बस के अंदर जुमे की नमाज के लिए जा रहा है और गाड़ी में या बस के अंदर बैठे बैठे वो बैअ करता है तो देखो इसमें साई इलल जुमा में कोई खलल नहीं आ रहा, तो वो गाड़ी तो चल रही है लिहाजा जुमे की साई में कोई खलल नहीं आया तो ये बैअ जायज होगी। तो दलालत नस किसे कहते हैं, वो जो हुक्म की इल्लत हमें समझ में आए अरबी जुबान के एतबार से बगैर इज्तिहाद और बगैर इस्तिंबात के, उसको दलालत नस कहते हैं और उसी पर हुक्म का मदार होता है। जहां वो इल्लत होगी वो हुक्म भी होगा, जहां वो इल्लत नहीं वहां वो हुक्म भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी देखो दलालत नस के अंदर, दलालत नस के अंदर भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाया जाता है। जैसे उफ कहने से मना किया गया है तो वालिदैन को गाली देना या वालिदैन को मारना बतरीके औला मना होगा। तो लिहाजा जहां वो इल्लत होगी वहां वो हुक्म भी होगा। और दलालत नस में एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाया जाता है तो दूसरी चीज जिसको आप मिला रहे हैं उसका पहली चीज जैसा होना जरूरी है या उससे बढ़कर हो या उसी जैसी हो, उससे कम दर्जे की हो तो उसको आप वो हुक्म नहीं दे सकते जी। तो यही यहां बयान कर रहे हैं, कहते हैं अन्न सुबूत अल इत्क मिन गैर मर्ज़ात अल मालिक यनफी हिल कियास, के आजादी का सबूत मालिक की मर्जी के बगैर कियास इसकी नफी करता है, यानी ये खिलाफुल कियास है लिहाजा और चीजों को इस पर कियास नहीं कर सकते। औ ला यक्तजी ही, या ये कि कियास इसका तकाजा नहीं करता, मालिक की मर्जी के बगैर आजादी ये खिलाफुल कियास है या कियास इसका तकाजा नहीं करता, कियास इसका तकाजा नहीं करता। कहते हैं इसके जरिए इशारा है दलालतुन नस की तरफ, इसके जरिए साहिब हिदायत किसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, दलालतुन नस, यानी दलालतुन नस के जरिए भी यहां आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं मिला सकते, इसलिए क्योंकि जिस चीज को आप दूसरी के साथ मिलाना चाहते हैं दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। लेकिन आप यहां गैर विलाद वालों को विलाद वालों के साथ मिलाना चाहते हैं, हालांकि विलाद वालों के साथ जो रिश्ता है वो कवी दर्जे का है और गैर विलाद वालों के साथ जो रिश्ता है वो कम दर्जे का है, लिहाजा आप इस कम दर्जे वाले को वो ही वाला हुक्म नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल उखुवतु व मा युज़ाहिहा नाज़िलतुन अन क़राबतिल विलादी, वल उखुवतु और भाई होना, वमा युज़ाहिहा ज़ाहा युज़ाही मुज़ाहातन, ज़ाहा युज़ाही मुज़ाहातन का माना है मुशाबे होना। तो कहते हैं वल उखुवतु और भाई होना, वमा युज़ाहिहा और जो इसके मुशाबे और रिश्ते हैं, नाज़िलतुन वो कम दर्जे के हैं, वो अदना दर्जे के हैं, अन क़राबतिल विलादी वलादत के रिश्ते से। वलादत के रिश्ते का हुक्म क्या है कि इस किस्म के गुलाम के मालिक बनते ही वो आजाद हो जाएगा, तो गैर विलाद तो उससे कम दर्जे का है उसका ये हुकाम नहीं होगा। तो कहते हैं वल उखुवतु व मा युज़ाहिहा नाज़िलतुन अन क़राबतिल विलादी, और भाई होना और इसके मुशाबे और जो रिश्ते हैं वो विलादत के रिश्तों से कम दर्जे के हैं। फम तनअल इल्हाक वल इस्तिदलाल, तो इल्हाक और इस्तिदलाल मुमतनअ होगा, इल्हाक और इस्तिदलाल मुमतनिअ होगा। फिर वही इशारा, इल्हाक के जरिए इशारा है कियास की तरफ और इस्तिदलाल के जरिए इशारा है दलालतुन नस की तरफ। भाई इधर देखिए, एक है विलादत वाला रिश्ता, एक है भाई वगैरह का रिश्ता। भाई वगैरह का रिश्ता यह विलादत के रिश्ते से कम दर्जे का है, लिहाजा आप इस रिश्ते को, ये भाई वाले रिश्ते को वलादत वाले रिश्ते के साथ कियास के जरिए भी नहीं मिला सकते और दलालतुन नस के जरिए भी नहीं मिला सकते, क्योंकि दलालतुन नस के अंदर उसी जैसी या उससे बढ़कर जो चीज है उस इल्लत में उसको मिलाया जाता है, कम दर्जे वाली को उसके साथ नहीं मिलाया जाता। तो कहते हैं फम तनाल इल्हाक, तो लिहाजा इन रिश्तों को मिलाना, कौन से रिश्ते, भाई वगैरह वाले रिश्ते जो कम दर्जे के हैं, इनको मिलाना किसके साथ, विलादत वाले रिश्तों के साथ, ये मुमतनिय होगा। ये माना है फम तनाल इल्हाकु, अलहका युल्हिकु, इल्हाक का क्या माना है, मिलाना, और इस्तिदलाल का माना दलील बनाना। तो लिहाजा फम तनाल इल्हाकु, लिहाजा इन रिश्तों को कियास के जरिए मिलाना भी मुमतनिय होगा, वल इस्तिदलालु, और दलालतुन नस के जरिए इस्तिदलाल भी मुमतनिय होगा भाई। वलिहादम तना तकातुबु अलल मुकातबी फी गैरिल विलादी वलम यमतनिय फीह। भाई देखिए, मुकातब वो गुलाम है जिसे आका ने कहा कि अगर तुम 2 साल में 20 लाख रुपए मसलन ले आओ तो तुम आजाद हो, और गुलाम ने इसको कबूल कर लिया। तो ये जो आका और गुलाम के दरमियान आकद हुआ, इसको आकदे किताबत कहते हैं। और आपको मैंने बतलाया था कि ये जो मुकातब है ये आजाद आदमी की तरह हो गया, ये आजाद आदमी की तरह हो गया, आका इसे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, ये जाएगा और पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो अगर इसने अदायगी कर दी तो ये आजाद हो जाएगा, और अगर ये अदायगी से आजिज आ गया तो फिर ये पहले की तरह आम गुलाम बन जाएगा। अब सूरत ये, आका ने अपने गुलाम के साथ अकदे किताबत कर लिया, इस मुकातब ने तिजारत शुरू कर दी और पैसे कमाने लग पड़ा, और फिर इसने गुलामों की तिजारत शुरू कर दी, और फिर इसने अपने बाप या बेटे को खरीदा। तो याद रखो, ये जो बाप और बेटा हैं, इनके साथ इस मुकातब का वलादत वाला रिश्ता है, लिहाजा ये भी इसके साथ ही मुकातब बन जाएंगे। ये बाप और बेटा भी इस मुकातब के साथ मुकातब बन जाएंगे। और आप जानते हैं आका के लिए मुकातब को बेचना जायज नहीं होता
जी।
आका के लिए मुकातब को बेचना जायज नहीं, क्योंकि मुकातब ने पैसे कमाकर देने, अपने आप को आजाद करवाना है। अगर ये आका इसको किसी और के हाथ बेच देगा तो इस बेचारे गुलाम का हक आजादी जाया हो जाएगा। आजादी तो बहुत बड़ी नियामत है, कोई गुलाम तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसको आजादी मिल जाए भाई। तो यहां ये मुकातब है, इसकी आजादी का मौका बन रहा है, ये पैसे कमाकर लाकर दे रहा है। तो ये जो गुलाम है, इसने अपने आका के साथ आकते किताबत कर लिया और अब इसके इम्कान है आजाद होने का, लिहाजा आका के लिए जायज नहीं है, वो इसको बेच नहीं सकता, वो इसको बेच नहीं सकता। इसी तरह याद रखो, जब मुकातब जो तिजारत कर रहा है, इसने अपने बाप या बेटे वगैरह को खरीद लिया जिनके साथ इसका वलादत वाला रिश्ता है, तो ये बाप और बेटा भी इसके साथ आकदे किताबत में दाखिल हो जाएंगे। अब इनको आगे बेचा नहीं जा सकता, ये मुकातब भी अब इनको आगे नहीं बेच सकता, क्योंकि ये भी उसके साथ मुकातब बन गए। जिस दिन मुकातब अपने सारे पैसे अदा कर देगा, वो मुकातब भी आजाद हो जाएगा और इसका बाप बेटा भी साथ ही आजाद हो जाएंगे। उनके लिए कोई अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे
जी।
ये वही पैसों की अदायगी के साथ वो भी आजाद हो जाएंगे। तो मुकातब जब अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को खरीदे जिसके साथ पैदाइश वाला रिश्ता है, वो भी उसके साथ ही मुकातब बन जाता है। लेकिन अगर भाई वगैरह को खरीदे मुकातब, तो वो उसके साथ मुकातब नहीं बनता, वो उसके साथ मुकातब नहीं बनता। दलील चल रही है इमाम शाफी रहमतुल्लाह की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आका की मर्जी के बगैर उसके गुलाम का आजाद होना ये खिलाफुल कियास है, ये खिलाफुल कियास है। तो ये सिर्फ वलादत वाले रिश्तों के अंदर जिस पर उम्मत का इजमा है, उस सूरत में तो आजादी आएगी, लेकिन और कम दर्जे के रिश्तों को इस पर कियास नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसीलिए वो फरमाते हैं, अगर एक मुकातब वो अपने भाई या बहन को खरीदेगा तो वो मुकातब नहीं बनेंगे, ये इनको आगे बेच सकता है, ये मुकातब इनको आगे बेच सकता है, वो नहीं कि आकदे किताबत में दाखिल। लेकिन अगर अपने उसूल फुरूअ में से, यानी बाप बेटों वगैरह में से किसी को अगर मुकातब खरीदेगा, तो वो भी उसके साथ आकदे किताबत में दाखिल हो जाएंगे। अब इस मुकातब के लिए उनको बेचना जायज नहीं, उनको बेचना जायज नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है कि ए अहनाफ, आपके नजदीक भी मुकातब अपने उसूल और फुरों को खरीदे तो वो उसके साथ आकदे किताबत में दाखिल होते हैं, भाई वगैरह उसके साथ आकदे किताबत में दाखिल नहीं होते। वरना तो अगर ये दोनों का दर्जा एक जैसा होता तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई भी आकदे किताबत में दाखिल हो गए, लेकिन वहां आप भी तस्लीम करते हैं कि भाई जो है वो आकदे किताबत में दाखिल नहीं होगा। वो और वजह वही जो हमने जिक्र कर दी कि यहां वलादत वाला रिश्ता नहीं है। तो कहते हैं वलिहादा, और इसी वजह से तवज्जो है, वलिहादा और इसी वजह से इम्तनात तकातुब, मुकातब बनना मुमतना है, अलल मुकातबी मुकातब पर, फी गैर विलादी विलाद के अलावा में, विलाद के अलावा में और रिश्तेदारों का मुकातब पर मुकातब बनना मुमतना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलिहादा और इसी वजह से कि वलादत और गैर वलादत में फर्क है, इसी वजह से इम्तनात तकातुबु अलल मुकातबी फी गैरिल विलादी, कि मुकातब पर मुकातब बनना मुमतना है फी गैरिल विलादी वलादत के अलावा में, वलम यमतना फीही और वलादत के अंदर मुमतना नहीं। जिनके साथ वलादत वाला रिश्ता है वो मुकातब पर मुकातब बन जाएंगे, वहां मुकातब बनना मुमतना नहीं है। ये थी इमाम शाफई रहमहुल्ला की दलील। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील जो है मा रवैना, वो हदीस है जो हमने रिवायत कर दी, ऊपर मतन में आई थी, व मम्मलक जार रहमिम महरमिम मिन्हु अतका अलैही। इस हदीस के अंदर दो चीजें जिक्र है कि करीबी रिश्तेदार हो और महरम हो, यहां वलादत की कैद मौजूद नहीं। चाहे वलादत हो या ना हो, जिस रिश्तेदार में भी ये दो शर्तें पाई जाएंगी उसका मालिक बनते ही वो आजाद हो जाएगा भाई। तो कहते हैं वल्ला ना मा रवैना, और हमारी दलील जो है वो हदीस है जिसको हमने रिवायत कर दिया, वली अन्नहु मलक करीबहु कराबतम मुअस्सिरतम फिल महरमियति, वली अन्नहु और इसलिए क्योंकि ये जो आका है मलक करीबहु, ये अपने करीबी रिश्तेदार का मालिक बना है, कराबतम मुअस्सिरतन फिल महरमियति, और ये ऐसी रिश्तेदारी है जो महरम होने में मुअस्सिर है। एक शख्स ने अपने करीबी रिश्तेदार को खरीदा जो उसका महरम भी है, तो ये गुलाम किस किस्म का है, इसके साथ इसकी करीबी रिश्तेदारी भी है और ये करीबी रिश्तेदारी मुअस्सिर है, इसी की वजह से ये महरम भी है इसका, ये इसका महरम भी है। मसलन एक शख्स ने अपने भाई को खरीदा या बहन को खरीदा, ये इसका करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है भाई। तवज्जो है, भाई ने भाई को खरीदा तो महरम है। आप कहेंगे ये तो दोनों मुजक्कर हैं, भाई दोनों में से एक को मुअन्नस फर्ज करके देख लिया करें, दोनों में से हर एक को बारी बारी मुअन्नस फर्ज करें तो बहन भाई का रिश्ता बनता है, तो महरमियत है यहां पर। तो हमारी दलील चल रही है, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने करीबी महरम रिश्तेदार को खरीदता है तो ये मालिक बन गया एक ऐसे करीबी रिश्तेदार का कि ये रिश्ता महरम होने में भी मुअस्सिर है, इसकी वजह से वो महरम भी बन रहा है इसका, वो महरम भी बन रहा है, लिहाजा ये गुलाम उस पर आजाद हो जाएगा। करीबी रिश्तेदार भी है और महरम, और महरम किसी और वजह से नहीं होना चाहिए, इसी रिश्ते की वजह से महरम होना चाहिए जो करीबी रिश्तेदार है। आगे मसाला जिक्र फरमाएंगे साहिब हिदाया। एक शख्स ने अपने चचा की बेटी को खरीदा, अब चचा की बेटी वो करीबी रिश्तेदार तो है लेकिन महरम नहीं, चचा की बेटी से तो निकाह जायज होता है, तवज्जो है। तो एक आदमी ने अपने चचा की बेटी को खरीदा तो ये खरीदेगा तो आजाद नहीं होगी क्योंकि करीबी रिश्तेदार तो है लेकिन महरम नहीं। दूसरी सूरत बना लें, एक शख्स ने अपने चचा की बेटी को खरीदा लेकिन वो चचा की बेटी इसकी रिजाई बहन भी है, इन दोनों ने बचपन में एक ही औरत का दूध पिया था, अब ये चचा की बेटी भी है और महरम भी है, इसको इस आदमी ने खरीदा फिर भी आजाद नहीं होगी। भाई क्यों नहीं आजाद होगी, ये करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है। कहते हैं भाई ये जो महरमियत है वो इस करीबी रिश्ते की वजह से आनी चाहिए, किसी और वजह से नहीं। यहां जो महरमियत आई है वो रिजाअत की वजह से आई है, इस करीबी रिश्ते की वजह से महरमियत नहीं आई। बात समझ में आ रही है, तो महरम हो लेकिन किसी और वजह से महरम ना हो, अपने इसी करीबी रिश्ते की वजह से महरम हो तो फिर वो शख्स आजाद होगा भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु मलक करीबहु कराबतम मुअस्सिरतन फिल महरमियति, और इसलिए क्योंकि ये शख्स अपने ऐसे करीबी रिश्तेदार का मालिक बना है कि वो कराबत मुअस्सिर है महरम होने में भी, फयातिकु अलैहि, तो ये उस पर आजाद हो जाएगा। वहादा हुवल मुअस्सिरु फिल असली, और यही जो है यानी ये जो महरमियत वाली कराबत है, वहादा हुवल मुअस्सिरु फिल असली, और ये जो महरमियत वाली कराबत है यही मुअस्सिर है फिल असली, असल में
जी।
असल में यही कराबत मुअस्सिर है। वल विलादु मुलगन, और विलाद जो है वो बातिल है यानी उसका कोई एतबार नहीं है। मुलगा का तर्जमा क्या कर लें, गैर मोतबर। वल विलादु मुलगन, और विलाद यानी पैदाइश वाला रिश्ता गैर मोतबर है, उसका एतबार नहीं है, बल्कि ऐसी रिश्तेदारी जो महरमियत का सबब हो गई। तो कहते हैं वहादा हुवल मुअस्सिरु फिल असली, और ये करीबी महरमियत वाली रिश्तेदारी ही असल में मुअस्सिर है इस आजादी में। वल विलादु मुलगन, और ये जो पैदाइश वाला रिश्ता है मुलगन, ये गैर मोतबर है, ये गैर मुअस्सिर है। लिअन्नहा हियल्लती यफ्तरिजु वस्लुहा व यहरुमु कत्उहा, इसलिए क्योंकि यही वो रिश्तेदारी है कि फर्ज है इसका जोड़ना और हराम है इसको तोड़ना। भाई अब शरीयत ने हमें रिश्ता जोड़ने का हुक्म दिया है और शरीयत ने हमें रिश्ता तोड़ने से मना किया है, तो हम कहते हैं कि यह करीबी महरमियत वाली रिश्तेदारी ही है जिसकी शरीयत ने हम पर फर्ज किया है इसको जोड़ना और हम पर हराम किया है इसको तोड़ना। सिर्फ पैदाइश वाला रिश्ता नहीं बल्कि करीबी महरमियत वाले रिश्ते सबका यही हुक्म है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा हियल्लती यफ्तरिजु वस्लुहा, वस्ल का माना जोड़ना। लिअन्नहा हियल्लती यफ्तरिजु वस्लुहा, इसलिए क्योंकि ये जो करीबी महरमियत वाला रिश्ता है ये ही वो रिश्ता है। अल्लती यफ्तरिजु वस्लुहा, के जिसका मिलाना और जिसका जोड़ना फर्ज है। व यहरुमु कत्उहा, और जिसका काटना हराम है। हत्ता वजबतिन नफकतु व हरुमन निकाहु, यहां तक कि इसकी वजह से नफका वाजिब होता है और निकाह हराम होता है। ये करीबी महरमियत इसी की वजह से नफका भी वाजिब होता है और इसी की वजह से निकाह भी हराम होता है
जी।
आपने बाबुन नफकात पीछे पढ़ा, आपने पढ़ा कि कोई करीबी महरम रिश्तेदार हो तो जरूरतों के मौका पर उसका नफका इंसान पर वाजिब होगा। वो करीबी महरम रिश्तेदार अगर नाबालिग है, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस, और अगर बालिग है और मुअन्नस है, और अगर मर्द है तो वो मसलन अपाहज है या माजूर है, तो फिर इन तमाम सूरतों में उसका नफका भी इस मालदार रिश्तेदार पर वाजिब होगा। ये करीबी महरम रिश्तेदारी जो है यही वो रिश्तेदारी है कि जिसका शरीयत ने जोड़ने का हुक्म दिया है और जिसके तोड़ने से शरीयत ने मना किया है, और इसी की वजह से नफका भी वाजिब होता है और इसी की वजह से निकाह भी हराम होता है। मालूम हुआ यही महरमियत वाली कराबत ही मुअस्सिर है भाई। तो कहते हैं हत्ता वजबतिन नफकतु व हरुमन निकाहु, यहां तक कि इसकी वजह से नफका भी वाजिब होता है और निकाह भी हराम होता है। वला फर्क बैनमा इदा कान अल मालिकु मुस्लिमन औ काफिरन फी दारिल इस्लामी, और इस बात में कोई फर्क नहीं है कि जब वो मालिक जो है वो मुसलमान हो या काफिर हो, फी दारिल इस्लामी, दारुल इस्लाम में। भाई याद रखो, याद रखो, शारहीन फरमाते हैं ये जो इबारत आई वला फर्क बैनमा इदा कान अल मालिकु मुस्लिमन औ काफिरन, कि इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो जो मालिक है वो मुसलमान है या काफिर है। फी दारिल इस्लाम, किस जगह पर, दारुल इस्लाम में। तो शारहीन फरमाते हैं कि ये फी दारिल इस्लाम का ताल्लुक दोनों से है, वो मालिक जो मुसलमान है या वो मालिक जो काफिर है, दोनों के साथ इसका ताल्लुक है। याद रखो मुसलमान जो है दारुल हर्ब के अंदर, अगर हरबी गुलाम का मालिक बना तो मुसलमान उसको आजाद करे भी तो वो आजाद नहीं होगा। मुसलमान दारुल हर्ब में किसका मालिक बना, हरबी गुलाम का मालिक बना, तो वो आजाद करे भी तो वो आजाद नहीं होगा। भाई क्यों नहीं आजाद होगा, भाई आप पढ़ चुके हैं पीछे साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया था, नफकात के बाब में जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि अगर अपने उसूल और फुरू जो हैं वो दारुल इस्लाम में है तो उनका नफका वाजिब होगा, चाहे दीन अलग ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो दारुल हर्ब में है तो फिर उनका नफका वाजिब नहीं, क्योंकि हर्बियों के साथ अल्लाह ने एहसान करने से मना फरमाया है। वो लोग जो तुम्हारे साथ दीन के मामले में लड़ते हैं उनके साथ अल्लाह ने एहसान करने से मना फरमाया है। तो लिहाजा मुसलमान दारुल हर्ब के अंदर हर्बी गुलाम का मालिक बना, ये मुसलमान मालिक उसको आजाद करे भी तो वह आजाद नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान को हर्बियों के साथ एहसान करने से मना किया गया है। इसी तरह याद रखो, अगर कोई काफिर जो है दारुल हर्ब के अंदर वो अपने किसी हर्बी का मालिक बनता है, वो भी आजाद करेगा तो आजाद नहीं होगा। तो जब मुसलमान और काफिर के दारुल हर्ब के अंदर हर्बी को आजाद करने से भी वो आजाद नहीं होता, तो वहां पर अगर वो अपने हर्बी करीबी रिश्तेदार के मालिक बनेंगे तो वो भी आजाद नहीं होगा। जब आम हर्बी को वो आजाद करें भी तो आजाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर्बियों के साथ अल्लाह ने एहसान करने से मना फरमाया है। वो आजाद होंगे ये तो उनके साथ एहसान हो जाएगा भाई, लिहाजा चाहे मुसलमान वहां पर करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बने लेकिन है वो हर्बी, वो करीबी रिश्तेदार क्या है, वो हर्बी है। मसलन एक शख्स तो मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गया था लेकिन उसका भाई वहीं पर था और वो काफिर है, वो हर्बी है भाई। तो मुसलमान गया और इसने जाकर अपने हर्बी भाई गुलाम था उसको खरीद लिया, तो ये आजाद नहीं होगा। तो दारुल इस्लाम में होना जरूरी है, चाहे मुसलमान हो चाहे जिम्मी हो, जब करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनेगा वो आजाद हो जाएगा। मुसलमान भी अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना वो आजाद हो जाएगा, और अगर जिम्मी भी दारुल इस्लाम के अंदर अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना तो वो आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वला फर्क बैनमा इदा कानल मालिकु मुस्लिमन औ काफिरन फी दारिल इस्लामी, और कोई फर्क नहीं है इसमें कि जब मालिक वो मुसलमान हो या काफिर हो दारुल इस्लाम में, लिउमूमिल इल्लत, इल्लत के आम होने की वजह से, क्योंकि इल्लत पाई जा रही है और इल्लत क्या कि करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बन रहा है, लिहाजा वो आजाद हो जाएगा। वल मुकातबु इदश्तरा अखाहु, अब जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक है वलादत वाली रिश्तेदारी, एक है गैर वलादत वाली रिश्तेदारी, दोनों में फर्क है। चुनाचे इसीलिए मुकातब अपने भाई को खरीदेगा तो वो गैर वलादत वाली रिश्तेदारी है, लिहाजा उसका ये भाई उस पर मुकातब नहीं बनेगा। लेकिन मुकातब अपने मां बाप को या अपने बेटे को खरीदेगा तो इनमें वलादत वाली रिश्तेदारी है, लिहाजा ये भी उसके साथ हक़ किताबत में दाखिल हो जाएगा, ये भी मुकातब बन जाएगा। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वल मुकातबु इदश्तरा अखाहू, और मुकातब जब उसने अपने भाई को खरीदा, वह मैं यजरी मजराहू, या जो भाई के कायम मकाम है, यानी और वलादत के अलावा कोई और करीबी महरम रिश्तेदार है जैसे चचा है या मामू है, ला यतकातबु अलैही, तो ये भाई उस पर मुकातब नहीं बनेगा, लिअन्नहु लैसा लहु मिल्कुन तामुन, इसलिए क्योंकि मुकातब के लिए मिल्के ताम नहीं है। मुकातब ने पैसे कमाकर लाने हैं आका को देने हैं, तो मुकातब को पैसे कमाने की तो इजाजत है, पैसे उजाड़ने की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा मुकातब को अपनी चीजों में पूरी मिल्कियत हासिल ही नहीं है। शरीयत ने जो उसको आजादी दी है कि आका की खिदमत ना करो, जाओ जाकर पैसे कमा कर लेकर आओ, वो सिर्फ उसकी आजादी की वजह से दी है। लिहाजा वो जो तिजारत कर रहा है उनमें उसकी मिल्कियत ताम नहीं है, कामिल नहीं है, उसकी मिल्कियत ताम नहीं है, कामिल नहीं है। लिहाजा मुकातब इताक पर कादिर ही नहीं है। मुकातब एक गुलाम खरीदता है और उसको आजाद करना चाहता है, नहीं भाई आप आजाद कर ही नहीं सकते, आपको कामिल मिल्कियत ही हासिल नहीं है जी। क्योंकि आपको शरीयत ने जो कारोबार की इजाजत दी है वो अपनी आजादी के लिए दी है, इस तरह माल उड़ाने के लिए इजाजत नहीं दी। तो मुकातब को कामिल मिल्कियत हासिल नहीं होती, वो गुलाम को आजाद करे भी तो गुलाम आजाद नहीं हो सकता, लिहाजा इसलिए इसका भाई भी इस पर आजाद नहीं होगा, क्योंकि मुकातब में आजाद करने की अहलियत ही नहीं है। तो कहते हैं वल मुकातबु इदश्तरा अखा हुआ मैं यजरी मजराहु ला यतकातबु अलैहि, और मुकातब ने जब अपने भाई को खरीदा या जो भाई के कायम मकाम हो उसको खरीदा तो वो उस पर मुकातब नहीं बनेगा, लिअन्नहु लैसा लहु मिल्कुन तामुन, इसलिए क्योंकि मुकातब की ऐसी कामिल मिल्कियत नहीं है। युक्दिरुहु अलल इताकी, इसको अकदरा युक्दिरु भी पढ़ सकते हैं और कद्दरा युक्दिरु भी, माना है कादिर बनाना। لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ مِلْكٌ تَامٌ, اس لیے کیونکہ مکاتب کی ایسی کامل ملکیت نہیں ہے. يُقْدِرُهُ عَلَى الْإِعْتَاقِ, جو اس کو آزاد کرنے پر قادر بنا دے. مکاتب کو ایسی ملکیت حاصل نہیں ہے. وَالْإِفْتِرَاضُ عِنْدَ الْقُدْرَتِ, اور فرض کرنا تو قدرت کی وقت میں ہے. یعنی یہ جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے یہ تو وہ صورت فرض کی گئی ہے کہ جب وہ آدمی آزاد کرنے پر قادر ہو, اور مکاتب تو آزاد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے, لہذا اس مکاتب کے مسئلے کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں ولی افتراض عند القدرتی, اور یہ جو مسئلہ فرض کیا گیا یہ تو قدرت کے وقت میں ہے, یعنی اس آدمی میں آزاد کرنے کی قدرت ہو. بخلاف الولادی, بخلاف ولاد. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ نے ہم پر کیا اعتراض کیا تھا کہ اگر مکاتب اپنے اصول و فروع کو خریدے گا جن میں ولادت والا رشتہ ہے تو وہ عقد کتابت میں داخل ہوں گے اور بھائی داخل نہیں ہوگا. تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ مکاتب جو ہے وہ آزاد کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. بھائی اس پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مکاتب آزاد کرنے کا اہل ہی نہیں ہے, اور نیز باقی جو اصول و فروع ہیں وہ اس پر مکاتب بن جائیں گے, وہ اس پر مکاتب بن جائیں گے. وجہ یہ کہ اصول اور فروع کا عقد کتابت میں داخل ہونا یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے, یہ عقد کتابت کے مقاصد میں سے ہے. غلام عقد کتابت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ غلامی جو ہے وہ عار ہے. غلامی کیا ہے؟ عار اور شرم کا باعث ہے, تو وہ آزادی چاہتا ہے. اور جس طرح اپنی ذات کے اندر غلامی عیب اور شرم والی بات ہے, اسی طرح اپنے اصول اور فروع کے اندر بھی غلامی ہو تو یہ بھی آدمی کے لیے غار کا باعث ہے, شرم کا باعث ہے بھائی. تو لہذا جیسے آدمی اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے, اسی طرح وہ اپنے اصول و فروع کو بھی آزاد کروانا چاہتا ہے بھائی, تاکہ آئندہ اس کے لیے یہ غار کا باعث نہ بنے بھائی. جبکہ بھائی کا معاملہ ایسا نہیں ہے, بھائی اگر غلام ہے تو یہ دوسرے بھائی کے لیے عار کا باعث نہیں ہے, لیکن اپنے ہی اصول اور فروع کا غلام ہونا یہ آدمی کے لیے عار کا باعث ہے. تو لہذا اصول اور فروع کا کتابت میں داخل ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے. کتابت کا مقصد کیا؟ اپنے آپ کو غلامی سے نجات دینا, یعنی اس عار اور شرم کو ختم کرنا اپنے لیے کہ وہ غلام ہے. تو اپنے اصول اور فروع کے اندر بھی غلامی آدمی کے لیے عار کا باعث ہے, لہذا وہ بھی اس کتابت کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے. لیکن اپنا بھائی جو ہے اس کا غلام ہونا عار اور شرم کا باعث نہیں, لہذا وہ عقد کتابت میں داخل نہیں ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں بخلاف الولادی, بخلاف ولادت والے رشتے کے, لأن العتق فیہ من مقاصد الکتابتی, اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو آزادی ہے وہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے. فامتنع البيع, تو بیچنا منع ہوگا. یہ جو اپنے اصول اور فروغ کو خرید لے گا اب ان کو نہیں بیچ سکتا, یہ بھی کیا بن گئے؟ مکاتب بن گئے. اگر مکاتب نہ بنتے تو پھر تو بیچ سکتا تھا. تو یہ مانا ہے فامتنع البيع, تو ان کا بیچنا ممتنع ہو جائے گا. فيعتق, تو یہ بھی آزاد ہوں گے. جب مکاتب آزاد ہوگا اپنے پیسے ادا کر دے گا, یہ بھی ساتھ ہی آزاد ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں فيعتق, تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا. تحقیقا لمقصود العقد, مقصود عقد کو ثابت کرنے کے لیے, اس عقد کتابت کا جو مقصود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ سے عار کو دور کرنا. آگے دیکھیے, وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب سے اب دوسرا جواب دیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ ولادت والے اور غیر ولادت والے رشتے میں فرق ہے. ولادت والے رشتے دار کو مکاتب خریدے گا تو وہ بھی مکاتب بن جائے گا, لیکن غیر ولادت والے رشتے دار کو مکاتب خریدے گا تو وہ مکاتب نہیں بنے گا. تو ایک تو جواب دے دیا کہ اس لیے نہیں بنے گا کہ مکاتب جو ہے وہ آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے, اور ولادت والے رشتے دار عقد کتابت میں اس لیے داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے. کتابت کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ سے عار کو دور کرنا. اور انسان جیسے اپنی غلامی کے ذریعے عار محسوس کرتا ہے, اسی طرح اپنے اصول و فروع کی غلامی کے ذریعے بھی عار محسوس کرتا ہے. تو اصول اور فروع کا عقد کتابت میں داخل ہونا یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے, اس لیے داخل ہو جائیں گے. اور اب جواب انکاری دے رہے ہیں. جواب انکاری یہ کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے, ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ مکاتب ولادت والے رشتہ داروں کو خریدے تو وہ کتابت میں داخل ہوں گے, और गैर वलादत वाले करीबी महरम रिश्तेदार को खरीदे तो वो किताबत में दाखिल नहीं होंगे। नहीं, हम कहते हैं वो भी दाखिल हो जाएंगे, भाई भी अकदे किताबत में दाखिल हो जाएगा, वो भी मुकातब बन जाएगा, उसको भी आगे बेचना जायज नहीं होगा। तो हमें ए इमाम शाफी रहमतुल्लाह, हमें आपका एतराज कबूल नहीं
जी।
क्योंकि हमारे नजदीक दोनों मुकातब बन जाएंगे, चाहे वलादत वाला रिश्ता हो चाहे गैर वलादत वाला रिश्ता हो। तो वो अब जवाब दे रहे हैं, वान अबी हनीफत रहमतुल्लाह, और इमाम साहब से रिवायत है, अन्नहु यतकातबु अलल अखी अयज़न, कि ये भाई पर भी मुकातब बन जाएगा, एक भाई दूसरे भाई पर भी मुकातब बन जाएगा। वह हुआ कौलुहुमा, और यही कौल है साहिबैन का भी, फलाना अन्नमना, तो हमारे लिए जायज है कि हम इनकार करें
जी।
हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात का इनकार करें। उन्होंने कहा था वलादत वाला जो है वो मुकातब बनेगा, गैर वलादत वाला मुकातब नहीं बनेगा, तो हमारे लिए जायज है, हम इनकार कर सकते हैं, क्योंकि साहिबैन भी फरमाते हैं भाई जो है वो भाई पर मुकातब बनेगा, और इमाम साहब से भी एक रिवायत यही है। तो फलाना अन्नमना, तो हमारे लिए जायज है कि हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात का इनकार करें। वहां अदा बिखिलाफ इमा इदा मलका बना अम्मी ही, और यह मसला बखिलाफ उस सूरत के है जब एक शख्स मालिक बन गया, ए बनाता अम्मी ही, अपने चचा की बेटी का
जी।
एक शख्स अपने चचा की बेटी का मालिक बना, और यह चचा की बेटी इसकी रिजाई बहन भी है, दोनों ने बचपन में एक ही औरत का दूध पिया था, तो आप मुझे बताइए ये चचा की बेटी आजाद होगी? ये आजाद नहीं होगी। भई ये चचा की बेटी करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है, लेकिन ये जो महरमियत यहां पर आ रही है वो इस करीबी रिश्ते की वजह से नहीं आ रही, वो तो रजायत की वजह से आ रही है। हमने क्या कहा था, ऐसा करीबी रिश्ता हो कि वो रिश्ता महरम होने में मुअस्सिर हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा बिखिलाफ इमा इदा मलक बना तामी ही, और यह मसल बखिलाफ उस सूरत के है कि जब कोई शख्स अपने चचा की बेटी का मालिक बना, वही उख्तुहु मिनर रजाई, इस हाल में कि यह उसकी रजाई बहन है, तो इसमें भी वो आजाद नहीं होगी। लिअन अल महरमियत मा सबत बिल कराबती, इसलिए क्योंकि यह महरमियत रिश्तेदारी की वजह से साबित नहीं हुई। वस्सबीयु जुइला अहलन लिहाज़ल इत्क, यहां से साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि बच्चा और मजनून भी इस आजादी के अहल हैं
जी।
बच्चा और
मजनून
भी इस आजादी के अहल हैं। बच्चा और मजनून अगर वह मालिक बन गए ऐसे करीबी रिश्तेदार के जो इनका महरम भी है, तो वह इन पर आजाद हो जाएगा। हालांकि बच्चा तो आजादी का अहल नहीं है, मजनून तो आजादी का अहल नहीं है। बच्चा या मजनून अपने गुलाम को आजाद करें तो वह आजाद नहीं होगा, लेकिन कहते हैं यहां पर यह बच्चा जो है या मजनून जो है वो भी इस आजादी के अहल हैं। चुनांचे एक शख्स ने वसीयत कर दी, मेरे मरने के बाद मेरा यह गुलाम फुला बच्चे को दे देना, और वो इस बच्चे का करीबी महरम रिश्तेदार है, तो जब वो आदमी मरेगा बच्चा उसका मालिक बनेगा और साथ ही वो आजाद हो जाएगा। या इसी तरह मजनून के बारे में यह वसीयत की थी किसी ने, और वो गुलाम मजनून को जैसे ही मिलेगा जो इसका करीबी महरम रिश्तेदार है वो फौरन आजाद हो जाएगा
जी।
तो कहते हैं वसबी जो इला अहलन लिहाजल इतकी, और बच्चा जो है उसको अहल करार दिया गया है इस आजादी के लिए। वह कदल मजनून, और इसी तरह मजनून भी है, हता तकल करीब अलहिमा इंदल मिल की, यहां तक इनका करीबी रिश्तेदार इन पर आजाद हो जाएगा, इंदल मिल की मालिक होते वक्त भाई, ले अन्नहु ताल्लक बिही हक्कुल अब्दी, कहते हैं इसलिए क्योंकि इस आजादी के साथ बंदे का हक मुताल्लिक है
जी।
ये इसके साथ
बंदे का
हक मुताल्लिक है, ये करीबी रिश्तेदार है, इसके साथ शरीयत ने एहसान करने का हुक्म दिया है, तो लिहाजा बंदे का हक मुताल्लिक हुआ, लिहाजा वो आजाद हो जाएगा। कहते हैं लिअन्नहु ताल्लक बिही हक्कुल अब्दी, इसलिए क्योंकि इस आजादी के साथ बंदे का हक मुताल्लिक है, फशाबहन नफकता, तो ये नफका के मुशाबे हुआ
जी।
ये नफका के मुशाबे हुआ, और कोई करीबी महरम रिश्तेदार है और वो गरीब है
जी।
गरीब है, मसलन औरत है, और ये बच्चा या मजनून इनके पास माल मौजूद है, तो वो उस करीबी महरम रिश्तेदार औरत का नफका इन पर वाजिब होगा भाई। क्यों? क्योंकि वो हक्कुल अब्द है भाई, हक्कुल अब्द वो बच्चे के माल में से भी अदा किया जाएगा और मजनून के माल में से भी अदा किया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नहु ताअल्लक बिही हक्कुल अब्द, इसलिए क्योंकि इस आजादी के साथ बंदे के हक का ताल्लुक है, फशाबहन नफकता, तो ये आजादी जो है नफके के मुशाबे हो गई। ومن اعتق عبدا لوجه الله تعالى او للشيطان او للصنم اعتق. सूरत मसला ये, एक आदमी ने अपने गुलाम को आजाद किया और यूं कहा मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद करता हूं, या एक आदमी है उसने अपने गुलाम से कहा मैं तुझे शैतान के लिए आजाद करता हूं, ये एक आदमी है वो एक बुत की इबादत करता है तो वो अपने गुलाम से कहता है मैंने तुझे अपने इस बुत के लिए आजाद कर दिया. तो याद रखो फुकहा फरमाते तमाम सूरतों में गुलाम आजाद हो जाएगा. हां अलबत्ता दो सूरतों में ये गुनाहगार होगा, हराम काम कर रहा है. किसके नाम पर आजाद कर रहा है? शैतान या बुत के नाम पर. तो वो गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल बात चल रही है कि गुलाम आजाद होगा या नहीं. तो फुकाहा फरमाते हैं गुलाम आजाद हो जाएगा. वजह यह कि ये आजाद करने वाला अहल है. गुलाम या बांदी को कौन आजाद कर सकता है? बाब के शुरू में आया था आजाद आकिल बालिग, अपने गुलाम को आजाद करना चाहे तो कर सकता है. आजाद भी होना चाहिए, आकिल भी हो और बालिग भी हो, और वो गुलाम या बांदी इसके ममलूक हो. तो यहां पर भी ये जो आजाद करने वाला है ये आजाद आकिल बालिग है भाई, और इसने आजादी की निस्बत अपनी मिल्कियत यानी अपने गुलाम या बांदी की तरफ की है, लिहाजा ये आजादी वाकई हो जाएगी. और बाकी जो इसने पहली सूरत कही कि मैं तुझे आजाद करता हूं अल्लाह के लिए, भाई अल्लाह के लिए ना भी कहता तो भी गुलाम ने आजाद हो जाना था
जी.
तो उसमें जो अल्लाह के लिए लफ्ज बढ़ा दिया ये एक जायद कैद है. आजादी इसके बगैर भी हो जाती है
जी.
आजादी इसके बगैर भी हो जाती है. तो लिहाजा बाकियों के अंदर अगर जो उसने शैतान और बुत को जिक्र किया है, अल्लाह को जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह का जिक्र तो हमने बता दिया वो जायद था, उसके बगैर भी आजादी हो जानी थी. तो यहां पर बाकी लफ्जों में भी आजादी वाकई हो जाएगी. वमन आतका अब्दन लिवजहिल्लाही ताला, और जिसने किसी गुलाम को आजाद किया अल्लाह की रजा के लिए, औलि शैतानी या शैतान के लिए, औलि सनमी या बुत के लिए, आतका तो गुलाम आजाद हो जाएगा. लिवजूदि रुकनिल इताक मिन अहलिही फी महलिही, लिवजूदि रुकनिल इताक, इसलिए क्योंकि इताक का रुकन पाया गया, एताक का रुकन पाया गया, यानी उसने कहा है मैंने तुझे क्या किया है आजाद किया है. और मिन आहली ही, और ये एताक का रुकन किसकी तरफ से है? आहले एताक की तरफ से है. वो जो मालिक है वो आजाद है, आकिल बालिग है भाई. और फी महल्ली ही, और ये रुकन किस में पाया गया है? अपने महल में. एताक का महल क्या चीज है? गुलाम या बांदी, यानी वो जो ममलूक है, तो ममलूक की तरफ निस्बत करके आका ने कहा है. तो मिन अहली ही आई मिन अहलिल इताकी, अहले इताक कौन है? मालिक. और फिर महल्ली ही, महल्ले इताक क्या है? वो ममलूक है, गुलाम या बांदी है. कहते हैं लिवजूद रुकनिल इताक मिन अहली ही फी महल्ली ही, इसलिए क्योंकि इताक का रुकन पाया गया अहले इताक की तरफ से, फी महल्ली ही महल्ले इताक में. वस्फुल कुर्बती फिल लफ्जिल अव्वली जियादतुन, और ये जो कुर्बत का वसफ है पहले लफ्ज में ये जायद है. लिवजहिल्लाह ताला, मैं अल्लाह की रजा के लिए गुलाम को आजाद करता हूं, ये अल्लाह की रजा वाले अल्फाज जायद हैं, इनको ना भी जिक्र करता गुलाम ने आजाद हो जाना था. तो कहते हैं वबसफुल कुर्बती, कुर्बत करीब होना, अल्लाह की रजा मकसूद है, अल्लाह का कुर्ब मकसूद है, बंदा अल्लाह के करीब होना चाहता है. कहते हैं वस्फुल कुर्बति फिल लफ्जिल अव्वली, और पहले लफ्ज के अंदर कुर्बत का जो वसफ जिक्र किया गया ज्यादतुन, ये जायद है. फला यख्तल्लुल इत्कु बि आदमी ही, और लिहाजा आजादी में खलल नहीं आएगा बि आदमी ही, इस वसफ के न होने से. फिल लफ्जैन अल आखरैन, बाकी दो लफ्जों में, बाकी दो लफ्जों में यह कुर्बत वाला वसफ नहीं है, इससे कोई खराबी नहीं, क्योंकि यह वसफ तो वैसे ही जायद है भाई. वाइद कुल मुकरही व सकरानी वाकउन, मुकरह भाई जिस पर जबरदस्ती की गई, एक शख्स दूसरे शख्स के पास आया और तलवार निकाली और कहा कि अपने गुलाम या बांदी को आजाद करो नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करता हूं या तुम्हारा हाथ पांव काटता हूं. उसने गुलाम या बांदी को आजाद कर दिया. तो याद रखो ये जो मुकरह है ये गुलाम या बांदी को आजाद करेगा तो वह आजाद हो जाएंगे. और ये बात तलाक में भी गुजरी थी कि एक शख्स दूसरे शख्स पर जबरदस्ती करता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या तुम्हारा हाथ पांव काट दूंगा, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, तो उसने तलाक दी तो तलाक वाकई हो जाएगी. वजह यह कि वो शख्स अपने इख्तियार से तलाक दे रहा है, एक तरफ उसकी जान जा रही थी या उसका हाथ पांव जा रहा था और दूसरी तरफ बीवी जा रही थी, उसने अपने इख्तियार से हल्की तकलीफ को इख्तियार कर लिया, लिहाजा बीवी को तलाक दी तो वाकई हो जाएगी। यहां पर भी एक तरफ गुलाम या बांदी हाथ से जा रहा है तो दूसरी तरफ उसकी जान जा रही है या उसका हाथ पांव जा रहा है और उसने अपने इख्तियार से जो कम दर्जे की मुसीबत थी उसको इख्तियार कर लिया, तो लिहाजा ये गुलाम या बांदी को उसने आजाद किया मुकरह ने, तो वो आजाद हो जाएंगे
जी।
तो कहते हैं वाइद कुल मुकरही व सकरानी वाकिउन, और मुकरह यानी जिस पर जबरदस्ती की गई उसकी आजादी, व सकरानी और वो जो मदहोश है जो नशे में है उसकी आजादी, वाकिउन वो वाकई होती है। भाई नशे में एक आदमी मदहोश है, इतना नशे में मदहोश है कि उसे जमीन और आसमान का भी पता नहीं चल रहा, तो इस सूरत के अंदर भी अगर वो गुलाम या बांदी को आजाद करेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। और ये मसला भी पीछे तलाक में गुजरा था, एक आदमी नशे में खूब मदहोश है, उसने इतना नशा कर लिया उसे किसी चीज का पता नहीं चल रहा और उसने अपनी बीवी को तलाक दी, तो तलाक वाकई हो जाएगी
जी।
भाई सवाल, भाई उसकी तो अकल ही नहीं है, जब अकल ही नहीं है तो तलाक तो वाकई नहीं होनी चाहिए। तलाक के लिए तो जरूरी है इख्तियार भी हो और अकल भी हो। भाई तो जवाब वहां गुजर चुका कि भाई ये जो इसने नशा किया है ये इसकी अपनी गलती है भाई, लिहाजा बतौरे डांट के ये तलाक वाकई हो जाएगी, बतौरे डांट के, ताकि आइंदा कभी एहसान ना करे भाई, वरना तो जिस शख्स की अकल जायल हो जाए उसकी तो तलाक वाकई नहीं होती भाई। और इसी तरह वो गुलाम या बांदी को आजाद करे तो वो आजाद भी नहीं होंगे भाई, लेकिन यहां पर वो मदहोश है, उसने खुद नशा किया है भाई, बतौर डांट के यानी बतौर सजा के कि इसने खुद नशा किया है, तो सजा के तौर पर शरीयत जो है इसके इस तसर्रुफ को नाफिज करार दे देती है भाई। तो कहते हैं वाइद कुल मुकरही व सकरानी वाकिउन, और मजबूर और मदहोश जो है उनकी आजादी वाकई होगी, लि सुदूर रुकनी मिनल अहली फिल महल्ली, इसलिए क्योंकि रुकने एताक सादिर हुआ है, रुकने एताक पेश आया है, मिनल अहली अहले एताक से, फिल महल्ली महल्ले एताक में, कमा फि तलाकी जैसे के तलाक में है, वकद बयन ना हो मिन कबल, और तहकीक इसको हमने पहले बयान किया था, वह इन अजाफल इतका इला मिल किन अवशर्त इन सहा कमाफित तलाक। भाई आपने तलाक के मसले में पढ़ा था कि तलाक जो है उसको शर्त के साथ मुअल्लक करना ठीक है, खावंद अपनी बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो तलाक मुअल्लक हो गई, ये औरत जब उस घर में जाएगी तलाक वाकई हो जाएगी। इसी तरह एताक जो है उसको भी शर्त के साथ मुअल्लक करना ठीक है, एक आदमी अपने गुलाम से कहता है अगर तूने ये काम किया या मसलन तू उस घर में गया तो तू आजाद है, तो ये गुलाम जैसे ही उस घर में जाएगा वो आजाद हो जाएगा। इसी तरह तलाक को मिल्कियत के साथ मुअल्लक करना भी सही है, तलाक को एक आदमी एक अजनबिया औरत से कहता है इन नकाह तू की फांति तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है
जी।
अभी अजनबिया है ये, उसकी बीवी तो नहीं, लेकिन उसने तलाक की निस्बत मिल्कियत की तरफ की है कि अगर मैंने तुझसे निकाह किया, तेरा मालिक बना, तुझ पर मुझे मिलके निकाह हासिल हुई, तो फिर तुझे तलाक है। तो इंदल अहनाफ ये तालिक भी सही है, और ये शख्स जिस वक्त इस औरत से निकाह करेगा उसी लम्हे अगले ही लम्हे में इस औरत को तलाक भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ तलाक को शर्त के साथ मुअल्लक करना भी सही और तलाक को मिल्कियत के साथ मुअल्लक करना भी सही है भाई। इसी तरह एताक भी याद रखो, उसको शर्त के साथ मुअल्लक करना भी सही और मिल्कियत के साथ मुअल्लक करना भी सही है। शर्त की मिसाल तो मैंने जिक्र कर दी, एताक को शर्त के साथ मुअल्लक किया, गुलाम से कहा अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है, तो वो जैसे ही उस घर में जाएगा वो आजाद हो जाएगा। और मिल्कियत के साथ भी एताक को मुअल्लक कर सकता है, गुलाम या बांदी से कहता है अगर मैं तेरा मालिक बना तो तू आजाद है, तो जैसे ही मालिक बनेगा, जिस तरह भी मालिक बन जाए, चाहे कोई तोहफे में उसको यह गुलाम या बांदी दे दे, चाहे वो इसको खरीद ले, चाहे वरासत में मिल जाए, जिस वक्त ये इसका मालिक बनेगा अगले ही लम्हे के अंदर वो गुलाम या बांदी आजाद हो जाएंगे। मालूम हुआ एताक और तलाक दोनों को शर्त के साथ मुअल्लक करना भी सही और मिल्कियत के साथ मुअल्लक करना भी सही है भाई। कहते हैं वह इन अजाफल इतक इला मिल्क इन औ शर्त इन सहा, और अगर निस्बत कर दी आजादी की मिल्कियत की तरफ या शर्त की तरफ सहा तो यह सहीह है। कमाफी तलाक ही, जैसे कि तलाक में है अमल इजाफत इलल मिल्की, बाकी मिल्कियत की तरफ जो निस्बत है फफी ही खिलाफ शाफी रहमहुल्लाह, तो इसमें इमाम शाफी रहमहुल्लाह का इख्तिलाफ है। भाई मिल्कियत की तरफ तलाक की निस्बत की या एता की, तो उसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। आपने पढ़ा था कि हमारे नजदीक मुअल्लक बिशर्त वो हुक्म का सबब बनता है इंद वजूद शर्त, जब शर्त पाई जाएगी। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो खावंद ने तलाक को मुअल्लक कर दिया है। और हमारे नजदीक मुअल्लक जो है वो हुक्म का यानी तलाक का सबब इस वक्त नहीं बनेगा, जब शर्त पाई जाएगी तब सबब बनेगा। यानी यूं समझो इस वक्त ये अंति तालिकुन है ही नहीं, इस वक्त अंति तालिकुन है ही नहीं। जब औरत उस घर में जाएगी जिस वक्त शर्त पाई जाएगी, वो शर्त पूरी करेगी, उसी वक्त अंति तालिकुन आएगा और साथ ही तलाक वाकई हो जाएगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है इंद तकल्लुम, जिस वक्त बात की जाए उसी वक्त सबब बनता है। लिहाजा खावन ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस वक्त ही अंति तालिकुन तलाक का सबब बन रहा है, लेकिन एक रुकावट आ गई है। अंति तालिकुन तो चाहता है तलाक हो जाए, ये अभी सबब बनना चाहता है, लेकिन एक रुकावट आ गई कि ये तलाक मुअल्लक है घर में जाने के साथ, तो लिहाजा जब घर में जाएगी तो अब वो रुकावट दूर हो गई तो तलाक वाकई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इंदल अहनाफ मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है उस वक्त जब शर्त पाई जाए, और इंदा शवाफी मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम, जब तकल्लुम किया जाए। लिहाजा यहां तो खावन ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, जब वो उस घर में जाएगी तलाक वाकई हो जाएगी, हमारे नजदीक भी और शवाफे के नजदीक भी। अलबत्ता हमारे नजदीक अंति तालिकुन, जब वो घर में गई उस वक्त अंति तालिकुन आया और तलाक का सबब बना, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जिस वक्त कहा था उस वक्त की अंति तालिकुन तलाक का सबब बन रहा था, सिर्फ एक रुकावट थी, वो रुकावट दूर हो गई, वो शर्त पूरी हो गई। लेकिन अगर एक शख्स एक अजनबी औरत से कहता है इन निकाह तो की फंति तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है, तो हमारे नजदीक ये अंति तालिकुन मुअल्लक है, ये जब शर्त पाई जाएगी तब अंति तालिकुन आएगा, और उस वक्त तो निकाह हुआ है, जैसे ही निकाह होगा साथ ही तलाक आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त अंति तालिकुन है ही नहीं, यूं समझो। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक इन निकाह तो की फंति तालिकुन, ये अंति तालिकुन इस वक्त तलाक का सबब बनना चाहता है, और इस वक्त तो ये औरत अजनबिया है, ये तो इसकी बीवी नहीं है, लिहाजा उनके नजदीक ये कलाम लग चला गया।
जी।
बाद में निकाह करेगा भी तो वो कलाम एक दफा बातिल हो चुका था, दोबारा सही नहीं हो सकता, वो अब तलाक वाकई नहीं होगी। इसी तरह एक आदमी किसी दूसरे के गुलाम से कहता है इन मलक तू का फंत हुर्रुन, अगर मैं तेरा मालिक बना तो तू आजाद, हमारे नजदीक ये फंत हुर्रुन ये आजादी का सबब बनेगा जब यह मालिक बनेगा, तो उस वक्त आजाद हो जाएगा। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक यह फअंत हुर्रुन ने अभी सबब बनना है, यह मुअल्लक है और यह इंद तकल्लुम ही सबब बनेगा जिस वक्त यह लफ्ज अदा कर रहा है, और इस वक्त तो यह इसका मालिक ही नहीं है, लिहाजा यह कलाम लग्व चला गया। और जब एक दफा कलाम लग्व हो गया बाद में जब मालिक बनेगा भी तो यह कलाम दोबारा सही होकर वापस नहीं आ सकता, लिहाजा आजाद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा तलाक को शर्त के साथ मुअल्लक करना, इसमें तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारे साथ हैं, लेकिन तलाक को मिल्कियत के साथ मुअल्लक करना, इसमें हमारे साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं। इसी तरह एताक में भी है, एताक को भी मिल्कियत के साथ मुअल्लक करें तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमसे इख्तिलाफ करते हैं। तो कहते हैं अम्मल इजाफत इलल मिल्की फफीह खिलाफ शाफी रहमतुल्लाह, और बाकी मिल्कियत की तरफ जो निस्बत हो तो उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। वक़द बय्यन्नाहु फी किताब अत्तलाक, और तहकीक हमने इसको किताब अत्तलाक में बयान किया था। वह अम्मत तालिक बिश्शर्त, और बाकी शर्त के साथ मुअल्लक करना फली अन्नहु इसकातुन, यह हमारी दलील चल रही है। हमारी दलील क्या कि एताक को मिल्कियत के साथ भी मुअल्लक किया जा सकता है और शर्त के साथ भी। तो आप वजह जिक्र कर रहे हैं कि शर्त के साथ क्यों मुअल्लक कर सकते हैं, तो जवाब देंगे क्योंकि इताक वो इसकात का नाम है। पीछे बात गुजर गई कि जैसे तलाक जो है वह इसकात का नाम है, इसी तरह इताक भी इसकात मिल्कियत का नाम है, और इसकात मिल्कियत को शर्त के साथ मुअल्लक करना जायज है। इस बात मिल्कियत, मिल्कियत को साबित करना, उसको तो शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कात मिल्कियत को तो मुअल्लक किया जा सकता है। कहते हैं वह अम्मत तालीक भी शर्त, और बाकी इस एताक को शर्त के साथ मुअल्लक करना, फली अन्नहू इस कातुन, इसलिए क्योंकि ये जो एताक है ये इस कात का नाम है, यानी साकित करना, मिल्कियत को साकित करना। फयजरी फीही तालीक, लिहाजा इस एताक के अंदर भी तालीक जारी होगी, बेखिलाफी तमलीकाती, बखिलाफ तमलीकात के। तमलीक के अंदर तालीक जारी नहीं होती। एक आदमी एक दूसरे आदमी से कहता है अगर तूने यह काम किया तो मेरे और तुम्हारे दरमियान बैअ हो गई। बैअ में क्या होता है, मुश्तरी मबीअ का मालिक बनता है। तो तमलीकात के अंदर तालीक जारी नहीं हो सकती क्योंकि यह तो जुए जैसी सूरत बन गई। किस जैसी, जुए जैसी सूरत बन गई कि पता नहीं वो ये काम करता है या नहीं, होता या नहीं, और फायदा होता है या फायदा नहीं होता। या इसी तरह एक आदमी एक औरत से कहता है अगर तूने ये काम कर लिया तो तेरा मेरा निकाह है, तो ये निकाह भी क्या है, मिलकी, ये उसमें खावन को मिलके निकाह हासिल होती है। तो तमलीकात जो हैं उनको तो मुअल्लक करना सही नहीं, लेकिन मिलकियत को साकित करना उसको मुअल्लक करना सही है। तो कहते हैं बिखिलाफ तमलीकात, बखिलाफ मालिक बनाने के, अला मा उरिफ फी मौज़िई ही, बवजह उसके जो जाना गया है अपने मकाम में। यानी उसूल फिका के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जो चीज इसकात की कबील से हो यानी साकित करने की कबील से उसको मुअल्लक किया जा सकता है, और जो इस बात की कबील से हो यानी जिसे साबित करना है यानी जिसमें मालिक बनाना है उसको मुअल्लक नहीं किया जा सकता। यह माना है अला मा उरिफ फी मौज़िई ही, उस वजह से जो जाना गया है अपने मकाम में यानी उसूल फिका में। वह इदा खरज अब्दुल हरबी इलैना मुस्लिमन अतका, सूरत मसला ये, एक हरबी गुलाम था वो मुसलमान होकर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम आ गया, तो याद रखो जैसे ही वो दारुल इस्लाम में दाखिल होगा वह आजाद हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। दलील इसकी कहते हैं यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताइफ वालों का मुहासरा किया हुआ था और वहां से कुछ गुलाम जो है वो मुसलमान होकर भाग कर आ गए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन सबको आजाद करार दिया। हुजूर ने उन सबको आजाद करार दिया और हुजूर ने फरमाया हुम उतकाउल्लाह, ये अल्लाह के आजाद करदा हैं, ये अल्लाह के आजाद करदा हैं। मालूम हुआ जब भी कोई हरबी गुलाम मुसलमान होकर दारुल इस्लाम की तरफ निकलेगा वो आजाद हो जाएगा। कहते हैं वईदा खरजा अब्दुल हरबी की इलैना, और जब किसी हरबी का गुलाम निकल आया हमारी तरफ मुस्लिमन मुसलमान होकर, आतका वो आजाद हो जाएगा। लिकौलिही अलैहि सलाम फी अबीद ताइफी, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के फरमाने मुबारक के जो आपने ताइफ के गुलामों के बारे में फरमाया, हीन खरजू इलैहि मुस्लिमीना, जिस वक्त वो गुलाम मुसलमान होकर उनकी तरफ निकले हुजूर ने फरमाया हुम उतकाउल्लाह, ये अल्लाह के आजाद करदा हैं। वली अन्नहु अहरजा नफ्सहू वह मुस्लिमुन, एक तो ये नकली दलील कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उतकाउल्लाह फरमाया, अल्लाह के आजाद करदा, और नीस नकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया कि भाई जब ये मुसलमान हो गए तो इसने अपने आप को महफूज कर लिया, और इब्तिदाअन मुसलमान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इब्तिदाअन मुसलमान कब्जे में आए और आप उसको क्या करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, नहीं, हां एक दफा गुलाम बना लिया उसके बाद मुसलमान हो जाए तो फिर वो गुलाम रहेगा, क्योंकि अब वो बकाअन मुसलमान है, इब्तिदाअन मुसलमान नहीं था भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु अहरजा नफ्सहु वह मुस्लिमुन, अहरजा युहरिजु इहराज का माना है महफूज करना। वली अन्नहु अहरजा नफ्सहु वह मुस्लिमुन, इसलिए क्योंकि इसने अपनी जात को महफूज कर लिया इस हाल में कि यह मुसलमान है, या बामुहावरा तर्जमा यूं कर लें, वली अन्नहु अहरजा नफ्सहु वह मुस्लिमुन, और इसलिए क्योंकि इसने मुसलमान होकर अपनी जात को महफूज कर लिया। वलस्तिरका का अलल मुस्लिम इब्तिदाअन, इस्तिरका का माना है मालिक बनना, वलस्तिरका الاستحقاق على المسلم ابتداء, اور مسلمان پر ابتداء مالک نہیں بنا جا سکتا, یعنی اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا, بعد میں بقاء وہ مسلمان ہو جائے. ایک غلام کافر تھا اور مسلمانوں کا غلام ہے, بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو غلام ہی رہے گا, لیکن ابتداء ہی مسلمان تھا. دوسرے مسلمان اس کو غلام اپنا بنانا چاہتے ہیں, نہیں, مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. آگے دیکھیے بھائی, وَإِنْ أَعْتَقَ حَامِلًا أَعْتَقَ حَمْلُهَا تَبْعًا لَهَا إِذْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً أَعْتَقَ دُونَهَا. بھائی یاد رکھیے, اگر آقا نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور وہ حاملہ ہے تو باندی کے تابع ہو کر اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا, کیونکہ حمل باندی کے تابع ہے, حمل اس کے جسم کے ایک حصے کی طرح ہے, تو باندی آزاد تو اس کا حمل بھی آزاد. لیکن اگر اس کا برعکس ہوا, آقا نے حمل کو آزاد کیا ہے, تو اس صورت میں صرف حمل آزاد ہوگا, باندی آزاد نہیں ہوگی. کہتے ہیں وہ ان اعتق حاملا, اور اگر آقا نے حاملہ باندی کو آزاد کیا, اعتق حملها تبعا لها, تو اس باندی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا, تبعا لها اس باندی کے تابع ہو کر, اذ ہوا متصل بها, اس لیے کیونکہ حمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ولو اعتق الحمل خاصة, اور اگر آقا نے خاص طور پر صرف حمل کو آزاد کیا, عتق دونہا, تو وہ حمل آزاد ہو جائے گا, دونہا ای دون الحامل, حاملہ کے بغیر ہی, حاملہ باندی آزاد نہیں ہوگی, صرف حمل آزاد ہوگا. لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ. اچھا بھائی کیا وجہ ہے, جب باندی کو آزاد کرتے تھے تو حمل آزاد ہوتا تھا, اور حمل کو آزاد کرتے ہیں تو باندی اس کے تابع ہو کر آزاد نہیں. کہتے ہیں بھائی وجہ ہم نے ذکر کر دی کہ یہ حمل باندی کے تابع ہے, یہ حمل باندی کے جسم کے ٹکڑے کی طرح ہے, تو جب باندی آزاد تو حمل بھی آزاد, لیکن حمل کو جب آزاد کیا جائے تو باندی کو اس کے تابع قرار نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کیونکہ اس صورت میں تو قلب الموضوع لازم آئے گا. ایک چیز کہ حمل جو ہے وہ باندی کے تابع ہوتا ہے, باندی حمل کے تابع نہیں ہوتی, لہذا یہاں پر آقا نے باندی کو خود صراحتاً آزاد بھی نہیں کیا, اور نیز باندی کو حمل کے تابع بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر دیکھیے کہتے ہیں ولو اعتق الحمل خاصة اعتق دونها, اور اگر خاص طور پر حمل کو آقا نے آزاد کیا تو وہ حاملہ کے بغیر ہی آزاد ہوگا. لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ إِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا, اس لیے کیونکہ باندی کے آزاد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, مقصودًا بے اعتبار مقصود ہونے کے, اس کو مقصود قرار نہیں دیا جا سکتا. جب آقا نے صرف حمل کو آزاد کیا ہے, باندی کو تو اس نے آزاد ہی نہیں کیا, تو باندی کو اعتاق کا مقصود قرار دے کر آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا. لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ إِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا, اس لیے کیونکہ باندی کو آزاد قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے, مقصودًا بے اعتبار مقصود ہونے کے, کہ باندی کے اعتاق کو بھی مقصودی قرار دے کر آزاد قرار دے دیا جائے, اس کی کوئی وجہ نہیں. لعدم الاضافۃ الیہا, اس لیے کیونکہ آقا نے اعتاق کی نسبت اس باندی کی طرف نہیں کی, اس نے باندی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ آزاد ہے, بلکہ اس نے تو صرف حمل کے بارے میں کہا ہے, تو باندی کو مقصوداً بھی آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کا قصد کیا گیا ہو, جس کا ارادہ کیا گیا ہو, اور نیز باندی کو حمل کے تابع کرتے ہوئے بھی آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ إِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا, اس لیے کیونکہ باندی کو آزاد قرار دینا بے اعتبار مقصود ہوتے ہوئے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا, اس لیے کیونکہ اس حاملہ کی طرف آزادی کی نسبت نہیں ہے. وَلَا إِلَيْهِ طَبْعًا, اور نیز اعتاق کی نسبت باندی کی طرف طبعاً بھی نہیں کی جا سکتی. لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ, اس لیے کیونکہ اس کے اندر قلب موضوع ہے, وضع کا معنی ہے مقرر کرنا, قلب موضوع ہے, موضوع کو پلٹ دینا ہے, الٹا دینا ہے. بھئی حمل جو ہوتا ہے وہ حاملہ کے تابع ہوتا ہے, نہ کہ ایسا کہ حاملہ جو ہے وہ حمل کے تابع ہو. لہذا ولا الیہ طبعا, اور اعتا کی نسبت باندی کی طرف طبعا بھی قرار نہیں دی جا سکتی. لما فیہ من قلب الموضوع, اس لیے کیونکہ اس کے اندر موضوع کا پلٹنا ہے, क्योंकि इसमें आपको ताबे को मतबू बनाना पड़ेगा और मतबू को ताबे बनाना पड़ेगा और यह दुरुस्त नहीं है। सुम एता कुल हमली सही हन, फिर हमल को आजाद करना सही है। वला यसे हुबे उहू वही बतूहू, और उसको बेचना और उसको हिबा करना सही नहीं। याद रखो, हमल को आजाद करना तो सही है, हमल को आजाद करना सही, लेकिन हमल को बेचना या हमल को हिबा करना, किसी को तोहफे के तौर पर देना, यह जायज नहीं। भाई क्यों नहीं जायज? कहते हैं वजह यह कि हिबा के अंदर कब्जा जरूरी है। आप एक आदमी को कोई चीज तोहफे के तौर पर देते हैं, जब तक वो उस पर कब्जा नहीं करेगा हिबा ताम नहीं, वो उस चीज का मालिक ही नहीं बनेगा। और यहां पर हमल पर कब्जा मुमकिन ही नहीं है। कब्जे के लिए क्या जरूरी है? कि वह हमल उस आदमी के सुपुर्द किया जाए, और हमल को तो सुपुर्द नहीं किया जा सकता। भाई हमल को तो सुपुर्द नहीं किया जा सकता, और नीज इसी तरह हमल की बै भी नहीं जायज। अरब बाज़ औकात हमल की बै करते थे, मसलन उनके यहां घोड़े कम होते थे तो वो घोड़ों के हमल ही की बै कर लिया करते थे, तो ये हमल की भी बै जायज नहीं। एक तो ये वजह कि पता नहीं हमल है भी या नहीं, जानवर का पेट वैसे फूला हुआ है या हमल है, ये यकीनी नहीं। और नीज इसलिए क्योंकि बै उस चीज की जायज है कि इंसान उसके सुपुर्द करने पर कादिर हो, और हमल के सुपुर्द करने पर तो इंसान कादिर ही नहीं है। मसलन फजा में परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, और एक आदमी दूसरे को कहता है ये परिंदे मैंने आपको 10,000 रुपए में बेच दिए। भाई तुम तो इन परिंदों के हवाले करने पर कादिर ही नहीं हो, बेचते कैसे हो भाई? या जंगल के अंदर कहता है ये जो हिरन है ये मैंने आपको 1,00,000 रुपए में बेच दिए। नहीं भाई, ये बै नहीं जायज, आप हिरन के सुपुर्द करने पर कादिर ही नहीं है। यह एक आदमी कहता है ये दरिया के अंदर मछलियां हैं ये मैंने आपको 1,00,000 रुपए में बेच दी। भाई आप इनके सुपुर्द करने पर कादिर ही नहीं है। तो जिस चीज के सुपुर्द करने पर इंसान कादिर हो उसकी बै जायज है। तो हिबा, हिबा के अंदर सुपुर्द करना जरूरी है, और बै के अंदर सुपुर्द करने पर कुदरत जरूरी है। भाई तो कहते हैं सुम एताकुल हमली सही हन, फिर हमल को आजाद करना सही है। वला यसिहु बैउहु वहिबतुहु, और उसको हमल को बेचना और उसको हिबा करना यानी तोहफे के तौर पर देना सही नहीं है। लिअन्न तस्लीमा नफ्सहु शर्तुन फिल हिबती, इसलिए क्योंकि उस चीज की जात को सुपुर्द करना यह शर्त है हिबा में। वल कुदरतु अलैहि फिल बैउ, और सुपुर्द करने पर कुदरत का होना यह शर्त है फिल बैउ बै के अंदर। वलम यूजद जालिका बिल इजाफती इलल जनीनी, और यह चीज तो नहीं पाई गई जनीन की तरफ निस्बत करते हुए। जनीन भाई वो जो मां के पेट में जो बच्चा है जो हमल है उसको क्या कहते हैं? जनीन भाई। तो जनीन की तरफ बै की निस्बत भी की जाए तो बै सही नहीं, क्योंकि इंसान उसके सुपुर्द करने पर कादिर नहीं। और जनीन की तरफ हिबा की निस्बत की जाए तो हिबा भी सही नहीं, क्योंकि हिबा के अंदर कब्जा जरूरी है, वो कब्जा नहीं हो सकता। तो कहते हैं वलम यूजद जालिका, और वो सुपुर्द करना तो नहीं पाया गया या उसकी कुदरत तो नहीं पाई गई। बिल इजाफती इलल जनीनी, उस हमल की तरफ निस्बत करते हुए। वशय उम्मीन जालिका लई सभी शर्त इन फिल एताकी, और एताक के अंदर इनमें से कोई चीज शर्त नहीं। इताक में सुपुर्द करना भी शर्त नहीं, और सुपुर्द करने पर कुदरत भी शर्त नहीं, लिहाजा ये हमल का इताक हो जाएगा। अलबत्ता हमल की ब्या और हिबा नहीं हो सकती। तो कहते हैं वशय उम्मीन जालिका लई सभी शर्त इन फिल इताकी, और इनमें से कोई चीज शर्त नहीं है इताक के अंदर। फफ्तारा का, तो ये दोनों जुदा हो गए, यानी इताक जो है ब्या और हिबा से जुदा हो गया। वलौ आतकल हमला अला माल इन सहा वला यजिबुल माल। सूरत मसला ये कि आका ने हमल को आजाद कर दिया माल की शर्त पर, कि मैं इस हमल को आजाद करता हूं 10,00,000 रुपए के इवज। तो आपने आम गुलाम और बांदियों में पढ़ा था कि मसलन आका अपने गुलाम या बांदी से कहता है मैंने तुम्हें 10,00,000 रुपए के इवज या 10,00,000 रुपए की शर्त पर आजाद कर दिया, तो उसमें उनका कबूल करना जरूरी है, क्योंकि उनके जिम्मे माल आएगा। आका वैसे नहीं आजाद करना चाह रहा बल्कि इवज लेना चाहता है, और उन पर इवज वैसे नहीं लाजिम किया जा सकता जब तक वो कबूल ना करें। तो गुलाम या बांदी ने कह दिया हमें कबूल है, तो कबूल है कहते ही वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन अब उनके जिम्मे माल आ गया, वो माल उनको अदा करना पड़ेगा। अब यही सूरत हमल के अंदर भी है। आका ने कहा मैंने इस हमल को 10 लाख की शर्त पर या 10 लाख के इवज पर आजाद कर दिया, तो हमारे फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत में हमल आजाद हो जाएगा और हमल के जिम्मे माल भी नहीं लाजिम। भाई माल क्यों नहीं लाजिम? कहते हैं हाँ, वो तो माल तो कबूल करने की सूरत में लाजिम होता है और हमल में तो कबूल करने की अहलियत ही नहीं है
जी।
हमल में तो कबूल करने की अहलियत ही नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि आम गुलामों के अंदर तो जब आका इस तरह कहे वहां माल लाजिम होता है और यहां आप माल को लाजिम करार नहीं दे रहे, बगैर माल के ही आजादी का हुक्म दे रहे हैं। तो उसका जवाब देते हैं फुकहा कि भाई इस आदमी को भी पता है कि यह हमल कबूल करने की अहलियत नहीं रखता, इस पर माल लाजिम नहीं किया जा सकता, फिर भी वो ये बात कर रहा है कि मैंने इसको 10 लाख के इवज आजाद किया। मालूम हो वो इसको आजाद करना चाहता है, लिहाजा उसके कलाम को लग होने से बचाने के लिए क्या कहा जाएगा कि इसने इस हमल को वैसे ही आजाद कर दिया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलौ आतकल हमला अला मालिन सहा, और अगर किसी ने हमल को आजाद किया अला मालिन, अला आप जानते हैं शर्त के लिए आता है, तो कहते हैं वलौ आतकल हमला अला मालिन, और अगर किसी ने हमल को आजाद किया माल की शर्त पर सहा, तो ये आजाद करना सही है। वला यजिबुल मालू, और माल वाजिब नहीं होगा। इस ला वजह इला इल्जाम इल माली अलल जनीनी, इसलिए क्योंकि कोई वजह नहीं है कि माल को लाजिम करार दिया जाए अलल जनीनी, उस जनीन वो जो मां के पेट में बच्चा है यानी हमल जो है, कि कोई वजह नहीं है कि उस हमल पर माल को लाजिम करार दिया जाए। ले आदमिल विलायती अलैही, क्योंकि आका को उस पर विलायत हासिल नहीं
जी।
आका को यह विलायत हासिल नहीं कि हमल पर माल को लाजिम कर सके। वला इला इल्जाम हिल उम्मा, और कोई वजह नहीं है कि माल को उसकी मां पर लाजिम करार दिया जाए। लिअन्नहु फी हक़िल इत्क़ी नफ्सुन अला हिदतिन, इसलिए क्योंकि जो हमल है ये आजादी के हक में अलैदा नफ्स शुमार होता है, हमल एक अलग जात शुमार होती है। तो आका आजाद कर रहा है हमल को और माल को लाजिम करार दिया जाए उसकी मां पर, तो मां तो उससे अलग शुमार होती है और हमल अलग शुमार होता है। मां अलग जात है और हमल उसको अलग जात शुमार किया जाता है। तो एक शख्स की आजादी के लिए दूसरे पर माल को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा हमल की मां जो है वो जो हामिला बांधी है उस पर भी ये माल लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं वला इला इल्जाम हिल उम्मा, और कोई वजह नहीं है कि यह मां लाजिम करार दिया जाए उसकी मां पर। लिअन्नहु फी हक़िल इत्क़ी, इसलिए क्योंकि यह जो हमल है यह आजादी के हक में नफ्सुन अला हिदतिन, यह अलग जात है। वश्तेरातु बदल इत्क़ी अला गैर इल मुअत्तक़ी ला यजूज़ु, और बदल इत्क की शर्त लगाना अला गैर इल मुअत्तक़ी ला यजूज़ु, गैर मुअत्तक़ पर यह जायज नहीं। भाई एक आदमी है एक गुलाम को आजाद करना चाहता है और उस गुलाम को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो जो आदमी है वो 10 लाख रुपए अदा करे। तो बदले इतक किस पर लाजिम किया जा रहा है? किसी दूसरे आदमी पर। मुअत्तक जो गुलाम है जिसको आजाद किया जा रहा है उस पर शर्त नहीं लगाई जा रही, उस पर यह इवज लाजिम नहीं किया जा रहा, बल्कि गैर मुअत्तक पर माल बदले इत्क को लाजिम किया जा रहा है। याद रखो यह जायज नहीं। खुला के अंदर यह जायज है, खुला के अंदर जायज है। बीवी खावंद से खुला करना चाहती है तो खावंद कहता है कि मैं तुमसे खुला करता हूं, शर्त यह है कि फुला आदमी इतने लाख रुपए मुझे दे दे। तो बदले खुला की शर्त औरत के अलावा किसी और पर लगाना यह तो जायज है, लेकिन बदले इत्क की शर्त मुअत्तक के अलावा किसी और पर यह जायज नहीं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वश्तेरातु बदल इत्क अला गैर इल मुअत्तक ला यजूज़ु, और बदल इत्क की शर्त लगाना मुअत्तक के अलावा किसी और पर ला यजूज़ु, यह जायज नहीं। अला मा मर्र फिल खुलई, उस वजह से जो खुला में गुजर गई। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि आजादी का बदल, आजादी का इवज मुअत्तक के अलावा किसी और आदमी पर लाजिम करना यह जायज नहीं है, उस वजह से जो खुला के बाब में गुजर गई। शारहीन फरमाते हैं कि साहिब हिदाया ने खुला में ऐसी कोई बात जिक्र नहीं की, साहिब हिदाया ने खुला के बाब में ऐसी कोई बात जिक्र नहीं की। शायद वजह यह साहिब हिदाया से तसामुह हुआ, वजह यह कि शायद उन्होंने किफायतुल मुंतही के अंदर यह बात जिक्र की हो। आपने किताब के शुरू में पढ़ा था कि साहिब हिदाया ने इब्तिदा में जब यह शरह लिखी तो यह 80 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो बहुत तवील हो गई थी, तो फिर साहिब हिदाया ने 4 जिल्दों में उन 80 जिल्दों का खुलासा निकाला और इसका नाम हिदाया रखा। यानी गोया हिदाया की हर जिल्द किफायतुल मुंतही की तकरीबन 20 जिल्दों का खुलासा है भाई। तो शारहीन फरमाते हैं कि शायद किफायतुल मुंतही में यह बात साहिब हिदाया ने जिक्र की हो और हिदाया में उसको जिक्र करना भूल गए हों भाई। तो लेकिन फिर शारहीन वजह बयान फरमाते हैं कि खुला के अंदर अजनबी पर बदल को शर्त करार दिया जा सकता है
जी।
लेकिन एताक के अंदर अजनबी पर या गैर मौतक पर बदल एताक को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह क्या है? कहते हैं वजह यह कि खुला के अंदर औरत को जब जान छूट गई खावंद से तो औरत को कोई चीज हासिल ना हुई और खुला की शर्त लगाई एक अजनबी पर, तो वो अजनबी जो है वो भी इस औरत की तरह है। जैसे इस औरत को कुछ हासिल नहीं हुआ इस खुला से, इसी तरह उस अजनबी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। औरत से सिर्फ पाबंदियां हट गई, निकाह की पाबंदियां और रुकावटें हट गई, कोई नई चीज औरत को हासिल नहीं हुई। तो जैसे इस औरत को कुछ नहीं हासिल हुआ उस अजनबी को भी कुछ नहीं हासिल हुआ, तो वो अजनबी इस औरत की तरह है। और बदले खुला जैसे औरत पर लाजिम हो सकता है तो अजनबी जब इसकी तरह है उस पर भी लाजिम हो सकता है। जबकि एताक जो है, एताक के अंदर गुलाम को कुव्वत हासिल हो जाती है, उसमें अहलियत आ जाती है, वो अहले शहादत हो जाता है, वो अहले कजा हो जाता है, वो हर चीज का मालिक बन सकता है, उसको हर तरह की विलायतें हासिल हो जाती हैं, तो एताक के अंदर गुलाम को कुव्वत हासिल हो रही है। लिहाजा यहां पर अजनबी जो है उस पर बदल इत्त को लाजिम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजनबी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा और गुलाम को तो कुछ मिल रहा है, कुव्वत मिल रही है, तो अजनबी गुलाम जैसा नहीं। जब गुलाम जैसा नहीं तो उस अजनबी पर माल को भी लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वश्तेरातु बदल इत्क अला गैर मुअतकी ला यजूज़, और बदल इत्क की शर्त लगाना गैर मुअतक पर यह जायज नहीं है। अला मा मर्रा फिल खुलई, उस वजह से जो खुला के अंदर गुजर गई। वइन्नमा युअरफु क़ियामुल हबली वक्तल इत्क इज़ा जाअत बिही। अच्छा भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि वो बांदी हामिला है या नहीं? आका ने क्या कहा? तेरे पेट में जो हमल है वो आजाद है। कहते हैं जिस वक्त आका ने ये कहा, उस कहने के बाद 6 माह से कम के अंदर उस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, तो मालूम हुआ उस वक्त जब आका ने आजादी की बात की थी यह हमल मौजूद था। और अगर 6 माह से ज्यादा गुजरने के बाद बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, फिर तो ये इतनी मुद्दत है कि इसमें नया हमल भी करार पा सकता है। तो अब यकीनी नहीं कि उस वक्त ये हामिला थी या नहीं थी, लिहाजा उस सूरत में वो बच्चा आजाद नहीं होगा। तो कहते हैं वइन्नमा युअरफु क़ियामुल हबली, हबल हमल को कहते हैं, और हमल का मौजूद होना इसको जाना जाएगा वक्तल इत्की, आजादी के वक्त कि आजाद, जब आका ने आजाद किया था उस वक्त हमल था या नहीं, इसको जाना जाएगा। इदा जाअत बिही लि अकल्ल मिन सित्तति अशहुरिम मिन्हु, जब वो बांदी ले आई बच्चे को 6 माह से कम के अंदर, मिन्हु उस वक्त से, उस आजादी के वक्त से, उस आजादी से, उस आजादी के बाद 6 माह से कम वक्त के अंदर बांदी जो है अगर बच्चे को ले आई, यानी उसने बच्चे को जन्म दिया, तो मालूम हो उस वक्त ये हामिला थी भाई। लिअन्नहु अदना मुद्दतिल हमली, इसलिए क्योंकि ये हमल की कम से कम मुद्दत है भाई, ये 6 महीने हमल की कम से कम मुद्दत है, और अगर इससे जायद मुद्दत हुई फिर तो हो सकता है बाद में यह हमल ठहरा हो भाई। आगे देखिए, काला ववलदुल अमति मिन मौलाहा हुर्रुन, और बांदी का जो बच्चा है वो मिन मौलाहा उसके आका से हुर्रुन, वो आजाद है। बांदी बच्चे को जन्म दे और आका कह दे ये मेरा बच्चा है तो वो बच्चा आजाद होता है। वजह उसकी क्या है, अब वो वजह साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलदुल अमतिम मौलाहा हुर्रुन, और बांदी की जो औलाद है उसके आका से हुर्रुन वो आजाद है। लिअन्नहु मखलूकुम मिम्मा इही, इसलिए क्योंकि ये औलाद पैदा हुई है मिम्मा इही आका के नुतफे से, ये आका के पानी से पैदा हुई है। फयातिकु अलैही, तो ये आका पर आजाद हो जाएगी। हादा हुवल असलु, यही जाबता है, यही जाबता है कि बच्चा जो है वो बाप के नुतफे से पैदा होता है। तो कहते हैं हादा हुवल असलु, यही जाबता है। वला मुआरिजा लहू फीही, और इसमें इसका कोई मुआरिज भी नहीं है। यहां पर देखो जी, जो बच्चा पैदा होता है मर्द का नुतफा मिला औरत के नुतफे के साथ, तो ये मर्द के नुतफे से बच्चा पैदा हुआ है, और बांदी का नुतफा भी है, लेकिन बांदी भी तो आका ही की ममलूक है, लिहाजा यहां कोई मुआरिज और मुकाबिल नहीं है। हर एतबार से ये बच्चा आका ही का शुमार होगा, यहां कोई और चीज नहीं है जो तकाजा करे कि ये किसी और का बच्चा होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक तरफ आका का नुतफा है अपना, तो दूसरी तरफ बांदी का नुतफा है, और बांदी भी इसी आका की ममलूका है भाई। तो कहते हैं वला मुआरिज लहू फीही, और इसके अंदर आका का कोई मुकाबिल भी नहीं है। लिअन्न वलदल अमति लिमौलाहा, इसलिए क्योंकि बांदी का जो बच्चा होता है वो उसके आका का होता है। वलदुहा मिन ज़ौजिहा ममलूकुन लिसय्यिदिहा, सूरत मसला ये, आका ने अपनी बांदी का निकाह करवा दिया था और इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया उस निकाह से। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो बांदी की जो औलाद होती है वो आका के ममलूक होते हैं, बच्चे तो खावंद के हैं लेकिन आका के ममलूक हैं। अब उसकी वजह जिक्र करेंगे कि उसकी वजह क्या है। तो कहते हैं वलदुहा मिन ज़ौजिहा, और बांदी की जो औलाद है उसके खावंद से, ममलूकुन लिसय्यिदिहा, वो उस बांदी के आका की ममलूक है। लितरज्जुह जानिबिल उम्मी, मां की जानिब राजह होने की वजह से, मां की जानिब राजह है। बेअतबार हिजानती, हिजानत कहते हैं परवरिश और तरबियत को, परवरिश के एतबार से। भाई आप पढ़ चुके हैं कि बच्चे की परवरिश मां का हक है। तो कहते हैं लितरज्जुह जानिबिल उम्मी, मां की जानिब के राजह होने की वजह से। बेअतबार हिजानती, परवरिश के एतबार से। औल इस्तेहला की मा इही बीमा इहा, या इस वजह से कि बाप का नुतफा जो है वो मां के नुतफे के साथ हलाक हो गया, यानी यूं समझें बाप का नुतफा मां के नुतफे के मुकाबले में खत्म हो गया जी। बाप का नुतफा मां के नुतफे के मुकाबले में खत्म हो गया, क्योंकि ये बच्चा मां के पेट में है, मां का नुतफा अपनी जगह पर है और बाप का नुतफा तो मुंतकिल हुआ था, लिहाजा ये यहां परवरिश का हक भी मां को है, और नीज बाप का नुतफा मां की तरफ मुंतकिल हुआ है और मां का नुतफा अपनी जगह पर है, तो मां का नुतफा गालिब आया। यूं समझो मां ही का नुतफा है, बाप का नुतफा है ही नहीं, यूं समझो। वजह तरजीह जिक्र कर रहे हैं ना, और नीज ये जो हमल होता है ये मां का जुज शुमार होता है, बाप का जुज शुमार नहीं होता, लिहाजा ये मां के ताबिया होगा, और मां तो इसकी बांदी है, लिहाजा ये बच्चा भी इसके आका का ममलूक शुमार होगा भाई। ये माना है औल इस्तेहला की मा इही बिमा इहा, यह इस वजह से कि खावंद का जो नुतफा है वो हलाक हो गया, वो खत्म हो गया, बिमा इहा मां के नुतफे की वजह से। वल मुनाफा तो मुतहक्किकतुन, और मुनाफात पाई जा रही है। भाई देखो ना, बांदी का निकाह हुआ है एक आजाद आदमी से और बच्चा पैदा हुआ, तो ये एक तरफ ये आजाद आदमी है, ये आजाद आदमी का नुतफा है, ये तकाजा कर रहा है कि ये बच्चा आका का ममलूक नहीं होना चाहिए जी। ये खावंद का बच्चा है ना, और खावंद तो आका का ममलूक नहीं, लिहाजा ये खावंद के नुतफे के एतबार से देखा जाए तो ये तकाजा कर रहा है इसको इस बांदी के आका का ममलूक नहीं होना चाहिए, और बांदी का भी नुतफा है, बांदी तो आका की ममलूक है, तो ये बांदी का नुतफा होना तकाजा कर रहा है कि इस बांदी का नुतफा और हमल भी आका का ममलूक होना चाहिए। तो लिहाजा यहां पर मुनाफात पाई जा रही है, लिहाजा एक जानिब को तरजीह देना पड़ेगी। खावंद का भी नुतफा है, मां का भी नुतफा है, खावंद के नुतफा होने को देखें तो यह तकाजा कर रहा है कि ये इसको बांदी के आका का ममलूक नहीं होना चाहिए, और बांदी का नुतफा भी है तो यह तकाजा कर रहा है कि इसको बांदी के मालिक का ममलूक होना चाहिए, तो यहां मुनाफात पाई जा रही है, लिहाजा एक जानिब को तरजीह देना पड़ेगी, दोनों पर तो अमल हो नहीं सकता। और जब तरजीह देने की बात आई तो हमने देखा कि बाप का नुतफा मां की तरफ मुंतकिल हुआ है और मां का नुतफा अपनी जगह पर है, लिहाजा मां के नुतफे को तरजीह दी गई, यूं समझो मां ही के नुतफे से पैदा हुआ है, बाप का नुतफा हालात खत्म हो चुका। और नीस परवरिश का हक भी मां को होता है, तो इस एतबार से भी हमने मां की जानिब को तरजीह दे दी। फिर देख लीजिए तर्जमा, कहते हैं लितरज्जुही जानिबिल उम्मी बेअतबार इल्हिजानती, मां की जानिब के राजे होने की वजह से, परवरिश के एतबार से, औल इस्तेहला की मां इही बीमा इहा, यह इस वजह से कि बाप का नुतफा जो है वो खत्म हो चुका है मां के नुतफे की वजह से, वल मुनाफात मुतहक्किकतुन, और मुनाफात पाई जा रही है कि बाप का नुतफा होना और तकाजा कर रहा है, मां का नुतफा होना और तकाजा कर रहा है, तो मुनाफात जो है वो पाई, यानी तआरुज पाया जा रहा है, वह ज़ौजु कद रज़िया बिही, और खावन भी तहकीक इस पर राजी है, खावंद भी इस बच्चे के ममलूक होने पर राजी है। भाई क्यों खावंद कैसे राजी है? कहते हैं भाई कि औलाद आजादी और गुलामी में मां के ताबेअ है, तो बांदी की औलाद उसके आका के ममलूक हुआ करती है, और जब इस आदमी ने खुद बांदी से निकाह किया है, हालांकि इसको भी पता है कि बांदी से जो औलाद होगी वो इसके आका की ममलूक होगी, मालूम है खावंद खुद इस बात पर राजी है, अपने बच्चों के ममलूक होने पर खुद राजी है, ये माना है। वज़ौज कद रज़िया बिही, और तहकी खावन भी इस पर राजी है, बिखिलाफ वलदिल मगरूर, बखिलाफ मगरूर की औलाद के, गर्र यगुर्रु गर्रं व गुरूरन का माना है धोखा देना, मगरूर वो शख्स है जिसको धोखा दिया गया है। एक आदमी है उसका एक औरत से निकाह करवाया गया कि यह आजाद औरत है, लेकिन बाद में पता चला यह औरत तो बांदी थी, और इससे जो औलाद पैदा होगी अब वो इस बांदी के आका की ममलूक होगी, तो इस सूरत में अब शरीयत ने यह हुक्म दिया कि इस बांदी की जो औलाद होगी वो आजाद होगी, और खावंद को उसके बदले में उसकी कीमत देना पड़ेगी बांदी के मालिक को। अब इसमें दोनों की रियायत हो गई, ये जिस शख्स को धोखा दिया गया इसकी भी रियायत हो गई, इसके बच्चे आजाद हैं किसी के ममलूक नहीं, और आका की भी रियायत हो गई कि उसको बच्चों की कीमत मिल गई। बात समझ में आ गई। कहते हैं बेखिलाफी वलदिल मगरूरी, बखिलाफ मगरूर की औलाद के, यानी वो आदमी जिसको धोखा दिया गया उसकी औलाद के, ले अनल वालिदा मा रज़िया बिही, इसलिए क्योंकि वहां पर वालिद उस पर राजी नहीं है कि उसकी बीवी के आका की ममलूक हो, भाई वो इनके बच्चों के ममलूक होने पर राजी नहीं, उसको तो धोखा दिया गया था निकाह के अंदर। वलदुल हुर्रति हुर्रुन अला कुल्ली हालिन, वलदुल हुर्रति, और आजाद औरत की जो औलाद है, हुर्रुन अला कुल्ली हालिन, वो आजाद है हर हाल में, चाहे उसका खावंद आजाद हो चाहे गुलाम हो, लेकिन आजाद औरत की औलाद आजाद है। तो कहते हैं वलदुल हुर्रति हुर्रुन अला कुल्ली हालिन, और आजाद औरत की जो औलाद है वो हर हाल में आजाद है, लिअन्न जानिबहा राजिहुन, इसलिए क्योंकि मां की जानिब राजिह है। अभी हमने बताया मां की जानिब राजिह है, और मां तो आजाद है तो उसका हमल भी आजाद होगा। कहते हैं लिअन्न जानिबहा राजिहुन, इसलिए क्योंकि मां की जानिब राजिह है, फयतबउहा फी वस्फिल हुर्रियति, तो बच्चा जो है वो भी मां के ताबे होगा आजादी के वसफ में, कमायत बाउहा फिल ममलूकियति वल मरकूकियति व तदबीर व उमूमियति वलदि वल किताबती, कमायत बाउहा, जैसे कि बच्चा ताबे होता है मां के फिल ममलूकियति ममलूक होने में, वल मरकूकियति और गुलाम होने में, व तदबीरी और मुदब्बर होने में, व उमूमी यतिल वलदी और उम्मे वलद होने में, वल किताबती और मुकातब होने में। भाई देखिए साहिबे हिदाया ने दो लफ्ज जिक्र किए, ममलूकियत और मरकूकियत। ममलूकियत का क्या माना? ममलूक होना, और मरकूकियत मरकूक होना यानी गुलाम होना, गुलाम होना। और याद रखो इन दोनों चीजों में फर्क है, ममलूकियत और मरकूकियत में फर्क है। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि गुलाम जो है वो गुलाम तो कामिल है लेकिन कामिल ममलूक नहीं जी। और बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि ममलूक तो कामिल होता है लेकिन गुलाम कामिल नहीं, तो दोनों में फर्क है। मसलन देखो मुदब्बर और उम्मे वलद, मुदब्बर वो गुलाम है जिसे आका ने कह दिया मेरे मरने के बाद तू आजाद है, और उम्मे वलद वो बांदी जिसने बच्चे को जन्म दिया और आका ने कह दिया ये मेरा बच्चा है। तो ये जो उम्मे वलद है और मुदब्बर हैं, याद रखो आका के मरते ही ये आजाद हो जाएंगे। अब आजादी इनका हक बन गया, अब किसी सूरत इनके हक आजादी को फसख नहीं किया जा सकता। मालूम हुआ इन दोनों में गुलामी नाकिस हो गई, इन दोनों में गुलामी नाकिस हो गई, इन्होंने हर हाल में आजाद होना है। हां मिल्कियत नहीं नाकिस, मिल्कियत उसी तरह है, ये उसी तरह जब तक इनका आका जिंदा है ये उसकी खिदमत करते रहेंगे, आका की पूरी मिल्कियत है। तो मुदब्बर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस हो जाती है, अलबत्ता मिल्कियत कामिल है। जबकि मुकातब जो है, मुकातब के अंदर मिल्कियत नाकिस हो जाती है, रिकियत कामिल है, मिल्कियत नाकिस हो गई, मिल्कियत कम हो गई। अब आका उसे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, वो जाएगा जाकर पैसे कमा कर लाएगा, तो मिल्कियत नाकिस हो गई। अलबत्ता गुलामी कामिल ही है क्योंकि इसका आजाद होना यकीनी नहीं, इसका आजाद होना यकीनी नहीं। अगर ये आजीज आ गया तो ये फिर पहले जैसा गुलाम बन जाएगा। तो मालूम हुआ उम्मे वलद और मुदब्बर इनमें रिकियत नाकिस है, और मुकातब के अंदर मिल्कियत नाकिस है, अलबत्ता रिकियत कामिल है। तो इसलिए साहिब हिदाया ने दोनों लफ्ज जिक्र किए कि ममलूकियत को भी जिक्र किया और मरकूकियत को भी। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फयत बउहा फी वसफिल हुर्रियति, बच्चा जो है वो मां के ताबे होगा आजादी के वसफ में, कमायत बउहा फिल ममलूकियति वल मरकूकियति, जैसे कि बच्चा मां के ताबे होता है ममलूक होने में और मरकूक यानी गुलाम होने में। वह तदबीरी व उमूमियतिल वलदिवल किताबती, देखिए भाई ये इबारत पे जरा गौर कीजिए, कमा यत बाउहा फिल ममलूकियति वल मरकूकियति व तदबीरी व उमूमियतिल वलदी वल किताबती, के बच्चा आजादी में मां के ताबे होता है, कमा यत बाउहा फिल ममलूकियति वल मरकूकियति, जैसे कि बच्चा मां के ताबे होता है ममलूक होने में और मरकूक यानी गुलाम होने में। ये जो आगे जिक्र हो रहा है व तदबीरी व उमूमियतिल वलदि वल किताबती, ये जो तीन अल्फाज हैं ये माकबल के लिए अतफे तफसीरी के दर्जे में हैं। अतफे तफसीरी उसे कहते हैं कि जिसमें मातूफ जो है वो मातूफुन अलैह की तफसीर करता है। तो ये जो तदबीर है, उमूमियतुल वलद है और किताबत है, ये तफसीर बयान कर रहे हैं ममलूकियत और मरकूकियत की। इसलिए क्योंकि मुदब्बर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस होती है, उन्होंने हर हाल में आजाद होना है, और मुकातब के अंदर मिल्कियत नाकिस हो जाती है क्योंकि वो अपने तसर्रुफात का मालिक बन जाता है, वो तिजारत वगैरह कर सकता है। तो लिहाजा बच्चा जो है ममलूकियत और मरकूकियत में अपने मां के ताबे होता है, और आगे उसकी तफसीर कर दी, जैसे मुदब्बर होना, उम्मे वलद होना और मुकातब होना। मुदब्बर होने और उम्मे वलद होने में रिकियत नाकिस है तो बच्चा भी इसी तरह होगा, और मुकातब के अंदर मिल्कियत नाकिस है तो बच्चा भी इसी तरह होगा। बात समझ में आ गई। तो ये तदबीर, उमूमियतिल वलद और किताबत, ये अतफे तफसीरी हैं ममलूकियत और मरकूकियत के लिए। भाई याद रखो, इधर देखिए, याद रखिए, आका ने अपनी बांदी को मुदब्बरा बना दिया कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है, बाद में इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आका ने नहीं कहा ये मेरा बच्चा है, आका अगर कह देगा ये मेरा बच्चा है तो बच्चा उसी वक्त आजाद हो जाएगा। तो इस मुदब्बरा ने बच्चे को जन्म दिया, याद रखो, या आका ने इस मुदब्बरा का किसी आदमी से निकाह करवा दिया और उस आदमी से इस मुदब्बरा की औलाद हो गई, तो याद रखो ये बच्चा भी मां के ताबे है, ये बच्चा भी मुदब्बर है। जब आका मरेगा तो बांदी अपने बच्चों समेत आजाद हो जाएगी। या इसी तरह एक बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, आका ने कहा यह मेरा बच्चा है, यह आका की उम्मे वलद बन गई, बाद में आका ने इस बांदी का किसी और से निकाह करवा दिया और बांदी ने और बच्चों को जन्म दिया, तो जैसे ये बांदी उम्मे वलद है आका के मरने के बाद आजाद होगी, इसके जो बच्चे होंगे उस नए खावन से वो भी आका के मरने के बाद सारे आजाद हो जाएंगे। तो मालूम हुआ बच्चा आजादी और गुलामी में मां के ताबे है, मां में रिकियत नाकिस तो बच्चे में भी रिकियत नाकिस। और इसी तरह अगर आका ने अपनी बांदी को मुकातबा बनाया मुकातबा बनाया है तो इसके जो उसूल और फुरू हैं वो भी अक़्द किताबत में दाखिल हो जाएंगे। मालूम अब बच्चे बच्चे गुलामी और मिल्कियत के अंदर मां के ताबे होते हैं। बात समझ में आ गई। यह माना है कमायत बाउ हाफिल ममलूकियती वल मरकूकियती, जैसे कि बच्चा मां के ताबे होता है ममलूक होने में और गुलाम होने में, व तदबीरी और मुदब्बर होने में, व उमूमियतिल वलदी और उम्मे वलद होने में, वल किताबती और मुकातब होने में। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।